ऑटन के प्रश्नों की बौछार ने शुरू में रॉकी को उलझन में डाल दिया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि सभी पूछताछ मैनारून से संबंधित थी। इस रहस्योद्घाटन के साथ रॉकी का चेहरा तुरंत बदल गया। माना रूंस की गोपनीयता, जो उसका सबसे बड़ा राज था, किसी और को पता नहीं चल सकती थी, क्योंकि ऐसा ज्ञान बहुत खतरनाक था। जरा सा भी खुलासा अनंत विपत्तियों को आमंत्रित कर सकता था। जैसे ही रॉकी को एहसास हुआ कि ऑटन इस राज से वाकिफ हो सकता है, उसके दिमाग में एक अजीब सी हलचल मच गई। फिर भी उसकी प्रतिक्रिया तेज थी। उसने कमरे के उस पार लिलिया की ओर आंखों से इशारा किया। हालांकि लिलिया को स्थिति पूरी तरह समझ नहीं आई थी, फिर भी उसने सहज ही दरवाजा बंद कर दिया, जिससे ऑटन का बाहर निकलना बंद हो गया। माना रूंस का राज किसी को पता नहीं चल सकता था, एक ऐसी सीमा जिसे कभी पार नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए जब यह जाहिर हुआ कि ऑटन को इस राज के बारे में पता था, या शायद शायद पता भी था, तो रॉकी के मन में तुरंत ही जानलेवा इरादे उमड़ पड़े। शिक्षक ऑटन, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या बात कर रहे हैं। रॉकी अपनी सीट से अनभिज्ञता जताता रहा, और लिलिया द्वारा ऑटन को रोकने के बाद ही उसने कुछ कहा। दुर्भाग्यवश, इस टालमटोल से ऑटन को केवल व्यंग्यात्मक हंसी ही मिली। युवक, यहां मेरे साथ मूर्खता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलते हुए ऑटन ने दरवाजा रोके खड़ी लिलिया की तरफ देखा, हाथ हिलाया, और जादुई शक्ति का एक शक्तिशाली विस्फोट उसके अंदर से तुरंत फूट पड़ा। लिलिया समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाई कि उसका रून लॉन्गस्वॉर्ड उसकी पकड़ से छूटकर सीधे ऑटन के हाथों में जा गिरा। रॉकी के लिए ये दृश्य पूरी तरह से आश्चर्यजनक था, और उसने मन ही मन खुद को मूर्खता के लिए कोसा। अगर ऑटन जादुई ऊर्जा के क्षेत्र में माहिर था, तो वह जादूगर भी होगा, और वह भी उच्च स्तर का। यह उसकी जादुई शक्ति के विस्फोट से स्पष्ट था, जो उसने अभी अभी छोड़ा था। अब स्थिति समस्याग्रस्त थी। क्या वह और लिलिया उसे रोक सकते थे? दोनों में से किसी ने भी अपना शून्य जादुई कवच नहीं पहना था। जब रॉकी अपनी खामोश आत्मग्लानी में डूबा हुआ था, ऑटन ने रून लॉन्गस्वॉर्ड का बारीकी से निरीक्षण किया और अपनी जादुई शक्ति से उसे सक्रिय कर दिया। सक्रिय होते ही तलवार पर लगे रून तेजी से चमक उठे। ये सचमुच अविश्वसनीय है। रून लॉन्गस्वॉर्ड को गौर से देखते हुए ऑटन की आंखें चमक उठी, और वह लगातार आश्चर्यचकित होते हुए बोला, यह अविश्वसनीय है। तलवार में एक भी जादुई पत्थर नहीं लगा है, फिर भी केवल पैटर्न में ही 200 से अधिक मान बिंदु हैं। ये सचमुच चमत्कारी है। काफी देर तक तलवार पर लगे मन रून की प्रशंसा करने के बाद ऑटन ने जादुई शक्ति को निष्क्रिय कर दिया और उसे लापरवाही से लिलिया की ओर वापस फेंक दिया। युवक, तुमने इस तलवार पर पैटर्न नहीं बनाया है ना? लिलिया को रून लॉन्गस्वॉर्ड लौटाने के बाद ऑटन ने रॉकी से प्रश्न पूछा, लेकिन उसने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि अपने आप में सोचने लगा, ठीक है, ये तुम नहीं हो सकते। तलवार पर बने पैटर्न स्पष्ट रूप से एक मास्टर के हाथ से आए हैं। हालांकि जानवरों द्वारा इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी पर जो पैटर्न है, वे आपके द्वारा बनाए गए थे, है ना? युवक, ये तकनीक तुम्हें लॉस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिली थी, है ना? ऑटन के आत्मभाषण और पूछताछ के मिश्रण ने रॉकी को अचंभित कर दिया, क्योंकि उसने जो कहा वह बिल्कुल सही था। ऑटन की बातों से एक और बात भी साफ हो गई, वो वजह जिसकी वजह से उन्होंने टेक्नीशियन गिल्ड में रॉकी का मेंटर बनने के लिए इतनी उत्सुकता से अपनी इच्छा जाहिर की थी। बात साफ थी, ऑटन को मोटे के हाथ में कुल्हाड़ी मिल गई थी। मोटे के पास जो कुल्हाड़ी थी, वह भी रॉकी द्वारा रून उपकरण के रूप में बनाई गई थी, और मोटे की कुल्हाड़ी के माध्यम से ही ऑटन को मन रून रहस्य का पता चला था। मैना रून्स का इस तरह से उजागर होना न केवल रॉकी के लिए आश्चर्य की बात थी, बल्कि यह उससे भी संबंधित था, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से कुछ हद तक लापरवाह था। समयरेखा को ध्यान में रखते हुए रॉकी पिछले आधे साल से माना रून्स के रहस्य की रक्षा कर रहा था, और हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि कहीं कोई उसे खोज न ले। फिर भी 6 महीने की अविचल शांति ने उसे अपनी सतर्कता कम करने पर मजबूर कर दिया था, जिससे उसे यह विश्वास हो गया था कि अगर कोई माना रून्स को देख भी ले, तो वह उन्हें पहचान नहीं पाएगा और उन्हें सामान्य पैटर्न ही समझेगा। हालांकि यह विचार गलत नहीं था, क्योंकि मन रून्स एक ऐसी तकनीक थी जो किसी और के लिए अज्ञात थी, और अधिकांश लोग इसे केवल सजावटी पैटर्न के रूप में ही देखते, लेकिन एक बात थी जो वह भूल गए थे। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जादुई ऊर्जा पर गहन शोध किया है। उदाहरण के लिए ऑटन को ही लीजिए, वह ऐसे ही लोगों में से एक है। ऑटन सचमुच जादुई ऊर्जा के क्षेत्र में एक उस्ताद थे। अगर शोध क्षमता और तकनीकी कौशल को ध्यान में रखा जाए, तो जादुई ऊर्जा के क्षेत्र में उनके योगदान को समकालीन दुनिया के कुछ शीर्ष योगदानों में गिना जा सकता है। हालांकि यह उस्ताद हर किसी की नजरों में नहीं था। उन्हें नापसंद किए जाने के 2 कारण थे। पहला, उनमें संयम की कमी थी। जादुई ऊर्जा अनुसंधान में निपुण होने के कारण ऑटन शुरुआत में बहुत लोकप्रिय थे। उन्होंने जिस पहले संस्थान में काम किया, वह कोई और नहीं बल्कि आकाश की 3 सबसे बड़ी शक्तियों में से एक था, जादुई ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, जिसे विद्वानों का स्वर्ग भी कहा जाता है। मैजिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रतिष्ठित विद्वानों में भी ऑटन का बहुत सम्मान था। दुर्भाग्य से उनका अनियंत्रित शोध ही उनके पतन का कारण बना। 7 साल पहले ऑर्टन ने मैजिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से जादुई ऊर्जा तकनीक की एक नई पीढ़ी पर शोध शुरू किया था। हालांकि इस परियोजना के 2 वर्षों के दौरान उन्होंने 7 सुपर क्रिस्टल्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सुपर क्रिस्टल क्या है? स्काई सिटी को आसमान में उड़ान भरने वाले विशाल जादुई पत्थरों को सुपर क्रिस्टल्स कहते हैं। ऑर्टन ने अपने शोध के लिए सिर्फ 2 सालों में ही 7 सुपर क्रिस्टल्स को नष्ट कर दिया था। इसका क्या मतलब था? ये तो 7 पूरे स्काई सिटीज को मिटा देने जैसा था। जादुई ऊर्जा अनुसंधान संस्थान जैसी 3 सबसे बड़ी शक्तियों में से एक के लिए भी इतना बड़ा उपभोग असहनीय था। संस्थान को इससे भी ज्यादा असहनीय ये लगा कि इतने सारे सुपर क्रिस्टल नष्ट करने के बाद ऑर्टन ने तमाम आपत्तियों के बावजूद बेशर्मी से अपने शोध प्रोजेक्ट को बंद करने की घोषणा कर दी। उसने तो कुछ भी नहीं बनाया था। इससे मैजिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरी तरह से नाराज हो गया और उसे निष्कासित कर दिया गया, एक ऐसी घटना जिसने ऑर्टन के निरंतर पतन की शुरुआत को चिन्हित किया। मैजिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद ऑर्टन लगातार काफ्का साम्राज्य और स्काई अलायंस दोनों का दौरा करता रहा। वह तीनों प्रमुख सेनाओं में जा चुका था और हर बार उसे एक ही वजह से वापस भेज दिया जाता था, उसका शोध बहुत ही अनियंत्रित था। नतीजतन सालों से ऑर्टन एक सेना से दूसरी सेना में जाते रहे और कहीं भी ज्यादा समय तक नहीं रुके। इस खानाबदोश जीवन शैली ने स्वाभाविक रूप से उनके शोध को प्रभावित किया। आज तक ऑर्टन ने वर्षों से कोई भी व्यावहारिक या शैक्षणिक महत्व का शोध नहीं किया है। जहां तक उनकी अलोकप्रियता का दूसरा कारण है, वह था ऑर्टन का भयंकर गुस्सैल स्वभाव, जिसे रॉकी भी महसूस कर सकता था, जिसकी उनसे बस कुछ ही मुलाकातें हुई थीं। शोध के क्षेत्र में एक विद्वान के रूप में पेशेवर विशेषज्ञता के अलावा पारस्परिक कौशल भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। आखिरकार सिर्फ तकनीकी ज्ञान रखने वाले और बिना किसी आर्थिक सहायता वाले विद्वान को मदद के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। सामाजिक कुशाग्रता की कमी का प्रश्न ही नहीं उठता। हालांकि इस मामले में ऑर्टन की बुद्धिमत्ता नकारात्मक थी। जादुई ऊर्जा में वह जितना कुशल था, सामाजिक मेलजोल में उतना ही बुरा था। जिन ताकतों से वह जुड़ा था, उनके द्वारा उसे बार बार खदेड़े जाने का एक कारण यही था। वरना उसके जैसे उस्ताद को टेक्नीशियन गिल्ड जैसी जगह में काम की तलाश कैसे करनी पड़ती। तो संक्षेप में ऑर्टन को 2 शब्दों में वर्णित किया जा सकता है, एक अकादमिक संकी। उसकी आंखें सिर्फ शोध पर ही केंद्रित थीं। शोध के लिए उसके लिए बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता था। उसके लिए बाकी सब कुछ कचरे की तरह अप्रासंगिक था। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऑर्टन की शैक्षणिक क्षमता और शोध क्षमता निर्विवाद थी। इसी असाधारण क्षमता के कारण उन्होंने टेक्नीशियन गिल्ड में पहली नजर में ही मोटे की कुल्हाड़ी पर ध्यान दिया और तुरंत उसकी असाधारणता को पहचान लिया, जिसके कारण आज की घटनाएं घटी। अब जब रॉकी को सवालों की बौछार का सामना करना पड़ा और उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया गया, तो ऑर्टन ने बस अपने होठों को सिकोड़कर उसे खारिज कर दिया। बच्चे, मुझे उन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ऑर्टन ने कहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुमने ये पैटर्न क्या बनाए हैं, इसलिए बूढ़ी औरत की तरह गोलमोल बातें करना बंद करो और मुझे बताओ। हर बार जब वह मुंह खोलता तो ऑर्टन अपनी कमियों का उदाहरण देता। उसे सच में बोलना नहीं आता था, लेकिन वह जो कहता था वह बिल्कुल सच होता था। एक अकादमिक दीवाने होने के नाते जो सिर्फ शोध पर ध्यान केंद्रित करता था, उसे शोहरत, ताकत या प्रभाव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी रुचि सिर्फ ज्ञान में थी। जरा सोचिए, यदि वास्तव में उसके मन रूनों के संबंध में कोई गुप्त उद्देश्य होता, तो क्या वह सीधे और साहपूर्वक इस तरह रॉकी के पास आकर जवाब मांगता? इन पैटर्नों को मन रूनस कहा जाता है। ऑर्टन को देखते हुए रॉकी ने उसे काफी हद तक समझ लिया था, इसलिए थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने मैना रूनस के बारे में जानकारी का खुलासा किया। मन रूनस, अच्छा नाम है, बहुत उपयुक्त। इसका आविष्कार किसने किया? ये विंसल नाम का एक मास्टर था। क्या? जैसे ही रॉकी ने विंसल का नाम लिया, ऑर्टन चौंक गया, फिर तुरंत उत्साहित होकर बोला, तुम्हारा मतलब है कि इन मैना रूनस पर मास्टर विंसल ने शोध किया है? तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो? आप कह रहे हैं कि यह सीनियर विंसल का शोध है? आपको कैसे पता चला? आपको शोध नोट्स मिल गए होंगे, है ना? विंसल का नाम सुनते ही ऑर्टन तुरंत उत्साहित हो गए और उन्होंने विंसल को एक वरिष्ठ व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वे उस व्यक्ति से काफी परिचित थे। इसके अलावा ऑर्टन वाकई बहुत होशियार था। रॉकी के एक ही वाक्य से उसने अंदाजा लगा लिया था कि रॉकी ने विंसल के रिसर्च नोट्स हासिल कर लिए हैं, जिससे रॉकी उसकी काबिलियत से सचमुच दंग रह गया। जल्दी मुझे शोध नोट्स दिखाओ। इस समय तक ऑर्टन रॉकी के पास पहुंच चुका था और शोध नोट्स की मांग कर रहा था, मानो वह कोई लेनदार हो जो अपने पैसे के लिए चिल्ला रहा हो। यह हालांकि रॉकी अभी भी अनुरोध मानने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि विंसल के शोध नोट्स बहुत महत्वपूर्ण थे। वे अनोखे थे। जब तक ये नोटबुक मौजूद रहेगी, तब तक मन रूनस तकनीक भी मौजूद रहेगी। अगर नोट्स को कुछ हो गया तो वह युगांतकारी तकनीक नष्ट हो जाएगी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और मुझे नोट्स दिखाओ। तुम उन्हें वैसे भी समझ नहीं सकते। जबकि रॉकी हिचकिचा रहा था, ऑर्टन अधीर हो गया था, उसे किनारे जाने के लिए आग्रह कर रहा था और उसके शब्द लगातार अप्रिय होते जा रहे थे। ऐसी स्थिति में रॉकी ने आखिरकार रिसर्च नोट्स निकालने का फैसला किया। उसने ऐसा दो वजहों से किया। पहला, हालांकि ऑर्टन घिनौना लग सकता था, लेकिन वह दुर्भावनापूर्ण या षड्यंत्रकारी नहीं लग रहा था। वह ज्यादा जुनूनी लग रहा था, इसलिए उसे नोट्स देखने देना ठीक होगा। दूसरे, रॉकी भी इस अवसर का उपयोग ऑर्टन को अपने पक्ष में रखने के लिए करना चाहता था। आखिरकार माना रूंस की तकनीक को और विकसित और प्रसारित किया जाना था, लेकिन रॉकी अकेले ऐसा नहीं कर सकता था। उसे मदद की जरूरत थी, खासकर उसी क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ की, और ऑर्टन निश्चित रूप से एक उपयुक्त उम्मीदवार था। अगर वह ऑर्टन को थंडहॉक सिटी में रख सके और उसे माना रूंस पर शोध करने पर ध्यान केंद्रित करवा सके, तो इससे रॉकी को बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद उन्होंने वेंसेल के शोध नोट्स निकाले। इसे जल्दी से मुझे दे दो। जैसे ही रॉकी ने नोट निकाले, ऑर्टन ने उत्सुकता से उन्हें छीन लिया और तुरंत उन्हें पलटना शुरू कर दिया। ऑर्टन का गुस्सेल मिजाज ऐसा था कि उसके साथ थोड़ा भी समय बिताने वाला कोई भी व्यक्ति यह समझ जाता था कि वह एक गुस्सेल बूढ़ा और अप्रिय स्वभाव का आदमी है। हालांकि जब उसने वेंसेल के शोध नोट्स लिए और उन्हें पढ़ना शुरू किया, तो उसका पूरा व्यवहार बदल गया। वह मछली पकड़े हुए बिल्ली के बच्चे की तरह चुपचाप खड़ा, नोट्स में खोया हुआ सा हो गया। और वह इसी तरह घंटों पढ़ता रहा। जब रॉकी और लिलिया ने भोजन किया था, तब तक आकाश में अंधेरा छा चुका था, और उसके बाद उन्होंने ऑर्टन के साथ हंगामा किया, इसलिए जब तक कई घंटे बीत गए, तब तक भोर होने वाली थी। सुबह के शुरुआती घंटों तक ऑर्टन ने पूरी नोटबुक नहीं पढ़ी थी, और फिर वह नोट्स को पकड़े हुए फूट फूट कर रोने लगा। ये दृश्य देखकर रॉकी और उसके बगल में खड़े लिलिया दंग रह गए। उनकी नजरों में नोट्स पढ़कर ऑर्टन अपने पसंदीदा खिलौने को पकड़े हुए एक बच्चे की तरह लग रहा था, जो इतनी बुरी तरह रो रहा था कि उसकी चीखें पूरे सिटी लॉर्ड के महल में सुनाई दे रही थी। क्यों, हमें यह नोटबुक अभी क्यों मिली? अपनी पीड़ा में चेहरे पर आंसू बहाते हुए ऑर्टन रुक रुक कर बोले, इतना महत्वपूर्ण आविष्कार, इसकी खोज अभी क्यों हुई? अगर ये नोट 50 साल पहले मिल गए होते, नहीं, यहाँ तक कि सिर्फ 20 साल पहले भी, तो हमें पिछले जवाबी युद्ध में इतनी बुरी हार का सामना नहीं करना पड़ता। कचरा, हम सचमुच कचरा हैं। वरिष्ठ व्यक्ति को 100 साल पहले ही मैजिक स्टोन्स की कमियों का एहसास हो गया था और उन्होंने पहले ही एक नया दृष्टिकोण अपना लिया था, फिर भी हम यहाँ हैं। अभी भी मैजिक स्टोन्स से चिपके हुए हैं, हम वास्तव में एक कूड़े का ढेर हैं। रिसर्च नोट्स पकड़े ऑर्टन रो रहा था, बोल रहा था, रो रहा था। रॉकी और लिलिया बिल्कुल असमंजस में थे। वे एक दूसरे को देखते रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, जब तक कि रॉकी आखिरकार ऑर्टन के लिए एक कुर्सी ले आया और उसे किसी तरह बैठा दिया। बैठते ही ऑर्टन का रोना बंद हो गया। उसने रॉकी की तरफ देखा और लापरवाही से रिसर्च नोट्स वापस देते हुए पूछा, बच्चे, क्या तुम जानते हो कि विंसल कौन है? रोने के बाद ऑर्टन का उग्र स्वभाव थोड़ा शांत हो गया और वह कम आक्रामक होकर बोलने लगा। उसके सवाल के जवाब में रॉकी ने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया, वह कोहेन कंट्री का मैना रिसर्च का मास्टर है, बस इतना ही जानता हूँ। यद्यपि रॉकी के पास विंसल के शोध नोट्स थे, लेकिन वह स्वयं विंसल के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वह जानता था कि वह लैंड एरा का एक मास्टर था, लेकिन उसे विशेष जानकारी नहीं थी। हाँ, आप सही कह रहे हैं, सीनियर विंसल वास्तव में जादुई ऊर्जा क्षेत्र में माहिर थे। मुझे याद है कि मेरे शिक्षक ने एक बार कहा था कि जब स्काई सिटी की अवधारणा पहली बार प्रस्तावित की गई थी, तो मेरे शिक्षक ने उन्हें अनुसंधान में सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन सीनियर विंसल ने इनकार कर दिया था, जिससे संकेत मिलता है कि वह अपने स्वयं के अनुसंधान पर काम कर रहे होंगे। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर का शोध आज ही खोजा जाएगा। अगर यह पहले पाया जा सकता था। कुछ ही सरल वाक्यों में आउडू ने स्पष्ट कर दिया कि विंसल कौन था और अपनी पृष्ठभूमि भी बता दी। उसके शब्दों से साफ जाहिर था कि विंसल का रुतबा अकल्पनीय रूप से ऊंचा था, क्योंकि उसे स्काई सिटी के युगांतकारी आविष्कार में योगदान देने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। साथ ही ऑर्टन के शब्दों से यह भी स्पष्ट हो गया कि उनकी अपनी पृष्ठभूमि भी कम प्रभावशाली नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके शिक्षक उन महान लोगों में से एक थे जिन्होंने स्काई सिटी का आविष्कार किया था। उस क्षण ऑर्टन ने आह भरी और फिर रॉकी की ओर देखा, बच्चे, तुम शिक्षक इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि तुम मैना रूंस के बारे में सीखना चाहते थे, है ना? हाँ, मैंने मन रूंस की खोज कर ली है, लेकिन इस क्षेत्र में मेरी नींव बहुत कमजोर है, इसलिए मुझे मदद के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है। ये सुनकर ऑर्टन ने सिर हिलाया और कहा, आपका समर्पण सराहनीय है। सीनियर के शोध को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। चूंकि आपने इसकी खोज की है, इसलिए स्वाभाविक है कि आप ही इस विरासत को आगे बढ़ाएं। बच्चे, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मन रूंस का प्रचार करने की योजना बना रहे हो? रॉकी की ओर लाल सूजी हुई आंखों से देखते हुए ऑर्टन ने अचानक एक बहुत तीखा सवाल दागा। एक तकनीक के रूप में मन रूंस को निस्संदेह महान कहा जा सकता है, इसलिए एक बार प्रकट होने पर ये निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए लाभकारी होगा। हालांकि इतनी महत्वपूर्ण खोज को साझा करने की बात करना आसान था, लेकिन इसे व्यवहार में लाना चुनौतीपूर्ण था। इतनी गहन तकनीक की खोज करने वाला कोई भी व्यक्ति इसे दूसरों के साथ स्वेच्छा से कैसे साझा कर सकता है? फिर भी इस प्रश्न का उत्तर देने में रॉकी को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। बेशक मैं इसे सार्वजनिक करूंगा, बस अभी नहीं, बोलते समय उन्होंने ऑर्टन के साथ अपने विचार साझा किए। उसने बहुत पहले ही तय कर लिया था, माना रूंस का खुलासा तो होना ही था, लेकिन तुरंत नहीं। वह उन्हें सार्वजनिक करने से पहले उन पर पूरी तरह से महारत हासिल करने तक इंतजार करना चाहता था। आखिरकार रॉकी कोई संत नहीं था, उसकी अपनी इच्छाएं थीं और यही सबसे अच्छा उपाय था जो वह सोच सकता था। रॉकी द्वारा अपनी योजनाएं साझा करने के बाद और इस प्रक्रिया के दौरान बिना किसी रुकावट के ऑर्टन ने सिर हिलाया। एक नगर स्वामी होने के नाते आपके लिए इस तरह सोचना स्वाभाविक है। तो ठीक है, अब से आप मेरे छात्र हैं। मैं आपको मन के बारे में सिखाऊंगा और गुरु और छात्र के रूप में हम मन रूंस की तकनीक को और विकसित करेंगे। इस प्रकार ऑर्टन थंडरहॉक सिटी में ही रहे और रॉकी के शिक्षक बन गए। घटनाओं का यह मोड़ सभी के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था, लेकिन दोबारा सोचने पर यह बात सही प्रतीत हुई। ऑर्टन एक अकादमिक कट्टरपंथी थे। अपनी उम्र के बावजूद अकादमिक ज्ञान की उनकी खोज कभी बंद नहीं हुई थी, इसलिए जब उन्हें मन रूंस के अस्तित्व के बारे में पता चला जो पूरी तरह से उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र के साथ ओवरलैप हो गया, तो वे इसे छोड़ने में बिल्कुल असमर्थ थे। साथ ही चूंकि उनका ध्यान केवल शोध पर था, इसलिए उन्होंने उस अपार शक्ति और प्रतिष्ठा को महत्व नहीं दिया जो मैना रूंस ला सकता था। ऑर्टन की नज़र में पैसा, प्रसिद्धि, अधिकार और स्थिति सभी बाहरी मामले थे और उन्हें उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हाँ, अगर ऑर्टन को इन बातों की परवाह होती तो वह आज इस मुश्किल स्थिति में नहीं पहुंचते। इसलिए थंडरहॉक सिटी में रहने का उनका निर्णय हालांकि पहली नजर में आश्चर्यजनक था, लेकिन विचार करने पर वास्तव में काफी उचित था। इस प्रकार ऑर्टन थंडरहॉक सिटी में ही रहे और रॉकी के दल के प्रमुख सदस्य बन गए और उनके वहां रहने के साथ ही रॉकी का शैक्षणिक जीवन आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। इस समय तक रॉकी ने पहले से ही वह सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था जो महान युद्ध से पहले तैयार किया जा सकता था। कोई यह कह सकता था कि बैरन वोलन के आगमन को छोड़कर सब कुछ तैयार था। जिसने विडंबना यह है कि उसके पास ऑर्टन का अनुसरण करने और मैना से संबंधित ज्ञान का गंभीरता से अध्ययन करने के लिए अधिक खाली समय बचा था। जहां तक जादुई ऊर्जा के क्षेत्र में एक गुरु द्वारा उसे निर्देश देने की बात है, रॉकी स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्न था, जिससे उसे मन रून सीखने में निस्संदेह बहुत मदद मिली। तथापि उसे यह एहसास तब हुआ जब उसने वास्तव में ऑर्टन के साथ अध्ययन करना शुरू किया कि वास्तव में ऑर्टन एक गुरु तो था, लेकिन एक अच्छा शिक्षक नहीं था। अब तक आपने रून के कितने स्तरों में महारत हासिल कर ली है? ऑर्टन के साथ अध्ययन के पहले दिन यह उनका पहला प्रश्न था। प्रथम स्तर, रॉकी ने सच्चाई से जवाब दिया। बेकार, आपके पास शोध नोट्स आधे साल से भी ज्यादा समय से हैं, आप क्या कर रहे थे? जैसे ही ऑर्टन ने रॉकी की प्रगति के बारे में सुना, उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसने उसे डांटना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें पहले स्तर के रून सीखने की भी जरूरत है? कोई भी जो बेवकूफ नहीं है, अगर वो पैरों से भी सीख ले तो झटपट सीख सकता है। बताओ, क्या तुम पिछले 6 महीने से पैरों से नोट्स देख रहे हो? उभरी हुई आंखों से ऑर्टन ने रॉकी को उसकी गरिमा की परवाह किए बिना डांटा, जिससे रॉकी का चेहरा लाल हो गया। गुरुजी, मेरी जादुई शक्ति केवल द्वितीय स्तर की है, इसलिए मैं केवल प्रथम स्तर के रून्स ही सीख सकता हूँ। रॉकी ने सिर झुकाकर एक नर्म बचाव पेश किया, लेकिन अगर वह ऐसा न करता तो शायद बेहतर होता। उसके इस जवाब ने ऑर्टन को पूरी तरह से आग में झोंक दिया, मानो वह कोई बारूद का ढेर हो। तुम्हारी हिम्मत है बहस करने की? तुम अपनी जादुई शक्ति का स्तर बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत क्यों नहीं करते? तुम हर दिन क्या करते रहे हो? ऑर्टन ने तीखी नजरों से रॉकी की ओर देखा और असंतुष्ट होकर बड़बड़ाया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे छोटे से टूटे फूटे शहर का स्वामी होने में इतनी व्यस्तता क्या है। सच में, ये टिप्पणी समाप्त करने के बाद उसने जल्दी से एक कागज पर कुछ लिखा और कुछ ही समय में उसने एक प्रशिक्षण योजना का मसौदा तैयार किया, फिर उसे रॉकी की ओर फेंक दिया। आज से तुम यहाँ दिए गए चरणों के अनुसार अपनी जादुई शक्ति का प्रशिक्षण लो। 1 महीने के भीतर तुम तीसरे स्तर के जादूगर बन जाओगे। फिर तुरंत दूसरे स्तर के रून सीखना शुरू करो। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? रॉकी को प्रशिक्षण योजना सौंपते हुए ऑर्टन ने आगे कहा, भले ही आप केवल प्रथम स्तर के रून्स को ही जानते हो, फिर भी आप आज की मुख्यधारा की जादुई ऊर्जा प्रौद्योगिकी के बारे में सीख सकते हैं, और आपको ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि जादुई ऊर्जा प्रौद्योगिकी मन के सभी प्रकार के अनुप्रयोगों से संबंधित है। यह एक ऐसी बात है जो जादुई पत्थरों या रून्स पर लागू होने से नहीं बदलती। मन ऊर्जा चालन तकनीक से शुरुआत करें, यह मन अनुप्रयोगों का आधार है। काफी गर्जना के बाद ऑर्टन ने अंततः रॉकी को कुछ उपयोगी ज्ञान देना शुरू किया। ये स्वीकार करना होगा कि ऑर्टन में कई स्पष्ट खामियां थीं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन अकादमिक रूप से उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी आलोचना की जा सके। एक ही दिन में रॉकी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग में एक रोशनदान खुल गया हो, जिससे उसे अचानक कई नई बातें पता चल गईं, और यह सब ऑटन के निर्देशों की बदौलत हुआ। हालांकि पहले दिन उन्होंने जादुई ऊर्जा चालन की मूल बातें ही संक्षेप में बताईं, फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से लाभदायक साबित हुआ। रॉकी ने किताबों में जो कुछ पढ़ा था वह सब अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया। इस प्रकार ऑटन के अधीन अध्ययन के दिन शुरू हुए। अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए रॉकी ने सोच समझकर एक अध्ययन योजना बनाई। उसने ऑटन के साथ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 2 घंटे के छोटे छोटे पाठ और रविवार को पूरे दिन का पाठ निर्धारित किया, जिससे उसका कार्यक्रम वाकई काफी व्यस्त हो गया। फिर भी ऑटन ने इसे भी अनिच्छा से स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह चाहते थे कि रॉकी उनके साथ हर दिन, पूरे दिन, यहाँ तक कि बिना खाना खाए भी पढ़ाई करे। इसके लिए उनके बीच कम से कम 3 बार बहस हुई, लेकिन ये बिल्कुल नामुमकिन था। आखिरकार रॉकी की पहचान सिर्फ एक छात्र की नहीं थी, वह शहर का सरदार था और उसे रोजाना कई काम निपटाने होते थे। पढ़ाई के लिए उसके पास जितना समय बचता था उसकी सीमा पहले ही पूरी हो चुकी थी। और इस तरह पलक झपकते ही एक हफ्ता बीत गया। इस दौरान रॉकी ने ऑटन के साथ 3 छोटे और 1 बड़े पाठ में भाग लिया था। मन के बारे में उसकी समझ में काफी प्रगति हुई थी और जैसे जैसे वह रॉकी से और परिचित होता गया, ऑटन ने भी उसके सामने नई मांगें रखी। उसे अपनी स्वयं की एक अनुसंधान प्रयोगशाला की आवश्यकता थी। ऑटन जैसे उस्ताद के लिए भी मन रून्स अंततः एक विदेशी तकनीक थी। इसलिए अगर वह इन रून्स को व्यवहारिक रूप से लागू करना चाहते थे तो निरंतर शोध और प्रयोग आवश्यक थे, इसलिए एक प्रयोगशाला का होना अनिवार्य था। इसके जवाब में रॉकी ने तुरंत हामी भर दी और ओल्ड जैक को सिटी लॉर्ड्स मैंशन के बगल में ऑटन के लिए एक नई लैब बनाने का निर्देश दिया। जब तक नई लैब पूरी नहीं हो जाती, ऑटन अस्थायी रूप से सिटी लॉर्ड्स मैंशन की रिसर्च लैब में ही रहेगा। आपने क्या कहा, आप शून्य जादुई कवच और तैरते युद्धपोतों को बढ़ाने के लिए रूनों का उपयोग करना चाहते हैं। एक दिन रॉकी ने अनुसंधान प्रयोगशाला में ऑटन को ढूंढा और अपना विचार प्रस्तुत किया, इस उम्मीद में कि वह अपने स्वयं के शून्य जादू कवच और थंडहॉक शहर के फ्लोटिंग युद्धपोतों को बढ़ाने के लिए रून्स का उपयोग कर सकता है। बैरन बोलिन के खिलाफ लड़ाई किसी भी समय शुरू होने की संभावना के साथ रॉकी इस अवसर का लाभ उठाकर और भी अधिक मजबूत बनना चाहता था। हम यह कोई समस्या नहीं है, ऐसा हुआ कि मेरे पास कुछ विचार हैं जिन्हें मैं आजमाना चाहता हूँ। रॉकी का अनुरोध सुनकर ऑटन ने सोच समझकर उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा, फिर न केवल तुरंत सहमति दी बल्कि उत्सुकता से कहा, बच्चे अपना शून्य जादू कवच और छोटी लड़की का कवच भी लाओ, मैं उन्हें तुम्हारे लिए बढ़ा दूंगा। यह चलो तैरते युद्धपोतों पर जादुई तोपों से शुरुआत करते हैं, क्या हम? ऑटन को शुरू करने के लिए इतना उत्सुक देखकर रॉकी ने चुपके से मुश्किल निगल ली और फिर प्रसन्नतापूर्वक सुझाव दिया। ऑटन के साथ इतना समय बिताने के बाद रॉकी उसके कुछ शानदार कामों से अच्छी तरह परिचित हो गया था, जानबूझकर जांच के माध्यम से नहीं बल्कि इसलिए कि ऑटन ने उत्सुकता से रॉकी को उन सभी के बारे में बताया था। अकेले एक प्रोजेक्ट ने कुल 7 सुपर क्रिस्टल नष्ट कर दिए थे। इसने रॉकी पर गहरी छाप छोड़ी, इसलिए जब ऑटन ने उसे अपने और लिलिया के शून्य जादुई कवच को संवर्धन के लिए लाने को कहा तो रॉकी ने साफ मना कर दिया और सुझाव दिया कि वे जादुई तोपों से शुरुआत करें। आखिरकार यदि तोपें नष्ट हो गईं तो यह बहुत बड़ी क्षति नहीं होगी, लेकिन यदि शून्य जादू कवच नष्ट हो गया तो रॉकी के पास क्षति का शोक मनाने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। छी, देखो तुम कितने डरपोक हो। रॉकी का सतर्क रवैया ऑटन की नजरों से ओझल नहीं रहा। हालांकि ऑटन शायद उसकी विनाशकारी क्षमताओं की सीमा को अच्छी तरह जानता था और जानता था कि अगर उसने पूरी ताकत झोंक दी तो थंडहॉक शहर का पूरा इलाका उसके शोध के लिए पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। बच्चे मुझे स्काईपोर्ट ले चलो, देखते हैं मैं तुम्हारे इन कबाड़ को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। रॉकी के अनुरोध को ऑटन ने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसे वास्तव में रून्स को व्यवहारिक रूप से लागू करने के अवसर की आवश्यकता थी और स्काईशिप और शून्य जादू कवच को बढ़ाना ऐसा ही एक अवसर था। हालांकि रॉकी काफी चतुर था, उसने ऑटन को शून्य जादुई कवच को बढ़ाने से शुरुआत नहीं करने दी। इसके बजाय उसने उसे थंडहॉक सिटी के एक पुराने मॉडल के स्काईशिप पर अभ्यास कराया, जो एक बहुत ही चतुराई भरा फैसला साबित हुआ। थंडहॉक सिटी के स्काईपोर्ट तक गाड़ी लेकर ऑटन ने रॉकी को तुरंत इलाका खाली करने को कहा और गार्डों समेत सभी को वहां से चले जाने का आदेश दिया। यह एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि वे स्काईशिप को मजबूत करने के लिए मैना रून्स का इस्तेमाल करने वाले थे और बाहरी लोगों को ये सब देखने नहीं देना चाहते थे। गुरुजी, आइए जादुई तोप से शुरुआत करें, रॉकी ने सुझाव दिया कि जब सभी असंबंधित व्यक्ति चले जाएं तो। वहां पहुंचते पहुंचते ऑटन काफी उत्साहित हो गया और उसने कई विचार मंथन शुरू कर दिए। उसकी योजना के अनुसार वह थंडहॉक सिटी के सभी स्काईशिप्स में मैना रून्स को फिर से लगाना चाहता था, न सिर्फ मैजिक कैनन्स को बल्कि स्काईशिप्स की मैना सप्लाई सिस्टम को भी। अगर ये बदलाव कामयाब रहे तो थंडहॉक सिटी के स्काईशिप्स के हर पहलू में काफी सुधार होगा। रॉकी के लिए बेशक ये बहुत अच्छी खबर थी, इतनी अच्छी कि स्काईपोर्ट के साफ हो जाने के बाद वह काम शुरू करने के लिए उत्सुक था। इसके बाद दोनों एक प्रथम पीढ़ी के टोही जहाज पर सवार हुए और आधिकारिक तौर पर जहाज के जादुई तोपों के रून संवर्धन का कार्य शुरू किया। रूनों को व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए हमें जादुई ऊर्जा चालन तकनीक का उपयोग करना होगा। इस पहलू में रून और जादुई पत्थर अलग नहीं हैं। एक जादुई तोप के सामने खड़े होकर ऑटन ने रॉकी के साथ मिलकर उसे अलग करना शुरू किया और जादुई ऊर्जा चालन तकनीक के अनुप्रयोग के बारे में बताया और रॉकी ने ध्यानपूर्वक सुना। वह एक हफ्ते से ऑटन से जादुई ऊर्जा चालन तकनीक पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीख रहा था और एक हफ्ते के अध्ययन के बाद रॉकी ने इस तकनीक की बुनियादी बातों में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए अब उसके लिए सिद्धांत को व्यवहार में लाने का एक अच्छा अवसर भी था। जब दोनों ने जहाज से जादुई तोप को अलग कर लिया तो ऑटन ने जादुई तोप को मजबूत करने के लिए रूनों का उपयोग करना शुरू करते हुए व्याख्या जारी रखी। ये कहना जरूरी है कि ऑटन वाकई उस्ताद थे। उन्हें माना रूनस के अस्तित्व के बारे में कब से पता था? ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते तक, लेकिन जब उन्होंने मैजिक कैनन पर रूनस लिखना शुरू किया तो वे बिना किसी मेहनत के तीसरे स्तर के रूनस बनाने में सक्षम हो गए। ऑटन जादुई ऊर्जा के क्षेत्र में अविश्वसनीय रूप से कुशल था। शोध पत्रों पर एक बार नजर डालने से ही उसने तीसरे स्तर के रून को पूरी तरह समझ लिया था और चौथे और पांचवें स्तर के रूनों का अध्ययन भी कर रहा था। इस स्तर की समझ ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर थी। दूसरी ओर ऑटन की उच्च स्तर की जादुई शक्ति ने भी उनके रून अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह स्वयं एक नौवें स्तर का ग्रैंड मैगस था, न कि केवल नौवें स्तर का जादूगर बल्कि एक नौवें स्तर का ग्रैंड मैगस। ये पद पहले से ही जादू के क्षेत्र में एक सामान्य व्यक्ति की सीमा थी और एक कदम आगे बढ़ने पर वह एक आर्कमेज बन जाता। हालांकि चूंकि ऑटन एक शोध प्रधान जादूगर था, उसकी जादुई शक्ति तो जबरदस्त थी लेकिन उसकी युद्ध क्षमता औसत दर्जे की थी। आखिरकार अनुभव तो सीमित ही होता है, लेकिन यह उसकी उच्च स्तर की जादुई शक्ति का ही कमाल था कि वह अपनी कलाई के एक झटके से तीसरे स्तर के रूनस खींच सकता था, जिसके लिए आमतौर पर छठे स्तर के जादूगर की जरूरत होती है। उसके जैसे महान जादूगर के लिए तीसरे स्तर के रूनस कोई चुनौती नहीं थे। जैसे जैसे ऑटन जादुई तोप पर रन अंकित कर रहा था और जादुई ऊर्जा चालन संबंध स्थापित कर रहा था, वह अपनी हर गतिविधि की व्याख्या करना नहीं भूल रहा था ताकि उसके बगल में खड़ा रॉकी समझ सके कि क्या हो रहा है। इस दौरान रॉकी उसका शिष्य बन गया और ऑटन की हर हरकत को बड़े ध्यान से सुनता और देखता रहा। इस तरह दोनों को जोड़ने के लिए अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करें और रूनों में निहित मन संचालन करने में सक्षम हो जाएगा। बैकवोट। ऑटन के प्रति तथा सहज कदमों ने जादुई तोप पर लगे रूनों को जोड़ दिया और फिर रून बिना किसी बाहरी बल के सक्रिय हो गए, जिससे ये संकेत मिलता है कि उन्होंने जादुई पत्थर को बदलने के लिए मैना रूनों का सफलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे उनके सामने खड़ी जादुई तोप अब रूनों द्वारा प्रदान किए गए मैना का उपयोग करके काम कर सकेगी। जादुई तोप पर लगे रूनों को अपने आप जलते देख कर रॉकी दंग रह गया। उस्ताद तो उस्ताद ही होता है, वह काम जिसे करने की उसने बार बार कोशिश की थी और नाकाम रहा था, ऑटन ने बिना किसी कठिनाई के बड़ी आसानी से पूरा कर दिया। ये वाकई अविश्वसनीय था। हालांकि जैसे ही वह इस करतब की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया, सक्रिय रून्स और भी ज्यादा चमकने लगे। बस कुछ बार पलक झपकने में ही रून्स से निकलने वाली रोशनी चकाचौंध कर देने वाली हो गई। गुरुजी, क्या ये सामान्य है? रॉकी को एहसास हुआ कि जादुई तोप पर लगे रूनों में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह तुरंत ऑटन की ओर मुड़ा। ऑटन ने भी इस असामान्यता को साफ तौर पर भांप लिया था, लेकिन एक उस्ताद होने के नाते वह रॉकी की तरह घबराया नहीं। इसके बजाय उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और अपनी ठुड्डी सहलाई, मानो कुछ सोच रहा हो। मैं अब देखता हूँ। एक क्षण बाद, मानो अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया हो, ऑटन ने कहा, पहली पीढ़ी के टोही जहाजों पर जादुई तोपें पुराने मॉडल की हैं, जिनमें मन की तीव्रता की सीमा बहुत कम है। वृद्धि के लिए सीधे तीसरे स्तर के रूनों का उपयोग करने से तोप के शरीर निश्चित रूप से इसका सामना नहीं कर सकते। क्या आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते? रॉकी ने ऑटन की बुदबुदाहट जोर से और साफ सुनी, जिससे उसे तुरंत किसी बहुत बुरी खबर का एहसास हुआ। उसने झट से जादुई तोप की तरफ देखा और ऐसा करते ही उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। कुछ ही वाक्यों में जादुई तोप पर अंकित रून न केवल चमकदार हो गए थे बल्कि तोप का ढांचा भी गहरे लाल रंग में बदल गया था, मानो उस पर तपते लावा की परत चढ़ गई हो। ये तो फटने ही वाला था। इस दृश्य को देखकर ऑटन की चेतावनी के बिना भी रॉकी को पता चल गया कि यह एक विस्फोट की प्रस्तावना थी। जैसे ही रॉकी को इसका एहसास हुआ, ऑटन ने उसका कॉलर पकड़ लिया और दोनों को एक जादुई घेरे में फंसा लिया। उसी समय रॉकी को पकड़े हुए ऑटन सीधे स्काईशिप के नीचे कूद गया और बिना कुछ कहे भागने के लिए मुड़ गया। उनके जाने के तुरंत बाद उनके पीछे अचानक एक बड़ा विस्फोट हुआ और उनका पूर्व आकाशयान ऊपर की ओर उठती आग में बदल गया। अचानक हुए विस्फोट से ऊपर एक छोटा सा काला बादल बन गया और नीचे की ओर आई शॉकवेव ने ऑटन और रॉकी को तुरंत उड़ा दिया। अगर जादुई अवरोधक की सुरक्षा न होती और ऑर्टन स्वयं एक महाजादूगर न होता तो दोनों भले ही विस्फोट के केंद्र से बच गए थे, उस शक्तिशाली विस्फोट में मारे जाते। जब रॉकी लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो वह पूरी तरह से अचंभित था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा था। जैसे ही उसने स्काईपोर्ट की ओर देखा, आग की लपटें आसमान छू रही थीं। पहली पीढ़ी के तीन टोही जहाज, जी हाँ, एक नहीं बल्कि तीन विस्फोट की चपेट में आ गए। स्काईपोर्ट पर भड़की आग और उसमें घिरे तीन टोही जहाजों को देखकर रॉकी स्तब्ध रह गया। विस्फोट की शक्ति बहुत ज्यादा थी। न सिर्फ विस्फोट के केंद्र में मौजूद टोही जहाज सीधे नष्ट हो गए, बल्कि दोनों तरफ के दो जहाज भी प्रभावित हुए और विस्फोट की चपेट में आ गए। रॉकी ने कभी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। यद्यपि उसने ऑर्टन को अपने शानदार कार्यों के बारे में बताते सुना था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ घटित होगा। अचंभित रॉकी की तुलना में उसके बगल में खड़े ऑर्टन अधिक शांत थे। ऑर्टन ने बड़ी बड़ी घटनाएं देखी थी। सिर्फ एक छोटे टोही जहाज का विस्फोट ही नहीं, उसने एक सुपर क्रिस्टल का विस्फोट भी देखा था, इसलिए उसके सामने घटी यह छोटी सी घटना शायद ही कोई उल्लेखनीय घटना मानी जाए। इसलिए जबकि रॉकी अचंभित था, ऑर्टन उसकी ठोड़ी को सहला रहा था। जाहिरा तौर पर पहले से ही इस बात पर विचार कर रहा था कि अगले संवर्धन के दौरान कैसे सुधार किया जाए। ऑर्टन, यहाँ क्या हो रहा है? कुछ समय बीत गया और स्तब्ध रॉकी अंततः अपने होश में आया। फिर ऑर्टन के पास गया और उसे कॉलर से पकड़ लिया। वह अपनी दहाड़ को नियंत्रित करने में असमर्थ था। वो तीन टोही जहाज थे, बस यूं ही टुकड़े टुकड़े हो गए। रॉकी को दर्द क्यों ना हुआ? हालांकि वो तीनों टोही जहाज थंडरहॉक सिटी के पुराने मॉडल के थे, फिर भी वो इतनी बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसकी दहाड़ के जवाब में ऑर्टन ने बस उसकी ओर उदासीनता से देखा। इसमें हंगामा करने की क्या बात है? मैंने अभी अभी जादुई तोप पर 20 तृतीय स्तरीय रून बनाए हैं। ये देखते हुए कि प्रत्येक तृतीय स्तरीय रून में 200 मन अंक होते हैं, 20 तृतीय स्तरीय रून 4000 मन अंक बनाते हैं। विस्फोट का इतना बड़ा पैमाना बिल्कुल सामान्य है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विस्फोट इतना बड़ा था कि इसमें शामिल जादुई ऊर्जा वास्तव में 4000 अंक तक पहुंच गई थी। 4000 जादुई ऊर्जा बिंदुओं का क्या मतलब है? एक अनुरक्षक जहाज की मुख्य तोप की शक्ति केवल 1300 बिंदुओं की होती है। इसका मतलब है कि विस्फोट की शक्ति एक अनुरक्षक जहाज की तीन मुख्य तोपों द्वारा एक ही लक्ष्य पर एक साथ हमला करने के बराबर थी। ऑर्टन के उदासीन रवैये के बारे में रॉकी के पास कहने को शब्द नहीं थे। आखिरकार उसे समझ आ गया कि इस बूढ़े को तीन महाशक्तियों ने लगातार क्यों खदेड़ दिया था। उसकी विनाशकारी शक्ति वाकई अद्भुत थी। तुम अभी भी क्यों टालमटोल कर रहे हो? किसी को बुलाओ और जल्दी से इस जगह को साफ करवाओ। जैसे ही रॉकी पूरी तरह से अभिभूत हुआ, ऑर्टन ने उसे किनारे कर दिया और तब तक विस्फोट से आकर्षित लोग वहां पहुंच चुके थे। लिलिया ने अपना शून्य जादुई कवच भी पहन लिया था और पूरी गार्ड कोर को अपने साथ ले आई थी, ये सोचकर कि थंडरहॉक शहर पर हमला हो रहा है। फिर भी भीड़ के सामने जो वहां पहुंची थी, रॉकी के पास समझाने की भी ऊर्जा नहीं थी। उसने केवल गार्डों को आग बुझाने और नष्ट हो चुके तीन टोही जहाजों को साफ करने का आदेश दिया और फिर लोगों को पहले वापस जाने दिया। हालांकि जब सब कुछ साफ हो गया तो रॉकी ने ऑर्टन की निगाहों में कुछ अजीब बात नोटिस की। वह थंडरहॉक को घूरता रहा। क्या तुम क्या करने जा रहे हो? जब ऑर्टन ने अचानक थंडरहॉक में रुचि दिखाई तो रॉकी उसका सामना करने के लिए दौड़ा। बच्चे, तुम्हारा फ्लैगशिप बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरी पीढ़ी के एस्कॉर्ट शिप का एक फ्लैगशिप संस्करण। चाहे वह पतवार हो या उस पर लगी जादुई तोप, दोनों ही हमारे पहले वाले पहली पीढ़ी के टोही जहाज से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। इस युद्धपोत का इस्तेमाल रूनों का परीक्षण करने के लिए करने से निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बारे में सोचना भी मत। अगर तुमने थंडरहॉक को छूने की हिम्मत की तो मैं तुमसे लड़ूंगा। यह महसूस करते हुए कि ऑर्टन की नजरें वास्तव में अपने फ्लैगशिप पर टिकी हैं, रॉकी तुरंत अपने चूजों की रक्षा करने वाले मुर्गे की तरह हो गया। उसने उसे रोक दिया और उसे थंडरहॉक के करीब आधा कदम भी नहीं आने दिया। हालांकि तीनों टोही जहाजों के नष्ट होने से रॉकी को बहुत दुख हुआ था, लेकिन आखिरकार वे थंडरहॉक शहर के पुराने टोही जहाज थे और हालांकि उनका विनाश अफसोसजनक था, लेकिन ये थंडरहॉक शहर के एकमात्र बेड़े को पंगु बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन अगर ऑर्टन थंडरहॉक को भी उड़ा देता तो रॉकी को लगता कि उसका दिल सचमुच टूट जाएगा। इसके अलावा सिर्फ एक जादुई तोप को बढ़ाकर तीन टोही जहाजों को सीधे नष्ट कर दिया गया। अगर ऑर्टन थंडरहॉक के साथ छेड़छाड़ करता तो क्या वह अंततः थंडरहॉक शहर को उड़ा नहीं देता? जोखिम बहुत ज्यादा था और रॉकी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए रॉकी के बार बार अनुरोध करने पर ऑर्टन अंततः थंडरहॉक को निराश होकर देखता रहा और हार मानकर फिर से पुराने टोही जहाज पर सवार हो गया। इतना ही नहीं, रॉकी ने यह भी मांग की कि वह अब जादुई तोप को मजबूत करने के लिए तीसरे स्तर के रूनों का इस्तेमाल न करे, बल्कि पहले स्तर के दूसरे स्तर के रूनों का इस्तेमाल करे। दरअसल दूसरे स्तर के रून में भी जादुई तोप के लिए पर्याप्त मान था। इसके अलावा जादुई तोप में पहले से ही जादुई पत्थर मौजूद थे, इसलिए मान निकालने के लिए पूरी तरह से रूनों पर स्विच करना जरूरी नहीं था। जादुई पत्थरों और रूनों को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करना पूरी तरह से संभव था। जहां तक उनकी मांगों का सवाल है, ऑटन निश्चित रूप से बहुत अनिच्छुक थे, लेकिन शायद वह ये भी जानते थे कि थंडहॉक सिटी उनके अंतहीन प्रयोगों का सामना करने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए अंत में उन्होंने अनिच्छा से रॉकी की मांगों पर सहमति व्यक्त की। इसके साथ ही स्काईशिप्स का विकास आखिरकार शुरू हो गया, और जैसे ही ऑटन ने अपनी क्षमताएं कम की, उसकी असली क्षमताएं, या यूं कहें कि उसका सामान्य रूप सामने आने लगा। सिर्फ एक दिन में उसने 3 स्काईशिप्स पर मैजिक कैनन्स का विकास पूरा कर लिया, जिनमें थंडहॉक सिटी का एक पुराना टोही जहाज और 2 एयरशिप मॉडल 6 टोही जहाज शामिल थे। चूंकि समय कम था, ऑटन ने तीनों युद्धपोतों पर केवल जादुई तोपों को ही बढ़ाया। हालांकि वह युद्धपोतों की मैना आपूर्ति प्रणालियों को भी उन्नत करना चाहता था, रॉकी ने उसे पूरी तरह से रोक दिया। रॉकी अब और नुकसान नहीं झेल सकता था। फिर भी इस सुधार के बाद दोनों एयरशिप मॉडल 6 टोही जहाजों पर मौजूद जादुई तोपों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जादुई तोपों की शक्ति 400 से बढ़कर 600 अंक हो गई। संख्यात्मक दृष्टि से यह वृद्धि बड़ी नहीं लग सकती, लेकिन प्रतिशत के रूप में गणना करने पर यह वृद्धि 50% से अधिक थी, जिससे एयरशिप मॉडल 6 टोही जहाजों पर मैजिक तोपों की मारक क्षमता एस्कॉर्ट जहाजों की द्वितीयक तोपों के बराबर हो गई। इस दर पर ऑटन को थंडहॉक सिटी में प्रत्येक स्काईशिप पर सभी मैजिक कैनन को रून्स के साथ बढ़ाने में आधे महीने से भी कम समय लग सकता है, जिससे पूरे बेड़े को मारक क्षमता के एक और स्तर तक उठाया जा सकेगा। ये परियोजना वाकई बहुत बड़ी थी और इसे केवल ऑटन ही पूरा कर सकता था। शायद रॉकी और अन्य लोग जादुई तोपों को लोड और अनलोड करने में मदद कर सकते थे, लेकिन रून खींचने और मनचालन जैसे महत्वपूर्ण कार्य केवल ऑटन ही कर सकते थे। किसी और के पास आवश्यक तकनीकी कौशल नहीं था। हालांकि यह बहुत मेहनत का काम था, ऑटन उत्साह से भरपूर था। पूरे दिन की व्यस्तता और एक बड़े विस्फोट से बचकर वह फिर भी ऊर्जा से भरपूर सिटी लॉर्ड के महल में लौटा और रॉकी से ब्लड पैटर्न मार्क 2 और फायर गार्ड टाइप 5 कवच लाने की गुहार लगाई ताकि वह वॉर्ड मैजिक कवच को और बेहतर बना सके। लेकिन इस तरह के अनुरोध का सामना करते हुए रॉकी हिचकिचाया। ऑटन ने शून्य जादू कवच को बढ़ाने में अपनी मदद की पेशकश करने की पहल की, जो निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी, विशेष रूप से इस समय पर। बैरन बोलिन किसी भी समय अपने बेड़े के साथ आ सकते थे, और सिरिल की खुफिया जानकारी के अनुसार बैरन बोलिन खुद एक अनुभवी शून्य जादू योद्धा थे जिनके पास काफी उन्नत ब्लड पैटर्न मार्क 2 कवच था। इन परिस्थितियों में अगर ऑटन रॉकी और लिलिया दोनों के कवच को बेहतर बना सके, तो निस्संदेह बैरन बोलिन का सामना करते समय उन दोनों पर दबाव कम हो जाएगा। हालांकि घटनाओं के ऐसे अनुकूल मोड़ का सामना करते हुए रॉकी हिचकिचाया। हाँ, वह इस डर से हिचकिचा रहा था कि कहीं ऑटन उसके ब्लड पैटर्न मार्क 2 और लिलिया के फायर गार्ड टाइप 5 को बर्बाद न कर दे। ये कहना जरूरी है कि उस दिन स्काईपोर्ट में हुए बड़े विस्फोट ने रॉकी पर गहरा मानसिक साया डाल दिया था। उसे डर था कि ऑटन उसके शून्य जादुई कवच के 2 ही सेट नष्ट कर देगा, यानी उसे इस मामले में ऑटन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। ये ऑटन की क्षमताओं पर संदेह करने का प्रश्न नहीं था, बल्कि उनकी मानसिकता के बारे में आश्वस्त न होने का प्रश्न था। दिन के समय स्काईपोर्ट में हुआ विस्फोट एक दुर्घटना प्रतीत हुआ, लेकिन गहनता से विचार करने पर पता चला कि क्या ये वास्तव में एक दुर्घटना थी। ऑटन किस स्तर के मास्टर थे? क्या जब वह जादुई तोप को बढ़ा रहा था, तो क्या वह सचमुच भूल गया था कि बंदूक का शरीर रून का सामना नहीं कर सकता? अगर कोई सचमुच ऐसा सोचता, तो वह उसे बहुत कम आंक रहा होता। ऑटन निश्चित रूप से ऐसी कोई नौसिखिया गलती नहीं करेगा। उसने शायद ये जानते हुए भी कि बंदूक का शरीर तीसरे स्तर के रून का सामना नहीं कर सकता, विस्फोट का कारण बना वृद्धि की। ये बात समझ में आती थी क्योंकि माना रून्स इस दुनिया के लिए बिल्कुल नई तकनीक थी। हालांकि उनमें कुछ आधुनिक तकनीकों से काफी समानता थी और आज के कुछ सिद्धांतों को सीधे लागू किया जा सकता था, फिर भी वे सिर्फ सिद्धांत ही थे। उनका सत्यापन कैसे नहीं हो सकता था? और हो सकता है कि ऑटन ने इस प्रकार के सत्यापन के लिए ही दिन में बड़ा विस्फोट किया हो, जिससे 3 टोही जहाज नष्ट हो गए हों। विद्वत्ता के प्रति उनका सख्त रवैया वाकई काबिले तारीफ था, लेकिन रॉकी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते थे। अगर ऑटन शून्य जादुई कवच के संवर्धन के दौरान एक और जोखिम भरा सत्यापन करते और उसे नष्ट कर देते, तो रॉकी किससे स्पष्टीकरण मांगते? फिर शून्य जादुई कवच पहने बैरन बोलिन का सामना कौन करेगा? इसके अलावा हालांकि आज मैजिक कैनन का संवर्धन बहुत सफल रहा, फिर भी इस प्रक्रिया के दौरान कुछ समस्याएं जरूर सामने आईं। इन समस्याओं से संकेत मिलता है कि व्यावहारिक अनुप्रयोग में मन रून सभी भी कुछ हद तक अस्थिर थे और उन्हें स्थिर रूप से लागू करने से पहले कई प्रयोगों की आवश्यकता थी। इन परिस्थितियों में रॉकी ऑटन को शून्य जादू कवच को बढ़ाने देने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक था। आखिरकार पहनने वाले वह और लिलिया थे, इसलिए काफी हिचकिचाहट के बाद रॉकी ने अंततः ऑटन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनका मानना था कि बेहतर होगा कि ऑटन पहले मैजिक कैनन्स को बेहतर बनाने पर काम करके और अनुभव हासिल करें, भले ही इसमें कुछ प्रयोग करने पड़े। शून्य मैजिक कवच को बेहतर बनाने से पहले तकनीक के परिपक्व होने तक इंतजार करना ज्यादा सुरक्षित होगा। हालांकि रॉकी ने बूढ़े आदमी ऑटन को कम करके आंका था। अपने इनकार के तीसरे दिन ऑटन ने उस अवसर का लाभ उठाया जब रॉकी प्रशासनिक मामलों में व्यस्त था और उसके कमरे में घुसकर शून्य जादू कवच चुरा लिया। और जब रॉकी को पता चला कि उसका शून्य जादू कवच गायब है और उसने तुरंत ऑटन के बारे में सोचा और उसे खोजने चला गया। ऑटन ने पहले ही रक्त पैटर्न मार्क 2 को बढ़ाने का काम पूरा कर लिया था। ये कितना बढ़िया है, क्या आप आश्चर्यचकित हैं, क्या आप रोमांचित हैं? प्रयोगशाला में फंसे ऑटन को जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई और न ही उसने अपराध स्वीकार करने का कोई इरादा दिखाया। इसके बजाय उसने रॉकी के सामने गर्व से उस ब्लड पैटर्न मार्क 2 कवच के बारे में शेखी बघारी जिसे उसने चुराया था। तुम ऑटन का सामना करते हुए, जो किसी दुष्ट से अलग नहीं था, रॉकी पूरी तरह से क्रोधित हो गया और फिर उसने ऑटन पर उसकी उम्र का विचार किए बिना चिल्लाया, यहां तक कि उसे गालियां भी दी। दुर्भाग्यवश ऑटन ने इस विस्फोट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और इसे ऐसे समझा जैसे कि यह उसके कानों के पास से गुजर गया हो, जिससे रॉकी गुस्से में अपने पैर पटकने लगा, लेकिन वह उस बूढ़े व्यक्ति को कुछ भी नहीं कर सका। हालांकि ऑटन ने ब्लड पैटर्न मार्क 2 चुराकर उसे खुद ही बेहतर बनाया था, लेकिन उसने उसे बिल्कुल भी खराब नहीं किया था। दरअसल उसके इस बदलाव के बाद ब्लड पैटर्न मार्क 2 पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मैंने इस कवच को कितना उन्नत किया है? रॉकी जब तक सांस फूलने तक गालियां और बड़बड़ाहट देता रहा। ऑटन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कवच की चोरी कभी हुई ही न हो, फिर भी वह गर्व से भरा हुआ था। बच्चे, मेरे संवर्धन के बाद इस ब्लड पैटर्न मार्क 2 कवच का मान 900 अंक तक पहुंच गया है। क्या? ये सुनकर रॉकी, जो अभी भी गुस्से में था, आश्चर्य से रुक गया और फिर प्रयोगात्मक मेज पर रखे ब्लड पैटर्न मार्क 2 कवच की ओर देखने लगा। आप कह रहे हैं कवच का मान 900 अंक तक बढ़ा दिया गया है? रॉकी ब्लड पैटर्न मार्क 2 को अच्छी तरह जानता था। उसे अच्छी तरह पता था कि इसका अपना मन केवल 300 पॉइंट्स का था, जो वाकई बहुत कम था। यहां तक कि उनके रून कार्य के साथ भी मन 500 अंक से अधिक नहीं हुआ था और उनके पिछले संवर्धन सती थे। उन्होंने एक साधारण संवर्धन के लिए केवल जादुई ऊर्जा उपकरण के सिद्धांत का उपयोग किया था, जिसका अर्थ था कि मन के अतिरिक्त 200 अंक भी काफी बड़े हुए थे। डांटना बंद कर दिया। रॉकी का ध्यान भटकता देख ऑटन ने नाक भान सिकुड़ी और फिर अपनी ठुड्डी से उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, अब तुम्हें एहसास हुआ कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, है ना? ये कहने के बाद वह प्रायोगिक मंच पर गया, वहां चुपचाप पड़े रक्त पैटर्न जनरेशन 2 कवच को अपने हाथ से थपथपाया और फिर बोला, इस कवच पर आपने जो भी रून बनाए थे वे सभी मैंने मिटा दिए हैं। मैंने उन्हें द्वितीय स्तरीय रून्स के साथ पुनः तैयार किया है और उन्हें जादुई ऊर्जा चालन के कवच के साथ जोड़ दिया है, जिससे इसका मान 300 अंक से सीधे 900 अंक तक बढ़ गया है और यह पूरी तरह से दोगुना हो गया है। अब जब कवच के इस सेट को बढ़ाया गया है तो ये पहली पीढ़ी के कवच की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर गया है और दूसरी पीढ़ी के शून्य जादू कवच के स्तर तक पहुंच गया है। प्रभावशाली है ना? आश्चर्यजनक, रोमांचक। आत्मसंतुष्टि के साथ यह सब कहने के बाद ऑटन प्रशंसा चाहने वाले एक बूढ़े बच्चे की तरह लग रहे थे। उसकी सारी बातें सुनकर रॉकी हैरानी से मुंह खोले बिना नहीं रह सका। उसने सोचा भी नहीं था कि ऑटन कवच बढ़ाने में सचमुच कामयाब हो जाएगा। नहीं, ये कहना सही नहीं था, उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ऑटन कवच बढ़ाने में कामयाब तो हो जाएगा, लेकिन उसका कवच खराब नहीं होगा। ठीक है, बस वहां खड़े मत रहो, जल्दी करो और इसे लगाओ, मुझे देखने दो कि यह संवर्धित होने के बाद कैसा प्रदर्शन करता है, यह महत्वपूर्ण डेटा है। रॉकी को अभी भी स्तब्ध देखकर ऑटन ने अधीरता से उससे आग्रह किया कि वह जल्दी से कवच पहनकर देखे ताकि मजबूत होने के बाद उसका वास्तविक प्रभाव देख सके। उस पल रॉकी स्वाभाविक रूप से इसे आजमाने के लिए उत्सुक था। आखिरकार ऑटन के अनुसार ब्लड पैटर्न मार्क 2 उन्नत होने के बाद एक नए कवच के बराबर था। लेकिन जैसे ही वह कवच पहनने वाला था, रॉकी ने अचानक अपनी नजर ऑटन की ओर घुमाई। गुरुजी, ये कवच पहनते ही मैं फट तो नहीं जाऊंगा, है ना? यह क्या बकवास है? ऑटन ने जैसे ही यह सुना वह वहीं भड़क गया और फिर घबरा कर बोला, बिना कोशिश किए हमें कैसे पता चलेगा कि यह फटेगा या नहीं? जल्दी करो और कोशिश करो। जबकि रॉकी को परेशान करने वाले बूढ़े ऑटन द्वारा परेशान किया जा रहा था, बैरन बोलिन पहले ही अपने बेड़े के साथ अपनी यात्रा शुरू कर चुका था। चूंकि परिवार उनके और रॉकी के बीच के मामले में दखल देने को तैयार नहीं थे, इसलिए बैरन बोलिन को थंडरहॉक सिटी में अपना पद संभालने के लिए अपनी ताकत पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन उनके लिए यह कोई मुद्दा नहीं था। उनके अधीन एक पूरा बेड़ा होने के कारण उन्होंने रॉकी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उनके विचार में सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं थी कि क्या वह थंडरहॉक सिटी में सुचारू रूप से कार्यभार संभाल पाएंगे, बल्कि यह थी कि वहां कैसे पहुंचे। आकाश जमीन जैसा नहीं था, हालांकि आकाशयान आकाश में उड़ सकते थे, लेकिन उनकी सीमा सीमित थी। अपने परिवार की शक्ति के बिना बैरन बोलिन को थंडरहॉक शहर तक पहुंचने का रास्ता खुद ढूंढना होगा। वह पहले वहां से क्यों नहीं गया, इसका कारण ठीक यही था। लेकिन अब चीजें बेहतर होती दिख रही थीं। उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके एक छोटे से स्काई सिटी के सिटी लॉर्ड को ढूंढ लिया था जो उसे थंडहॉक सिटी पहुंचाने को तैयार था। तो बैरन बोलिन अंततः रवाना हो सके। माटू शहर के स्वामी, मैं वास्तव में इसके लिए आपका बहुत बड़ा ऋणी हूँ। ओह, ये कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी बात है, सब छोटी छोटी बातें हैं। माटू शहर एक छोटा सा आकाशीय शहर जिसका नाम उसके नगर स्वामी के नाम पर रखा गया है, जिसकी आबादी लगभग 3,000 है। बैरन बोलिन को थंडहॉक शहर में ले जाने के लिए तैयार था। यह आकाशीय शहर का स्वामी था जिसने इस एहसान के लिए सहमति व्यक्त की थी। जब बैरन बोलिन अपने बेड़े के साथ माटू शहर की ओर बढ़े तो नगर स्वामी माटू ने उनका बहुत स्वागत किया, यहां तक कि उसी दिन उनके लिए एक नृत्य समारोह का भी आयोजन किया। आखिरकार बैरन बोलिन एक महान परिवार के सदस्य थे और अपने शहर के स्वामी बनने वाले थे, इसलिए उनका गर्मजोशी से स्वागत करना ही उचित था। पार्टी के दौरान बैरन बोलिन स्वाभाविक रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए। लेकिन जैसे जैसे थंडहॉक सिटी पहुंचने का समय नजदीक आता गया, बैरन बोलिन घबराने और अधीर होने लगे। उन्होंने लॉर्ड माटू से कई बार पूछा कि वे पार्टी के दौरान थंडहॉक सिटी कब पहुंच पाएंगे। निश्चिंत रहो नगरपाल बोलिन, तुमने मुझे जो निर्देशांक दिए हैं वे हमसे ज्यादा दूर नहीं हैं। एक हफ्ते में मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें एक हफ्ते के अंदर थंडहॉक शहर के नगरपाल के सिंहासन पर बिठा दूंगा। कुछ चिंतित बैरन बोलिन का सामना करते हुए लॉर्ड माटू ने उसकी छाती थपथपाई तथा ये गारंटी दी कि वह एक सप्ताह के भीतर बैरन को थंडहॉक सिटी और उसके सिटी लॉर्ड के सिंहासन पर बैठा देगा। पुनश्च पुस्तक विमोचन के अवसर पर मैंने पिछले सप्ताह के दैनिक अपडेट जारी रखे हैं और मेरे प्रिय पाठकों, मैं आपसे तहे दिल से क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं। पुस्तक का आधिकारिक विमोचन कल होगा और मैं इस सप्ताह के किसी भी छूटे हुए अपडेट को तुरंत पूरा कर दूंगा। अपडेट का शेड्यूल भी अब प्रतिदिन कम से कम 2 अध्यायों का हो जाएगा। मैं आप सभी के निरंतर सहयोग के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इस पुस्तक का ज्यादा प्रचार नहीं किया गया है, इसलिए इसकी वर्तमान सफलता पहले से ही संतोषजनक से कहीं ज्यादा है और इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। लॉन्च के बाद मैं कड़ी मेहनत जारी रखूंगा। कहानी और भी रोमांचक होने वाली है, खासकर आने वाले हवाई युद्ध के साथ, जिसके बारे में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसे बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है और यह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अंत में मुझे उम्मीद है कि आप इस किताब के विमोचन के बाद भी इसका समर्थन करते रहेंगे ताकि यह बेहतरीन परिणाम हासिल कर सके। आपका समर्थन ही इस विनम्र जासूस के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब तक बैरन बोलिन ने प्रस्थान किया, रॉकी ने थंडहॉक सिटी को रोक दिया था, अन्यथा बैरन बोलिन इतनी सटीकता से थंडहॉक सिटी का पता नहीं लगा पाते। हालांकि थंडहॉक सिटी को रोकने के लिए रॉकी का चुनाव सही नहीं था। उसने शहर को एक सूखी झील के ऊपर बसाया था, जिसकी वजह से नीचे झील होने के कारण हवाई क्षेत्र साल भर घने बादलों से घिरा रहता था। नतीजतन थंडहॉक सिटी हमेशा इन बादलों से घिरा रहता था और थंडहॉक शहर पर छाए बादल युद्ध की छाया जैसे लग रहे थे, जिससे पूरे शहर में दमनकारी माहौल छा गया था। फेली, बेड़े का प्रशिक्षण कैसा चल रहा है? सिटी लॉर्ड्स हॉल में रॉकी ने नीचे भीड़ का निरीक्षण किया और अंततः उसकी नजर फेली पर टिक गई। चूंकि फेली को रॉकी द्वारा थंडहॉक सिटी के प्रथम बेड़े की कमान के लिए पदोन्नत किया गया था और वह सीधे रॉकी को रिपोर्ट करता था, इसलिए वह मामलों पर चर्चा करने के लिए सिटी लॉर्ड्स हॉल में प्रवेश करने के लिए पात्र था। नगरपालिका बेड़े ने 4 बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण अभ्यास किए हैं और चालक दल के सभी सदस्य युद्ध के लिए तैयार हैं। कृपया निश्चिंत रहें। रॉकी के सामने खड़े होकर फेली ने अत्यंत सूक्ष्मता से बात की। वह चतुर था और जानता था कि भले ही वह सिटी लॉर्ड्स हॉल में पहुंच गया था और थंडहॉक सिटी का वरिष्ठ अधिकारी माना जा सकता था, लेकिन फेली को पता था कि वहां मौजूद लोगों में उसकी वरिष्ठता सबसे कम थी और इसलिए उसने अत्यंत सावधानी से काम लिया। क्या टोही जहाज भेज दिए गए हैं? प्रभु, आपके निर्देशानुसार प्रतिदिन 5 टोही जहाज खोज के लिए भेजे जाते हैं। बहुत अच्छा। फेली से कुछ और प्रश्न पूछने के बाद रॉकी ने ओल्ड जैक की ओर मुड़कर कहा, लॉर्ड जैक, मैं युद्ध के दौरान थंडहॉक सिटी में कोई दुर्घटना नहीं चाहता, इसलिए कृपया अतिरिक्त सावधानी बरतें। आसन युद्ध के साथ रॉकी ने अपनी सारी ऊर्जा युद्ध पर केंद्रित करने का इरादा किया। इस प्रक्रिया के दौरान थंडहॉक सिटी के भीतर किसी भी समस्या की अनुमति देने के लिए वह दृढ़ता से तैयार नहीं था, न ही वह किसी भी मुद्दे को उत्पन्न होने की अनुमति देगा। निश्चिंत रहिए प्रभु, मैं कैप्टन लिलिया के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करूंगा और निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत अच्छा। रॉकी ने सिर हिलाते हुए एक गहरी सांस ली और फिर सभी को संबोधित करते हुए कहा, सज्जनों, बैरन बोलिन जल्द ही आने वाले हैं, इसलिए कृपया अतिरिक्त सावधानी बरतें। हम इस लड़ाई में कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, कृपया आश्वस्त रहें प्रभु। कुछ निर्देश देने के बाद रॉकी ने सबको विदा किया और लिलिया के साथ अपने कमरे में वापस आ गया, लेकिन कमरे में वापस आकर भी उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वह मुस्कुरा नहीं सका। जैसा कि रॉकी ने पहले बताया था, वे लगभग एक महीने पहले ही इटर्नल सिटी से निकल चुके थे, यानी बैरन बोलिन किसी भी समय आ सकते थे या शायद पहले से ही आ रहे हों। इसलिए रॉकी दिन ब दिन और भी ज्यादा चिंतित होता जा रहा था। उसे चिंतित होना ही था। बैरन बोलिन के साथ आसन युद्ध सीधे थंडहॉक शहर के भाग्य का निर्धारण करेगा। अगर वह जीत गया तो वह थंडहॉक शहर का नगर स्वामी बना रहेगा, लेकिन अगर वह हार गया तो उसे नगर स्वामी का पद छोड़ना होगा। इसलिए इस युद्ध को जीतने के लिए रॉकी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली। उसने न सिर्फ बेड़े को कई प्रशिक्षण अभ्यास करवाए, बल्कि ऑटन से तीसरी पीढ़ी के टोही जहाजों और दो अनुरक्षक जहाजों पर मौजूद सभी जादुई तोपों को रून संवर्धन से भी मजबूत करवाया। साथ ही वह और लिलिया भी हर दिन अपना शून्य जादू कवच पहनकर अभ्यास करते थे, ताकि यथासंभव पूरी तरह से तैयार हो सकें। फिर भी रॉकी की घबराहट बढ़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया उसे एक अकथनीय और तीव्र पूर्वाभास होने लगा, बैरन बोलिन जल्द ही आ रहा था। इस अशुभ आशंका के कारण उन्होंने प्रतिदिन कम से कम 5 टोही जहाजों को थंडहॉक शहर के चारों ओर गश्त के लिए भेज दिया, ताकि बैरन बोलिन की गतिविधियों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। समय बीतता गया दिन ब दिन, और थंडहॉक शहर युद्ध के लिए काफी समय से तैयार था। सब कुछ तैयार था, बस बैरन बोलिन के आने का इंतजार था। और यह इंतजार ज्यादा लंबा नहीं चला। एक दिन थंडहॉक शहर के आसपास गश्त कर रहे एक टोही जहाज पर कई चालक दल के सदस्य डेक पर बातचीत कर रहे थे और काफी आराम से दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये ढील असल में दिखावा थी। आखिरकार सभी जानते थे कि एक बड़ा युद्ध होने वाला है, जिसकी तैयारी एक महीने से हो रही थी। वे भला कैसे निश्चिंत हो सकते थे? अंकल विल, हवाई युद्ध वास्तव में कैसा होता है? डेक पर खड़े एक युवा नाविक ने एक वृद्ध नाविक से सहजता से पूछा। बड़े नाविक ने हंसते हुए जवाब दिया, हवाई युद्ध निश्चित रूप से बहुत तीव्र होता है। तैरते हुए युद्धपोत एक दूसरे पर जादुई तोपों से हमला करते हैं। आपने निश्चित रूप से ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। छी अंकल, हमें कम मत आंकिए। हमने नगर स्वामी के साथ भूमि पर जाते हुए सैकड़ों राक्षसों से लड़ाई लड़ी है, डेक पर मौजूद एक अन्य युवक बोला, जो थोड़ा असंतुष्ट लग रहा था। बड़े नाविक अंकल विल रॉकी द्वारा इटर्नल सिटी से काम पर रखे गए एक बूढ़े नाविक थे। वे कई हवाई युद्धों में भाग ले चुके थे, जबकि उनके आसपास के युवा थंडहॉक सिटी के अपने नाविक थे, जिन्होंने बैकहिल विलेज के मिशन में भाग लिया था। तुम नौजवानों को कुछ समझ नहीं आता, हे हे, विल, जो 40-50 साल का था, हंसते हुए बोला, जमीन पर लड़ाई आसमान में लड़ाई से अलग होती है। सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने हवाई युद्ध का सच्चा अनुभव किया हो। अभी तुम्हें समझाने का कोई तरीका नहीं है। चाचा, क्या आपने नहीं बताया था कि आप कई हवाई लड़ाइयों से गुजरे हैं? हमें इसके बारे में बताए। हे हे, आपने सही व्यक्ति से पूछा है। मैं शेख ही नहीं बघार रहा, लेकिन उन हवाई लड़ाइयों में मैंने भाग लिया था। जैसे ही विल ने अपने अनुभवों के बारे में बोलना शुरू किया, उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। वह अचानक बीच वाक्य में ही ठिठक गया। उसके चेहरे पर विजयी भाव स्पष्ट हो गया। चाचा, चलिए और हमें बताइए। हाँ, चलो, बात करते रहो। उसे बीच में ही बोलते बोलते रुकते देख आसपास के युवा नाविक विशेष रूप से चिंतित हो गए और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लगे। लेकिन उस क्षण विल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जहाज के आगे वाले भाग की ओर इशारा किया और अचानक चिल्लाया, ये स्काई सिटी है। उसकी चीख सुनकर सभी ने तुरंत अपना सिर घुमाया और उनकी आंखें धनुष के ऊपर से गुजरते हुए घने बादलों के बीच से एक विशाल संरचना को धीरे धीरे पास आते हुए देखा। आकाश नगर, एक आकाश शहर। इस विशाल संरचना को अपने सामने प्रकट होते देख वे सभी तुरंत समझ गए कि यह क्या है, स्काई सिटी। इतनी दूर थंडहॉक सिटी की दिशा में जा रहे स्काई सिटी का अचानक प्रकट होना एक मूर्ख भी समझ सकता था कि इसका क्या मतलब है। इसलिए एक क्षण के स्तब्ध मौन के बाद अंकल विल ने स्वयं को एक वरिष्ठ नाविक साबित किया और जवाब देने का बीड़ा उठाया। जल्दी करो, थंडहॉक सिटी से संपर्क करो, उन्हें दुश्मन के देखे जाने की सूचना दो। पास खड़े एक युवक पर चिल्लाने के बाद उसने दूसरों को निर्देश दिया, जहाज को तुरंत मोड़ दो, दुश्मन को हमें देखने मत दो, हमें तुरंत थंडहॉक सिटी वापस जाना है। P.S. ये पहला विमोचन है, आज 5 अध्याय प्रकाशित हो रहे हैं। सभी युद्धपोत उड़ान भरें। माटू शहर के स्काईपोर्ट में बैरन बोलिन चौथी पीढ़ी के ईगल क्लॉ टाइप 3 कवच से सुसज्जित अपने प्रमुख जहाज पर खड़े हुए और पूरे बेड़े को रवाना होने का आदेश जारी किया। उनके आदेश के साथ स्काईपोर्ट के अंदर दर्जनों तैरते युद्धपोतों ने उड़ान भरी और स्काईपोर्ट के रक्षा नेटवर्क से दूर थंडहॉक शहर की ओर शान से उड़ चले। जैसे ही थंडहॉक शहर ने माटू शहर को देखा, माटू शहर ने भी थंडहॉक शहर को देख लिया। उत्सुक बैरन बोलिन तुरंत अपने पूरे बेड़े के साथ उस शहर की ओर रवाना हो गया जो उसका था। सिरिल ने रॉकी को जो जानकारी पहले दी थी वह जरा भी बड़ा चढ़ाकर नहीं दी गई थी। बैरन बोलिन के निजी बेड़े में वास्तव में 30 से अधिक तैरते हुए युद्धपोत थे। सटीक रूप से कहें तो 32, जिनमें 31 तीसरी पीढ़ी के चीता टाइप 2 टोही जहाज और तीसरी पीढ़ी के वॉचर प्रकार के एस्कॉर्ट जहाज का एक प्रमुख संस्करण शामिल था। हाँ, बैरन बोलिन के बेड़े में भी एक प्रमुख जहाज था और यह रॉकी के स्कवेंजर टाइप एक फ्लैगशिप के समान वर्ग का था, जिसे बैरन बोलिन ने बैरन नंबर नाम दिया था। ये बोलिन सचमुच बहुत मजबूत है। स्काईपोर्ट के भीतर सिटी लॉर्ड माटू ने बैरन बोलिन को अपने बेड़े को धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए देखा। उनके मन में प्रशंसा की भावना उमड़ रही थी। क्या यही महान परिवारों की शक्ति थी? ये सोचकर कि एक महान परिवार की सेवा करने वाले एक कुलीन के पास इतनी दुर्जेय निजी सेना थी, माटू, जो स्वयं एक सिटी लॉर्ड थे, बेहद प्रभावित हुए। उनकी प्रशंसा अनावश्यक विनम्रता का प्रतीक नहीं थी। वास्तव में नगर स्वामी होने के नाते माटू अधिकांश लोगों की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता था। बैरन बोलिन के बेड़े का आकार और गुणवत्ता कुछ छोटे आकाशीय नगरों की वायु सेनाओं से भी अधिक दुर्जेय थी, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। यहां तक कि माटू का अपना आकाशीय नगर, हालांकि उसके पास एक बेड़ा था, आकार या गुणवत्ता में बैरन बोलिन की निजी सेना के बराबर नहीं था। हर बार जब वह ये सोचता था कि नगर स्वामी होने के बावजूद उसकी अपनी सैन्य शक्तियां बोलिन की निजी सेना जितनी मजबूत नहीं थी, तो माटू को बहुत बुरा लगता था। यही कारण था कि वह बैरन बोलिन के साथ इतने उत्साह से पेश आता था। इस बीच माटू शहर के रक्षा नेटवर्क से आगे बढ़कर बैरन बोलिन तेजी से घने बादलों की परत में गायब हो गए। हालांकि इस हवाई क्षेत्र में बादल घने थे, फिर भी उन्होंने बेड़े की यात्रा में बाधा नहीं डाली और पूरी गति से आगे बढ़ते हुए बेड़ा जल्द ही थंडहॉक शहर के पास पहुंच गया। थंडहॉक शहर से एक दर्जन मील की दूरी पर पहुंचते ही बैरन बोलिन ने बेड़े को आगे बढ़ने से रोकने का आदेश दिया और फिर अपने डिप्टी से कुछ शब्द कहे। डिप्टी तुरंत देख के नीचे गया और कुछ ही क्षणों में एक टोही जहाज बेड़े से अलग होकर बादलों के बीच से थंडहॉक शहर की ओर अकेले उड़ान भरता हुआ निकल पड़ा। प्रस्थान करने वाले टोही जहाज पर बैरन बोलिन द्वारा थंडहॉक शहर में भेजा गया दूत था, जो रॉकी को वहां से चले जाने के लिए कह रहा था। हालांकि बैरन बोलिन अपने बेड़े को थंडहॉक शहर के बहुत करीब ले आया था, फिर भी उसे लगा कि अगर हो सके तो युद्ध से बचना ही बेहतर है, और इस सोच का रॉकी से कोई लेना देना नहीं था। उसके इस विचार का कारण यह था कि वह थंडहॉक शहर को पहले ही अपना मानने लगा था। बैरन बोलिन के विचार में थंडहॉक शहर के आसपास एक विशाल आकाशीय युद्ध में शामिल होना जोखिम भरा था। क्या होगा अगर इसका असर थंडहॉक शहर पर पड़ा? वह उसका अपना शहर था। भले ही रॉकी का सारा प्रतिरोध व्यर्थ हो, लेकिन युद्ध से शहर को होने वाला कोई भी नुकसान अंततः उसका ही नुकसान होगा। इसलिए बैरन बोलिन अभी भी थंडहॉक शहर पर शांतिपूर्वक कब्जा करने की उम्मीद कर रहे थे। एक दर्जन मील की दूरी एक स्काईशिप के लिए, विशेष रूप से एक टोही जहाज के लिए, पलक झपकने के बराबर थी। इसलिए लगभग 15 मिनट के भीतर बैरन बोलिन द्वारा भेजा गया टोही जहाज थंडहॉक सिटी के पास पहुंचा और बिना किसी बाधा के उसके स्काईपोर्ट में उतर गया। जब जहाज सुचारू रूप से उतरा तो गार्डों ने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को स्काईशिप से नीचे उतारा। ये रॉकी अभी भी अपने ऊपर आने वाली विपत्ति से अनजान है, सचमुच मूर्ख है। कई गार्डों के साथ मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति स्काईपोर्ट में खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। बैरन बोलिन के अधीनस्थों में से एक होने के नाते वह लंबे समय से थंडहॉक सिटी को अपना मानता था और जहाज से उतरते ही उसने अपने आसपास का निरीक्षण करना शुरू कर दिया और अपना सिर हिलाया, मानो वह जो कुछ देख रहा था उससे काफी प्रसन्न हो। जब वह अपने क्षेत्र का निरीक्षण एक स्वामी की दृष्टि से कर रहा था, तभी एक गार्ड उसके पास आया, लेकिन गार्ड के बोलने से पहले ही उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने धार्मिक आक्रोश के साथ कहा, मैं मेरेंटे परिवार का दूत हूँ। परिवार का आदेश है कि रॉकी मुझसे तुरंत मिले। अपना सिर ऊंचा करके लगभग अपनी ठोड़ी से गार्ड की ओर देखते हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ऊंची आवाज में घोषणा की। ये स्पष्ट था कि उस आदमी ने रॉकी को कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखा था जिस पर विचार किया जा सके। उसने उसे सिटी लॉर्ड की उपाधि दिए बिना भी नाम से पुकारा। ऐसा लगता था कि उसकी नजर में जैसे ही मेरेंटे परिवार ने कोई आदेश जारी किया, रॉकी से अपेक्षा की गई कि वह आज्ञाकारी रूप से उसका पालन करे और तुरंत अपना सामान पैक करके वहां से चला जाए। हालांकि जैसे ही उसने यह बात कही, सामने बैठे सैनिक ने न केवल थोड़ा सा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, बल्कि वास्तव में मुस्कुरा दिया। महाराज, हमारे नगरपाल भी आपसे मिलने की आशा कर रहे थे। तुम बताओ, सिपाही के उत्तर से अधेड़ उम्र का व्यक्ति स्तब्ध रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसके चारों ओर से अचानक कई आकृतियां निकल आईं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत प्रतिक्रिया की और उसे बीच में रखकर उसकी रक्षा की, जबकि वे अपनी तलवारें निकालने के लिए मुड़े। बदकिस्मती से वे अभी भी आधा कदम धीमे थे। जैसे ही उन्होंने तलवारें निकालने की कोशिश की, उन्हें अपनी छाती में जलन महसूस हुई। नीचे देखा तो लंबी तलवारें उनके धड़ में घुस गई थी। मेरे स्वामी, जल्दी घात लगाओ, एक गार्ड ने दांत भींचकर कुछ तनावपूर्ण शब्द निकाले, फिर गिर पड़ा, जिससे उस अधेड़ को एहसास हुआ कि वह किसी घात में फंस गया है। उसने तुरंत टोही जहाज की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जिस गार्ड को उसने ठोड़ी निकाल कर देखा था वह आगे बढ़ा और उसका कॉलर पकड़कर उसे बिना किसी हिचकिचाहट के जमीन पर गिरा दिया। इस बीच तो ही जहाज पर सवार बाकी सैनिकों ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कुछ तेजी से प्रतिक्रिया दी और जहाज को तुरंत उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन तभी आसमान से एक लाल रंग की आकृति उतरी जिससे उनकी भागने की योजना नाकाम हो गई। कोई न हिले। जैसे ही उसने यह बात कही, ज्वलंत लाल कवच पहने लिलिया ने एक जादुई गोली चलाई जिसने एक सैनिक की छाती में बड़ा सा छेद कर दिया, जिससे जहाज पर सवार सभी लोग अचंभित हो गए। एक पल में, सचमुच एक पल में ही रॉकी को भगाने आया तो ही जहाज थम गया। जहाज पर सवार सभी सैनिक, जो अपने शून्य जादुई कवच में लिलिया के नियंत्रण में थे, प्रतिरोध करना छोड़ जमीन पर लेट गए, जबकि अधेड़ उम्र का वह आदमी, जो कुछ देर पहले तक इतना घमंडी था, अब दो गार्डों द्वारा रॉकी के सामने घसीटा जा रहा था। मटु शहर को एक कदम आगे पाकर रॉकी पूरी तरह तैयार था, इसलिए अधेड़ उम्र के आदमी को काबू में करने के बाद रॉकी स्काईपोर्ट पर मोटे और लिन फैन के साथ अधेड़ उम्र के आदमी के ठीक सामने प्रकट हुआ। रॉकी, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? गार्डों द्वारा जमीन पर कसकर दबाए गए अधेड़ उम्र के आदमी ने अब भी लगातार दहाड़ना जारी रखा। उसने जोर से अपना सिर उठाकर रॉकी की तरफ देखा और चिल्लाया, रॉकी, मैं परिवार का आदेश देने आया हूँ। मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम बगावत करना चाहते हो? लेकिन उसकी दहाड़ का जवाब रॉकी ने बस एक ठंडी मुस्कान और फिर धीमे से हाथ के इशारे से दिया। मोटे इशारा समझकर उस अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ बढ़ा और साथ ही अपना ब्रॉडेक्स भी दिखाया। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम क्या चाहते हो? कुल्हाड़ी की चमक से निकली ठंडक अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में चुभ गई और वह घबरा गया। उसने अविश्वास से मोटे की तरफ देखा, फिर अपनी नजर रॉकी के भावशून्य चेहरे पर घुमाई, जो पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। रॉकी, तुम जल्दबाजी मत करो, हम बातें कर सकते हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की विनती तब समाप्त हो गई जब मोटे की कुल्हाड़ी नीचे गिर पड़ी। बैकवर्ड प्लेन टेक्स्ट। कुल्हाड़ी गिर गई और उसके साथ ही सिर भी गिर गया। बैरन बोलिन के दूत को रॉकी द्वारा मार दिए जाने से पहले अपना नाम बोलने का भी मौका नहीं मिला। दूत को मारने के बाद रॉकी ने तुरंत अपने साथ लाए सैनिकों को जहाज से उतरने का आदेश दिया और ये सैनिक, जो पहले से ही गिरते हुए सिर को देखकर भयभीत थे, उन्हें डर था कि कहीं उनका भी वही हश्र न हो जाए जिसके वे अंग भंग हो जाएं, इसलिए उन्होंने आज्ञाकारी होकर बिना किसी प्रतिरोध के जहाज छोड़ दिया। हालांकि रॉकी ने बाद में इन सैनिकों को नहीं मारा, उसने बस उनके टोही जहाज को जब्त कर लिया और उन्हें थंडरहॉक शहर से एक पुराने जमाने के स्काईशिप पर बिठाकर अधेड़ उम्र के आदमी का सिर लेकर वापस भेज दिया। ऐसा करके रॉकी बैरन बोलिन को एक संदेश भेजना चाहता था, एक ऐसा संदेश जिसके लिए किसी शब्द की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वह उसके संकल्प को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त था। हम कब निकलेंगे? बैरन बोलिन के सैनिकों के पुराने जमाने के टोही जहाज पर रवाना होने के बाद लिलिया रॉकी के पास पहुंची। जल्दी मत करो, चलो बैरन बोलिन के बेड़े के थोड़ा करीब आने का इंतजार करते हैं, उसने लिलिया की ओर देखते हुए जवाब दिया और फिर वे थंडरहॉक पर सवार हो गए। थंडरहॉक शहर से भाग रहे सैनिकों को बैरन बोलिन के बेड़े में वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगा और आकाशयान को इतनी जल्दी वापस आते देख, और वह भी पहले जैसा नहीं, अपने प्रमुख जहाज के अग्रभाग पर खड़े बैरन बोलिन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। लेकिन जैसे ही उसने लौटा हुआ सिर देखा, वह तुरंत गुस्से से भर गया, गरजने लगा और आग बबूला हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रॉकी इतना दुस्साहसी होगा कि अपने ही लोगों को मार डालेगा। हरामी, एक श्राप के साथ बैरन बोलिन ने उस सैनिक को जोरदार थप्पड़ मारा जिसने सिर पेश किया था और फिर धमकी भरे स्वर में चिल्लाया, पूरे बेड़े को हमला करने का आदेश दो और उस रॉकी को मेरे पास वापस लाओ, मैं स्वयं उसे मार डालूंगा। जैसे ही उसकी दहाड़ गूंजी, 30 से अधिक युद्धपोत हरकत में आ गए और एक विशाल बादल जैसी संरचना बन गई जो थंडरहॉक शहर पर टूट पड़ी। चूंकि बैरन बोलिन का बेड़ा थंडरहॉक शहर से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए शहरवासियों को एक घने काले बेड़े को आते हुए देखने में बस कुछ ही मिनट लगे। उसी समय रॉकी का थंडरहॉक धीरे धीरे उड़ान भरता हुआ बाकी युद्धपोतों को आसमान में ले गया। एक वैमानिक युद्ध भड़कने के कगार पर था। स्काईपोर्ट से निकलते समय रॉकी ने थंडरहॉक सिटी के रक्षात्मक जाल को जल्दबाजी में नहीं छोड़ा, बल्कि उसने बेड़े को उसके भीतर तैनात कर दिया तथा बैरन बोलिन के बेड़े के निकट आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद बैरन बोलिन का बेड़ा पास आया और शून्य के पार रक्षात्मक जाल में रॉकी का सामना करने लगा। उसके पास फ्लैगशिप कैसे है? चूंकि दोनों पक्ष अब बहुत करीब थे, बैरन बोलिन रक्षात्मक जाल के भीतर बेड़े को स्पष्ट रूप से देख सकते थे और वे थंडरहॉक की उपस्थिति को देखकर तुरंत चौंक गए। उनकी दृष्टि में थंडरहॉक अत्यंत प्रमुख था। इसका 150 मीटर से अधिक लंबा ढांचा एक स्टील के राक्षस जैसा था, जो रक्षात्मक जाल के भीतर अपने ही बैरन नंबर का डटकर सामना कर रहा था। ये दृश्य बैरन बोलिन की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रॉकी वास्तव में अपना खुद का एक फ्लैगशिप बना लेगा, ये कैसे हो सकता है? हालांकि जब बैरन बोलिन ने थंडहॉक के आसपास के क्षेत्र का अवलोकन किया और पाया कि इसकी सुरक्षा केवल कुछ दयनीय टोही जहाजों द्वारा की जा रही थी, तो उनकी चिंता कम हो गई, क्योंकि त्वरित गणना से पता चला कि प्रमुख जहाज की रक्षा में 10 से भी कम युद्धपोत थे। अपने प्रमुख जहाज की सुरक्षा के लिए 10 से भी कम युद्धपोत। बैकवर्ड 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 बैकवर्ड। बैरन बोलिन, जिसने कम से कम 2 अंतरिक्ष युद्धों में भाग लिया था, अचानक खुद को ये सोचकर हंसा कि थंडहॉक की वजह से वह कितना घबराया हुआ था। उसके विचार से रॉकी को शायद किसी संयोग से एक फ्लैगशिप मिल गया होगा, लेकिन उसे निश्चित रूप से यह नहीं पता था कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अपने प्रमुख जहाज की सुरक्षा के लिए उन्होंने जितने युद्धपोतों का इस्तेमाल किया वह बहुत कम था। क्या एक प्रमुख जहाज की सुरक्षा के लिए 10 से कम युद्धपोतों का होना उसे एक आसान लक्ष्य नहीं बनाता? जब बैरन बोलिन अपनी चिंताओं को कम कर रहे थे, तब रॉकी पहले ही अपने बेड़े को रक्षात्मक जाल से बाहर ले जा चुका था। जैसे जैसे रॉकी अपने बेड़े को धीरे धीरे करीब ले जा रहा था, बैरन बोलिन ने एक महान सेनापति का व्यवहार प्रदर्शित किया। शून्य जादुई कवच पहने वह उछला और हवा में उड़कर अकेले अपने बेड़े के सबसे आगे आ गया। सबसे पहले उसने रॉकी से बात करने के लिए ऐसा किया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पास भी एक प्रमुख जहाज था, बैरन बोलिन अच्छी तरह जानता था कि एक प्रमुख जहाज की मारक क्षमता कितनी शक्तिशाली हो सकती है। रॉकी के पास अपना एक प्रमुख जहाज होने के कारण युद्ध में दोनों पक्षों को नुकसान होना स्वाभाविक था। रॉकी के मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसके अपने बेड़े को कोई नुकसान हो। दूसरे, वह रॉकी को डराने के लिए अवसर का लाभ उठाना चाहता था, ताकि उसे पता चल सके कि वह न केवल एक विशाल बेड़े का सामना कर रहा है, बल्कि अपने शून्य जादू कवच में खुद का भी सामना कर रहा है। किसी भी अंतरिक्ष युद्ध में शून्य जादुई कवच की युद्ध शक्ति युद्धपोतों को टक्कर देने या उनसे भी आगे निकलने के लिए पर्याप्त थी। उदाहरण के लिए बैरन बोलिन द्वारा पहने गए 4th पीढ़ी के कवच को ही लीजिए। अंतरिक्ष युद्धों में इसकी युद्ध शक्ति किसी अनुरक्षक जहाज से कम नहीं थी, और अपनी व्यक्तिगत शक्ति से वह आसानी से एक टोही जहाज को भी मार गिरा सकता था। बैरन बोलिन चाहते थे कि रॉकी को यह एहसास हो कि वह कितने मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा है। हालांकि उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि रॉकी, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह एक टोही जहाज में डरपोक अंदाज में आएगा, उसे शून्य जादुई कवच में देखकर कांप रहा था। वह भी शून्य जादुई कवच के सहारे बेड़े के सबसे आगे उड़ गया। इतना ही नहीं, उसके साथ एक और शून्य जादुई योद्धा भी था। आखिर दुनिया में क्या हो रहा था? रॉकी को लिलिया के साथ आते देख बैरन बोलिन बेहद परेशान हो गए। रॉकी के पास न सिर्फ एक फ्लैगशिप बल्कि वॉइड मैजिक आर्मर भी था, और वो भी 2 सेट। दूत की हत्या से लेकर प्रमुख जहाज और अब शून्य जादुई कवच के प्रकट होने तक हर चीज ने बैरन बोलिन को पूरी तरह से चौंका दिया था, इतना कि उसे अचानक बेचैनी का एहसास हुआ। उसे एहसास होने लगा, क्या उसने रॉकी को कम आंका था? असंभव। थोड़ी देर की बेचैनी के बाद बैरन बोलिन ने तुरंत अपनी मानसिकता बदली। उसने रॉकी की ओर ठंडी निगाहों से देखा और पाया कि रॉकी ने भले ही शून्य जादुई कवच पहना हुआ था, लेकिन वह पुराना ब्लड पैटर्न मार्क 2 था, और उसके बगल वाली महिला ने सिर्फ 3rd पीढ़ी का कवच पहना हुआ था। बैरन बोलिन का मूड धीरे धीरे स्थिर हुआ। यहां तक कि अगर रॉकी के पास एक प्रमुख जहाज होता तो उसका अपना बेड़ा बड़ा होता और वह निश्चित रूप से युद्ध में जीतता। भले ही रॉकी और उसके बगल में बैठी महिला दोनों शून्य जादुई कवच से सुसज्जित होते, उनके कवच की तुलना रॉकी से नहीं की जा सकती थी, और एक बार युद्ध शुरू हो जाने पर वह संभावित रूप से उन्हें सीधे मार भी सकता था। इतने जबरदस्त लाभ के साथ डरने की क्या बात थी? इन विचारों के साथ बैरन बोलिन ने धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया और फिर रॉकी की तरह ही उसकी ओर एक निश्चित दूरी तक बढ़ गया। जब दोनों दल लगभग 100 मीटर की दूरी पर थे तो वे एक साथ रुक गए। बैरन बोलिन, वापस जाओ। बैरन बोलिन, जो अभी कुछ कठोर शब्द बोलने ही वाले थे, अभी अपना मुंह भी नहीं खोला था कि रॉकी ने पहले बोल दिया, जिससे वह अचंभित होकर चुप हो गए। उसे अपना नाम कैसे पता चला? रॉकी को हल्के आश्चर्य से देखते हुए बैरन बोलिन हैरान रह गए। उन्हें यकीन था कि इससे पहले वे दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो रॉकी उन्हें कैसे जानता है? रॉकी अभी भी आश्चर्यचकित था, तभी उसने कहा, बैरन बोलिन, मैं जानता हूं कि तुम किस लिए आए हो, और मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जल्दी से वापस चले जाओ, अन्यथा आप वापस नहीं आ पाएंगे। रॉकी की बातें सुनकर बैरन बोलिन का चेहरा लाल से हरा हो गया और बेहद बदसूरत हो गया। रॉकी की बातों में छिपा मतलब तो कोई मूर्ख भी समझ सकता था। जाहिर है रॉकी को परिवार के फैसले के बारे में पहले से ही पता था और उसने उसके लिए तैयारी भी कर रखी थी। धत्तेरी की, आखिर रॉकी को जानकारी कौन दे रहा था? ये सोचकर कि कोई रॉकी को जानकारी दे रहा होगा, बैरन बोलिन गुस्से से तिलमिला उठा। उसके हिसाब से थंडहॉक शहर पर कब्जा करना एक ऐसा मामला था जिसका बिना किसी लड़ाई के समाधान हो सकता था, लेकिन अब रॉकी तैयार था और जो शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए था उसके लिए अब कार्रवाई जरूरी थी। हालांकि जब से बैरन बोलिन को ये बात समझ में आई है, उसकी मानसिकता पहले से बेहतर हो गई है। शुरुआत में वह हमेशा बिना हिंसा का सहारा लिए रॉकी को थंडहॉक शहर से बाहर निकालने की उम्मीद करता था। उसने युद्ध से पहले उसे सूचित करने के लिए लोगों को भेजा था और यहां तक कि उससे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी की थी, लेकिन अब वह रॉकी को भगाने के लिए सबसे सरल और सबसे क्रूर तरीकों का सहारा लेगा, जिसमें वह सबसे अच्छा था, और इससे बैरन बोलिन को बहुत अधिक आराम मिला। इसलिए कुछ ही क्षणों बाद बैरन बोलिन ने रॉकी पर क्रूर मुस्कान बिखेरी और बोलना शुरू किया, रॉकी, चूंकि तुम मौत चाहते हो। उन्होंने अभी बोलना शुरू ही किया था कि अचानक भयंकर तोपों की बौछार ने उन्हें रोक दिया। बूम 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 बूम, तोपखाने की आग मानो क्रोध में गरज रही हो, बिना किसी चेतावनी के भड़क उठी, जिससे न केवल बैरन बोलिन के शब्द कट गए बल्कि वह बहुत चौंक भी गए। उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि रॉकी का बेड़ा उन पर गोलीबारी कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने रॉकी के पीछे देखा तो उन्होंने पाया कि रॉकी के बेड़े ने, विशेष रूप से उस प्रमुख जहाज ने जिससे वे सावधान थे, गोलीबारी नहीं की थी। क्या यह उनकी अपनी पार्टी थी जिसने गोली चलाई? ये सोचते हुए बैरन बोलिन ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके अपने बेड़े ने भी गोली नहीं चलाई थी। यह अजीब था, लेकिन बैरन बोलिन ज्यादा देर तक उलझन में नहीं रहे, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपना सिर पीछे घुमाया उन्हें गोलीबारी का स्रोत दिखाई दिया। गोलीबारी शुरू होने के कुछ ही क्षणों बाद बैरन बोलिन के बेड़े के बाईं ओर घने बादलों से एक और बेड़ा बाहर निकला। ये बेड़ा काफी बड़ा था, जिसमें न केवल 15 एयरशिप मॉडल 6 टो ही जहाज थे, बल्कि एक स्कवेंजर टाइप एक एस्कॉर्ट जहाज भी था, और इसने आते ही बैरन बोलिन के बेड़े पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। इस बेड़े की अचानक उपस्थिति ने बैरन बोलिन को चौंका दिया, लेकिन जो कोई भी रॉकी की वास्तविक ताकत को समझता था वह देख सकता था कि यह बेड़ा थंडहॉक सिटी के अन्य युद्धपोतों से बना था। तभी रॉकी को थंडहॉक सिटी को इतने बादलों से घिरे इलाके में स्थापित करने का असली मकसद समझ आया। उसका इरादा इस इलाके के घने बादलों का इस्तेमाल घात लगाकर और छिपकर हमला करने के लिए करना था। चूंकि टोही जहाजों ने माटू शहर का पहले ही पता लगा लिया था, रॉकी के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय था। इसलिए दूत के आने से पहले उसने फेली को आदेश दिया कि वह एक अनुरक्षक जहाज और 15 एयरशिप मॉडल 6 टोही जहाजों को थंडहॉक शहर से दूर ले जाए और उन्हें उसके चारों ओर घने बादलों में छिपा दे। मुख्य सेना घात लगाए बैठी थी, इसलिए रॉकी और बैरन बोलिन जब मिले तो केवल थंडहॉक और कुछ पुराने टोही जहाज ही साथ लाए। इसके अलावा इस मुलाकात में रॉकी का मकसद बैरन को मनाना या धमकाना नहीं, बल्कि बोलिन का ध्यान खींचना था। अंतिम परिणाम पुनर्तः सफल रहा। बैरन बोलिन और उनका बेड़ा पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया। इस समय बादलों से फटते हुए युद्धपोतों ने अपनी भयंकर गोलाबारी शुरू कर दी। प्रत्येक विस्फोट आकाश की ओर गर्जना जैसा था, जो न केवल बहरा कर देने वाला था बल्कि रीढ़ में सिहरन भी पैदा कर रहा था। ये सर्वविदित है कि किसी भी हवाई युद्ध में जो पक्ष पहले गोली चलाता है उसे आमतौर पर कुछ बढ़त मिलती है, और यहाँ भी ठीक यही हुआ। एस्कॉर्ट जहाजों के नेतृत्व में मुख्य बल अचानक पार्श्व से उभरा, जिसने न केवल बैरन बोलिन के बेड़े को बिना तैयारी के पकड़ लिया बल्कि पहली ही गोलीबारी में 3 टोही जहाजों को भी डुबो दिया। एक अनुरक्षक जहाज और 15 टोही जहाजों ने एक साथ भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। इतनी भीषण गोलाबारी के बीच बैरन बोलिन के बेड़े के सबसे बाहरी 2 टोही जहाजों पर कई हमले हुए और उनका रक्षात्मक जाल तेजी से टूटकर कुछ ही पलों में डूब गया। एक अन्य टोही जहाज तो और भी कम भाग्यशाली था, क्योंकि वह एस्कॉर्ट जहाज की मुख्य तोप से सीधे टकराया और किसी के पलक झपकने से पहले ही हवा में ही बिखर गया। स्कवेंजर टाइप एक एस्कॉर्ट शिप की मुख्य तोप में केवल 2 बैरल थे, लेकिन इसकी मन ऊर्जा शक्ति 1300 पॉइंट तक पहुंच गई। ऑटन के रून संवर्धन के बाद इन दोनों मुख्य तोपों की मन ऊर्जा शक्ति प्रभावशाली 1700 पॉइंट तक पहुंच गई। बैरन बोलिन के बेड़े में सभी टोही जहाज चीता टाइप 2 के थे, जो आक्रमण और रक्षा दोनों में काफी अच्छा प्रदर्शन करते थे। हालांकि 1700 मन ऊर्जा शक्ति वाले मुख्य तोप के हमले के सामने उनकी कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उनका रक्षात्मक जाल कागज की लुगदी जितना नाजुक था, जो तुरंत टूट जाता था और टोही जहाजों को टक्कर लगते ही विस्फोट का कारण बनता था। इसलिए जब बैरन बोलिन ने अपना सिर घुमाया तो उसने संयोग से 3 टोही जहाजों को एक के बाद एक विस्फोट करते हुए देखा, और उसने एस्कॉर्ट जहाज के नेतृत्व में बेड़े को भी देखा, जो एक जंगली जानवर की तरह बादलों से बाहर निकलकर उसके अपने बेड़े की तरफ से हमला कर रहा था। इस रहस्योद्घाटन से उसे एहसास हुआ कि वह एक घात में चला गया था, उस पर छिपकर हमला किया गया था। हालांकि बैरन बोलिन एक अनुभवी योद्धा थे, जब उन्हें एहसास हुआ कि वे घात में फंस गए हैं तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से चले गए। वह अच्छी तरह जानता था कि स्थिति उसके बेड़े के लिए बेहद प्रतिकूल थी। रॉकी ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया था, जिसमें सबसे आगे थंडहॉक था जो ध्यान आकर्षित कर रहा था, जबकि दूसरा अनुरक्षक जहाज के नेतृत्व में अचानक पार्श्व से प्रकट हुआ। दोनों बेड़े की इस संकीर्ण चाल ने बैरन बोलिन के जहाजों को घेर लिया। ऐसे में बोलिन के पास ये सोचने का समय ही नहीं था कि रॉकी के पास इतना विशाल बेड़ा क्यों है। वह जानता था कि अगर उसने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो उसके बेड़े को भारी नुकसान जरूर होगा और बेड़े का कमांडर होने के नाते उसे तुरंत वापस लौटना होगा। दुर्भाग्यवश उनके विचार गलत नहीं थे, लेकिन रॉकी और लिलिया इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे। जैसे ही बैरन बोलिन निर्णायक रूप से जाने के लिए मुड़े, रॉकी और लिलिया ने अचानक शून्य जादुई कवच पहने हुए हमला बोल दिया। वे आकाश में तेजी से दौड़े, मानो धनुष से छोड़े गए दो तीर हों, एक बाएं से और एक दाएं से बैरन बोलिन की ओर बढ़ते हुए। रॉकी को अच्छी तरह पता था कि दुश्मन क्या करने वाला है, और स्वाभाविक रूप से वह बैरन बोलिन को इतनी आसानी से वापस नहीं जाने दे सकता था। इतना ही नहीं, उसके पास एक और भी साहसिक विचार था। जब बोलिन ने पहली बार रॉकी को शून्य जादुई कवच में देखा तो उसने सोचा था कि युद्ध शुरू होते ही उसका सिर काट देगा, लेकिन उसे यह विचार त्याग कर अपने बेड़े में वापस लौटना पड़ा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उन पर घात लगाकर हमला किया गया है। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि जैसे ही वह रॉकी के सामने आया, रॉकी के मन में भी यही विचार आया होगा। लिलिया के साथ मिलकर उसने बैरन बोलिन को भी मौके पर ही मार डालने का लक्ष्य रखा। तो कुछ ही पल बाद रॉकी और लिलिया बैरन बोलिन को पकड़ लेते हैं। बाएं और दाएं दोनों अपनी तलवारें लहराते हैं, एक बैरन की गर्दन पर और दूसरी उसकी कमर पर, इतनी तेजी से कि कल्पना से भी परे, और साफ जाहिर है कि बैरन बोलिन की जान बख्शने का उनका कोई इरादा नहीं था। जब रॉकी को सिरिल से परिवार के निर्णय के बारे में पता चला तो उसका बैरन बोलिन के साथ अच्छी तरह से बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था। वह बैरन बोलिन को जवाब देने के लिए सबसे कठोर उपाय का उपयोग करने के लिए दृढ़ था। नहीं, मेरेंटे परिवार को अब किसी को भी उसे धमकाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए बैरन बोलिन के सामने रॉकी ने कोई दया नहीं दिखाई। उसकी हर चाल में उसका इरादा मारने का था, और लिलिया जो हमेशा उसकी तरफ रही थी और भी ज्यादा निर्दयी थी। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ रॉकी और लिलिया ही बैरन बोलिन को मारना नहीं चाहते थे। ऑटन ने जाने से पहले रॉकी को यह भी साफ निर्देश दिया था कि अगर हो सके तो बैरन बोलिन को जरूर मार डालें। बेशक ऑटन को बैरन बोलिन से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, दोनों के बीच जरा सी भी बातचीत नहीं थी। रॉकी से हत्या करने का ऑटन का अनुरोध पूरी तरह से उसके शोध के लिए था। ऑटन के पास मन रून्स और शून्य जादुई कवच के बीच के संबंध के बारे में कुछ सिद्धांत थे जिनका उसे तुरंत परीक्षण करना था, और उसे अपने प्रयोगों के लिए चौथी पीढ़ी या उससे ऊपर के कवच की आवश्यकता थी। इसलिए उसने रॉकी से कहा कि यदि वह कर सके तो उसे मार डाले, भले ही इसके लिए उसे अपना हाथ या पैर काटना पड़े, बशर्ते कि उसके हाथ चौथी पीढ़ी का कवच लग जाए। ऐसी परिस्थितियों में रॉकी और लिलिया ने निर्णायक घातक प्रहार किया, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वे बैरन बोलिन को पकड़ लेंगे और उसे मौके पर ही मार देंगे। हालांकि उनके इरादे जितने अच्छे थे और उन्होंने अवसर का लाभ उठाया, उनका क्रियान्वयन भी त्रुटिहीन था। एकमात्र समस्या ये थी कि बैरन बोलिन एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। बेशक बैरन बोलिन सिर्फ एक नामात्र के कुलीन थे, लेकिन यह मत भूलिए कि उन्होंने 30 साल से भी ज्यादा समय तक मेरेंटे परिवार की सेवा की थी। इन 30 सालों में उन्होंने अनगिनत लड़ाइयों में हिस्सा लिया, उनका अनुभव इतना विशाल था और उनकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि रॉकी और लिलिया दोनों से कहीं ज्यादा। इसलिए जब दोनों ने बैरन बोलिन को वहीं पर मार गिराने के इरादे से अपनी लंबी तलवारें घुमाई तो उन्हें दो धमाके सुनाई दिए। बैरन जो उनसे दूर मुंह करके खड़ा था, उसके सिर के पिछले हिस्से में आंखें लग रही थी। वह हवा में घूम गया, उसका बायां हाथ ऊपर और दायां हाथ नीचे था, और उसने एक साथ दोनों हमलों को रोक दिया। जिस समय उसने हमलों को रोका, बैरन बोलिन के हाथों में दो मन तलवारें प्रकट हुई। ये जादुई पत्थरों से बनी लंबी तलवारें नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से मन से बनी तलवारें थी। उनका शून्य जादुई कवच आक्रमण प्रकार के कवच ईगल क्लॉ टाइप 3 का सबसे शुद्ध रूप था। इस कवच की मुख्य विशेषता इसकी शक्तिशाली आक्रमण क्षमताएं और विविध आक्रामक तरीके थे। इसकी खासियत दोनों हाथों की उंगलियों पर लगे दो जादुई ऊर्जा ठोसीकरण कवच थे, जो मन को अत्यधिक शक्तिशाली लंबी तलवारों में बदल सकते थे। रॉकी और लिलिया के हमलों को रोकने वाली दो मन तलवारें जादुई ऊर्जा सॉलिडिफायर्स द्वारा बनाई गई थी, पूरी तरह से मन से बनी और चमकदार। उन्होंने आसानी से हमले को रोक दिया। तुम दोनों मौत चाहते हो? एक अनुभवी शून्य जादू योद्धा के रूप में बैरन बोलिन रॉकी और लिलिया के जानलेवा इरादे को भांप सकता था, जिसके कारण उसे बेड़े की कमान संभालने के लिए वापस लौटने का विचार त्यागना पड़ा और इसके बजाय उनसे युद्ध में शामिल होना पड़ा। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, उसकी जबरदस्त ताकत तुरंत जाहिर हो गई। उनके हमलों को रोकने के बाद एक गर्जना के साथ बैरन बोलिन ने अपनी तलवारों से दोनों तलवारों को पीछे धकेल दिया और हवा में उछलकर घेरे से बाहर निकल आया। एक पल के लिए आसमान की ओर दौड़ने के बाद उसने अचानक दिशा बदली और सीधे रॉकी पर गोता लगाया। चौथी पीढ़ी के कवच के रूप में ईगल क्लॉ टाइप 3 में 2700 मन पॉइंट थे। इस तथ्य के साथ कि इसे विशेष रूप से हमले के लिए डिजाइन किया गया था, इसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। घेरे से बाहर निकलने से लेकर रॉकी की ओर गोता लगाने तक क्रियाओं की यह श्रृंखला पलक झपकते ही पूरी हो गई। जब तक रॉकी को इसका एहसास हुआ, बैरन बोलिन पहले से ही उसके ऊपर था, दोनों मन तलवारें एक साथ काट रही थीं। इस पहाड़ को कुचलने वाले हमले का सामना करते हुए रॉकी केवल इतना ही कर सका कि उसने तुरंत अपनी लंबी तलवार उठाए और हमले को मुश्किल से रोका। हालांकि इस हमले का कुछ देर तक विरोध किया गया, बैरन बोलिन ने अपना आक्रमण नहीं रोका बल्कि अचानक अपने कवच की प्रणोदन शक्ति बढ़ा दी, जिससे रॉकी पर तुरंत लगातार नीचे उतरने का दबाव पड़ा। साथ ही उसके हाथों में मौजूद मन तलवारें और भी ज्यादा चमक उठी, जिससे उनकी मन शक्ति और भी बढ़ गई। स्पष्ट रूप से कवचों की ताकत की तुलना में रॉकी पूरी तरह से नुकसान में था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि ब्लड पैटर्न मार्क दो को एक असली प्राचीन वस्तु कहा जा सकता था, और भले ही ऑटन ने इसे रून संवर्धन के साथ बढ़ाया था, ये केवल दूसरी पीढ़ी के कवच के स्तर तक ही पहुंच पाया। दूसरी ओर बैरन बोलिन का ईगल क्लॉ टाइप 3/4 पीढ़ी का कवच था, जो रॉकी के ब्लड पैटर्न मार्क दो से बेहतर था, जो मन तकनीक और आक्रामक क्षमताओं में श्रेष्ठ था। बैरन बोलिन के असाधारण समृद्ध युद्ध अनुभव के साथ उसने रॉकी को पहली ही मुठभेड़ में पूरी तरह से परास्त कर दिया। यद्यपि यह पहली मुलाकात जटिल लगती है, लेकिन यह एक क्षण में घटित हुई, इतनी तेजी से कि जब तक रॉकी इतना दबा हुआ था कि वह अपना सिर उठाने में असमर्थ हो गया, तब तक लिलिया भी मुश्किल से ही वहां पहुंची थी। भाड़ में जाओ, लिलिया को बगल से हमला करते देख बैरन बोलिन ने एक हाथ से रॉकी को रोकना जारी रखा, जबकि दूसरे हाथ से अपनी मन तलवार को घुमाया, जिससे न केवल लिलिया के हमले को आसानी से रोका जा सका बल्कि उसे पीछे हटने पर भी मजबूर किया। लेकिन लिलिया आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी, उसने अपना संतुलन पुनः प्राप्त किया और भी तेज गति से बैरन बोलिन की ओर बढ़ी। हम्फ, अपनी आंख के कोने से लिलिया को अपनी ओर आते देख बैरन बोलिन ने ठंडी हंसी निकाली, फिर अचानक उछल पड़ा और जैसे ही वह उसके पास पहुंचने वाली थी उसे चकमा दे दिया। लानत है, लिलिया एक क्षण के लिए घबरा गई, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी अचानक चकमा दे देगा, क्योंकि अब उसका लक्ष्य रॉकी था। जिस दौरान रॉकी बैरन बोलिन द्वारा दबाया जा रहा था, वह जोर शोर से संघर्ष कर रहा था, कवच के थ्रस्टर्स पूरी क्षमता पर चल रहे थे, इसलिए जब बैरन बोलिन पीछे हटे तो पहले से ही प्रतिरोध कर रहा रॉकी अचानक ऊपर की ओर उछला और लिलिया से सीधे टकराया। ये कहना जरूरी है कि बैरन बोलिन का युद्ध अनुभव अद्भुत था। रॉकी और लिलिया के आक्रामक प्रहारों का सामना करते हुए वह शांत और संयमित रहे और कुशलता से उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। इस समय लिलिया के लिए प्रतिक्रिया करने में बहुत देर हो चुकी थी। अगर उसका मन भी प्रतिक्रिया दे पाता तो उसका शरीर नहीं कर पाता, इसलिए उसके पास रॉकी से सीधे टकराने के अलावा कोई चारा नहीं था। शुक्र है रॉकी कोई शौकिया नहीं था। राक्षसों के साथ उसकी अनगिनत लड़ाइयां उसे पहले ही एक कुशल शून्य जादू योद्धा के रूप में योग्य बना चुकी थी। उस पल में जो मायने रखता था उसने सही फैसला लिया। हवा में तेजी से अपना शरीर घुमाते हुए उसने अपनी प्रणोदन दिशा अपरिवर्तित रखी। अपनी मुद्रा के समायोजन पर भरोसा करते हुए उसने अपनी गति को नीचे की ओर एक झटके में बदल दिया और लिलिया से बाल बाल बच गया। एक क्षण में लिलिया और रॉकी एक दूसरे के सामने आ गए तथा दोनों ही एक दूसरे से बहुत खतरे में पड़ते हुए बाल बाल बच गए। लिलिया, युद्धपोत के पीछे जाओ। लिलिया को पीछे छोड़ने के बाद रॉकी ने एक और निर्णय लिया, वही कि लिलिया बैरन बोलिन के साथ लड़ाई छोड़ दे और उसकी जगह फ्लोटिंग वॉरशिप की ओर जाए। जैसे ही उसने ये कहा, हेलमेट के पीछे छिपी लिलिया की आंखें तुरंत लाल हो गईं, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह रॉकी के लिए बोझ बन जाएगी। लिलिया को शायद कभी एहसास ही नहीं होगा कि रॉकी का फैसला कितना समझदारी भरा था, शायद उसकी जिंदगी का सबसे समझदारी भरा फैसला। इसी वजह से उसने दोनों की जान बचाई। पुनश्च 5 अध्याय प्रकाशित हो चुके हैं, आशा है कि सभी को पसंद आएंगे। कल 5 और प्रकाशित होंगे। रॉकी के आदेश का पालन करते हुए लिलिया ने बैरन बोलिन के साथ खुद को उलझाया नहीं और इसके बजाय वह उलझे हुए बेड़े की ओर उड़ गई और उसकी नज़र एक तैरते हुए युद्धपोत पर टिक गई। उसे जाना पड़ा, क्योंकि उस छोटी सी झड़प से उसे अपने और बैरन बोलिन के बीच की गहरी खाई का एहसास हुआ। यह इतनी बड़ी थी कि वहां रुकना न सिर्फ रॉकी की मदद करने में नाकामयाब होता बल्कि उसके लिए बोझ भी बन जाता। अनिच्छा से लिलिया जानती थी कि उसे जाना ही होगा, लेकिन लिलिया को भी नहीं पता था कि उसका जाना कितना सौभाग्यशाली था, क्योंकि अगर वह रुक जाती तो उसका एक ही परिणाम होता, मृत्यु। वह किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकती थी। एक अनुभवी शून्य जादू योद्धा होने के नाते बैरन बोलिन का कौशल और अनुभव लिलिया से कहीं बेहतर था, जो पहली बार युद्ध में शून्य जादू कवच पहने हुए थी। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर उनका सीधा सामना होता तो लिलिया 10 राउंड में ही अपनी जान गंवा देती। इसलिए लिलिया का जाना निस्संदेह सही था, क्योंकि इससे उसकी जान बच गई। हालांकि इससे बैरन बोलिन का सारा दबाव रॉकी पर आ गया। अपने अपने पक्ष के सेनापति होने के नाते न तो रॉकी और न ही बैरन बोलिन एक दूसरे को आसानी से पीछे हटकर अपने बेड़े की कमान संभालने देंगे। रॉकी बैरन बोलिन को जाने नहीं देगा। अगर बोलिन अपनी सेना की कमान संभालने के लिए वापस लौटता तो रॉकी के अपने बेड़े पर भारी दबाव पड़ता। इसी तरह बैरन बोलिन रॉकी को भागने नहीं देगा, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वह उसे मार सकता है और रॉकी के मरते ही युद्ध खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में दोनों जल्दी ही एक भयंकर युद्ध में उलझ गए, एक सच्ची मौत की लड़ाई और शून्य जादू कवच के खिलाफ शून्य जादू कवच का टकराव जहां कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इस बीच जब रॉकी और बैरन बोलिन युद्ध में उलझे हुए थे, उनके बेड़े पहले ही सीधे तौर पर भिड़ने लगे थे। आसमान के ऊपर 50 से अधिक युद्धपोत एक भयंकर युद्ध में भाग ले रहे थे। रॉकी का बेड़ा दो समूहों में बंटा हुआ था, एक का नेतृत्व थंडरहॉक फ्लैगशिप कर रहा था, जिसे 7 पुराने जमाने के टोही जहाजों की सहायता मिल रही थी, और दूसरे का नेतृत्व एक अनुरक्षक जहाज कर रहा था जिसे 15 टोही जहाजों का समर्थन प्राप्त था। दोनों बेड़ों ने बैरन बोलिन के बेड़े को आगे और पीछे से घेर लिया और दक्षिणावर्त दिशा में आगे बढ़ते हुए भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। सीधे शब्दों में कहें तो वे बैरन बोलिन के बेड़े को घेर कर हमला कर रहे थे। शुरुआती हमले के बाद बैरन बोलिन के बेड़े ने तुरंत जवाबी हमला किया। हालांकि बैरन बोलिन खुद अपने बेड़े के साथ नहीं थे, लेकिन उनके भरोसेमंद अधीनस्थ कोई साधारण सैनिक नहीं थे। शुरुआती आश्चर्य के बाद उन्होंने जवाबी हमला किया। कुछ देर तक जादुई तोपों की आग आसमान में तारों की तरह चमकती रही और तोपों की लगातार आवाज पूरे हवाई क्षेत्र में गूंजती रही। आग और शोर के बीच तैरते हुए युद्धपोत एक के बाद एक बिखरते और फटते रहे और युद्ध क्षेत्र में खूबसूरत आतिशबाजी में बदल गए। अंकल विल ने एक बार कहा था कि हवाई युद्ध जमीनी युद्ध से अलग होता है। जिन लोगों ने कभी हवाई युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, वे सोच भी नहीं सकते कि ये कितने चौंकाने वाले होते हैं। थंडरहॉक शहर के कई पहरेदारों को उस समय इस बात पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब ये बात पूरी तरह सच लग रही थी। 50 से ज्यादा युद्धपोतों द्वारा एक दूसरे पर जादुई तोपों से बमबारी का दृश्य वाकई रोमांचकारी था। और ये तो युद्ध की शुरुआत भर थी। दोनों बेड़े अभी भी सैकड़ों मीटर की दूरी बनाए हुए थे, जिससे उनकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे ही दूरी नजदीकी युद्ध की सीमा तक पहुंची, युद्ध का दृश्य और भी ज्यादा लुभावना और कहीं ज्यादा खूनी हो गया। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि रॉकी की टीम को थोड़ी बढ़त मिल गई है। बैरन बोलिन के बेड़े के इर्द गिर्द घूम रहे दोनों छोटे बड़े बेड़े के लगातार हमलों ने दुश्मन पर काफी दबाव बना दिया था। यद्यपि रॉकी का बेड़ा दो समूहों में विभाजित था और संख्यात्मक रूप से श्रेष्ठ नहीं लग रहा था, लेकिन प्रत्येक समूह में एक बड़े युद्धपोत की उपस्थिति का मतलब था कि उनकी छोटी संख्या के बावजूद उनकी मारक क्षमता जबरदस्त थी। उदाहरण के लिए थंडरहॉक के नेतृत्व वाला छोटा बेड़ा हालांकि पहली पीढ़ी के पुराने टोही जहाजों के साथ मिलकर केवल 7 टोही जहाजों की संख्या में था, थंडरहॉक की अपनी मारक क्षमता बहुत शक्तिशाली थी। रूनों से उन्नत 4 मुख्य तोपें और 20 समान रूप से उन्नत द्वितीयक तोपें। इस अकेले प्रमुख जहाज की मारक क्षमता 7 से 10 टोही जहाजों के बराबर थी। साथियों, गोलियां चलाओ, निशाना मत लगाओ, बस गोलियां चलाते रहो, थंडरहॉक के डेक पर अंकल विल जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लगातार युवा चालक दल को प्रोत्साहित कर रहे थे। अंकल विल न सिर्फ एक अनुभवी नाविक थे, बल्कि एक चालाक और चालाक भी थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि किसी भी अंतरिक्ष युद्ध में फ्लैगशिप ही सबसे सुरक्षित होता है, इसलिए उन्होंने थंडरहॉक के चालक दल के सदस्य बनने के लिए स्वेच्छा से हामी भरी थी। वह चाहे कितना भी चालाक क्यों न रहा हो, उसका अनुभव वाकई भरपूर था। युद्ध शुरू होते ही उसने डेक पर मौजूद सभी लोगों का सक्रिय रूप से समन्वय किया। साथियों, याद रखो, निशाना साधने में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस गोली चलाते रहो, मुख्य तोपों को निशाना साधने दो, डेक पर खड़े होकर अंकल विल ने जोर से चिल्लाकर अपना अनुभव थंडरहॉक के गनर्स को बताया। उनकी बात बिल्कुल सही थी। अंतरिक्ष युद्धों में हर गोली को निशाना बनाना नामुमकिन था। निशाना साधने की दर बढ़ाने का एकमात्र तरीका था गोलियों की संख्या पर निर्भर रहना, जिससे एक ऐसा गोलाबारी जाल बन जाए जिससे उसके घेरे में आए दुश्मन के लिए बचना नामुमकिन हो जाए और स्वाभाविक रूप से लक्ष्य पर निशाना लग जाए। इसलिए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अंकल विल द्वितीयक तोपों के तोपचियों से लगातार आग्रह करते रहे कि वे सटीक निशाना न लगाएं, बल्कि एक सामान्य दिशा पर निशाना लगाएं। उनकी मांगों के कारण थंडरहॉक की द्वितीयक तोपें शायद ही कभी रुकती थीं। 20 द्वितीयक तोपों द्वारा निर्मित गोलाबारी जाल वास्तव में शक्तिशाली था और निरंतर बमबारी के दौरान बैरन बोलिन के दो टोही जहाजों को पहले ही निशाना बनाया जा चुका था। लेकिन इस उपलब्धि को कम मत आंकिए। उस समय दोनों पक्ष कम से कम 100 मीटर की दूरी पर थे और इतनी दूरी पर जादुई तोपों की मारक क्षमता बहुत कम थी। इसलिए एक ही युद्धपोत द्वारा दो दुश्मन जहाजों को डुबो देना काफी प्रभावशाली था। रॉकी का बेड़ा शक्तिशाली होने के बावजूद बैरन बोलिन का बेड़ा भी दुर्जेय था। विरोधी पक्ष के पास भी मारक क्षमता से भरपूर एक प्रमुख जहाज था और टोही जहाजों के मामले में उसकी संख्या थोड़ी ज्यादा थी। इसलिए जब बेड़े ने जवाबी हमला किया तो उसकी मारक क्षमता तुरंत स्पष्ट हो गई। सभी युद्धपोतों को आदेश दो कि वे थंडरहॉक शहर के प्रमुख जहाज पर हमला करें और उसे डुबो दें। बैरन बोलिन की अनुपस्थिति में बेड़े की कमान उनके दूसरे नंबर के कमांडर के हाथों में आ गई थी, जो 40 साल से ज्यादा उम्र का था और बैरन बोलिन के बाद युद्ध में कई सालों का अनुभव रखता था। अपनी स्थिति को स्थिर करने के बाद उसने सबसे निर्णायक और सटीक निर्णय लिया, जो थंडरहॉक को मार गिराने का था। अब युद्ध के मैदान में स्थिति बैरन बोलिन के पक्ष के लिए कुछ हद तक प्रतिकूल लग रही थी, क्योंकि उसका बेड़ा घिर चुका था। दोनों ओर से दो बेड़ों से घिरे होने के कारण संख्यात्मक लाभ के बावजूद बैरन बोलिन के बेड़े की मारक क्षमता अनिवार्य रूप से बिखर गई, लेकिन ये स्पष्ट नुकसान भी सापेक्ष था। हालांकि रॉकी ने दुश्मन को घेरने के लिए अपने बेड़े को दो हिस्सों में बांट दिया था, लेकिन इस कार्रवाई का मतलब उसकी अपनी सेना को कमजोर करना भी था, जिससे विभाजित बेड़े के लिए बैरन बोलिन के बेड़े का सीधा सामना करना चुनौतीपूर्ण हो गया। बैरन बोलिन के दूसरे कमांडर ने इसे गौर से भांप लिया और तुरंत पूरे बेड़े को हमला करने का आदेश दिया। उनका लक्ष्य न केवल घेरा तोड़ना था, बल्कि अपनी संख्याबल का इस्तेमाल करके प्रमुख जहाज थंडरहॉक को एक ही झटके में निगल जाना था। जैसे ही आदेश दिया गया, बैरन बोलिन का बेड़ा आगे बढ़ना शुरू हो गया और सीधे थंडरहॉक की ओर बढ़ गया। अरे, जल्दी से उन्हें पकड़ो, जल्दी से उन्हें पकड़ो! विशाल बेड़ा एक साथ आगे बढ़ा और यह हलचल तुरंत पकड़ी गई। एस्कॉर्ट जहाज पर मुख्य बल की कमान संभाल रहे फेली को तुरंत पता चल गया कि उनका निशाना थंडरहॉक था। स्वाभाविक रूप से वह दुश्मन को अपनी मनमानी करने की इजाजत नहीं दे सकता था। थंडरहॉक पूरे बेड़े का प्रमुख जहाज होने के नाते किसी भी दुर्घटना का जोखिम नहीं उठा सकता था, न केवल अपनी दुर्जेय लड़ाकू शक्ति के कारण, बल्कि इसलिए भी कि एक प्रमुख जहाज होने का दर्जा किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करता था। एक बार जब प्रमुख जहाज युद्ध में नष्ट हो गया तो निस्संदेह उनके मनोबल को भारी क्षति पहुंची होगी, जो कई युद्धपोतों के नुकसान से भी अधिक गंभीर होगी। इसलिए उनकी कमान में अनुरक्षक जहाजों के नेतृत्व में मुख्य सेना ने तुरंत अपनी संरचना को समायोजित कर लिया। वे अब बैरन बोलिन के बेड़े के इर्द गिर्द नहीं घूम रहे थे, बल्कि तेज गति से किसी स्टील की कील की तरह सीधे दुश्मन की संरचना में घुस गए। पहली नजर में फेली का दृष्टिकोण कुछ हद तक लापरवाही भरा लग रहा था, क्योंकि इसने प्रभावी रूप से निकट सीमा की लड़ाई को उकसाया, जिससे लड़ाई तुरंत ही अपने सबसे क्रूर चरण में पहुंच गई। लेकिन युद्ध क्षेत्र की परिस्थितियां कभी भी निश्चित नहीं रही हैं, इसलिए युद्ध क्षेत्र की गतिशीलता के संदर्भ में इस निर्णय का विश्लेषण करने से पता चला कि फेली का चुनाव गलत नहीं हो सकता। एक ओर पिछली सुदूर घेराबंदी और कई दौर की बमबारी के बाद बैरन बोलिन के बेड़े को भारी नुकसान हुआ था, कम से कम 7 से 8 तो ही जहाज नष्ट हो गए थे। इस प्रक्रिया में रॉकी के बेड़े को भी मामूली नुकसान नहीं हुआ। थंडरहॉक के पास मौजूद 7 पुराने जमाने के टोही जहाजों में से 3 को मार गिराया गया और बाकी 4 को भारी नुकसान पहुंचा। इस बीच फेली के नेतृत्व वाली मुख्य सेना अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में थी। हालांकि 2 टोही जहाजों को मार गिराया गया था और फेली के अपने अनुरक्षक जहाज पर भी कई गोलियां दागी गई थी। कुल मिलाकर युद्ध के इस चरण में दुश्मन की संख्यात्मक बढ़त अब उतनी स्पष्ट नहीं थी। दूसरी ओर फेली का वास्तव में दुश्मन के साथ भीषण युद्ध करने का कोई इरादा नहीं था। उसने एयरशिप मॉडल 6 की गति का लाभ उठाकर दुश्मन की संरचना को बाधित करने की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य बैरन बोलिन के बेड़े को विभाजित करना था। अगर वह ऐसा कर पाता तो थंडरहॉक को एक ही झटके में खत्म करने का दुश्मन का इरादा नामुमकिन हो जाता। थंडरहॉक वास्तव में एक विशालकाय जहाज था। जब तक कि यह एक प्रमुख जहाज के विरुद्ध प्रमुख जहाज न हो, मुट्ठी भर टोही जहाज इसे मार गिराने में असमर्थ थे। युद्ध के मैदान में संकट को शांत करने के लिए ऐसी रणनीति बनाने में सक्षम फेली सचमुच प्रतिभाशाली था। इसलिए एस्कॉर्ट जहाज के नेतृत्व में मुख्य रूप से एयरशिप मॉडल 6 टोही जहाजों से युक्त बेड़े ने दुश्मन पर तेजी से हमला किया। इस प्रक्रिया में एयरशिप मॉडल 6 की गति का पूरा लाभ उठाया गया, जिससे सैकड़ों मीटर की दूरी तेजी से कम हो गई और जल्द ही दोनों पक्ष एक उलझी हुई मुठभेड़ में प्रवेश कर गए। तोपें चलाओ! जैसे ही फेली ने दहाड़ लगाई, डेक पर तैनात तोपचियों ने तुरंत अपनी गोलाबारी दुश्मन की ओर मोड़ दी। बैरन बोलिन के बेड़े में घुसने के बाद सबसे नजदीकी दुश्मन जहाज बस कुछ ही मीटर की दूरी पर था, जिससे उस पल एस्कॉर्ट जहाज की शक्तिशाली मारक क्षमता का असली प्रदर्शन हो गया। 2 मुख्य तोपों और 13 द्वितीयक तोपों से एक साथ फायर किया गया और भयंकर गोलाबारी नेटवर्क ने तुरंत एक टोही जहाज को घेर लिया, जिससे वह लगभग तुरंत ही टुकड़ों में बन गया तथा विस्फोट होने से पहले उसे जवाबी कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं मिला। जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी आगे बढ़ो! गोलाबारी जारी रखते हुए फेली युद्धपोत को तेजी से आगे बढ़ने का आदेश देना भी नहीं भूले। उनका लक्ष्य दुश्मन की टुकड़ी को चीरना था, उनसे उलझना नहीं, इसलिए भीषण गोलाबारी करते हुए भी बेड़े को आगे बढ़ते रहना था, वरना वे मुश्किल में पड़ जाते। लेकिन वह अभी एक बार ही चिल्लाया था कि अचानक डेक जोर से हिल गया, जिससे वह मुंह के बल गिर पड़ा। वे मारे गए। दुश्मन की टुकड़ी में घुसकर और अपनी गोलाबारी शुरू करके एस्कॉर्ट जहाज भी दुश्मन का मुख्य निशाना बन गया था। इसलिए जहां जादुई तोपों की चमक चमक रही थी, वहीं एस्कॉर्ट जहाज का रक्षात्मक जाल भी छिटपुट रूप से चमक रहा था, जिससे पता चलता था कि उस पर दुश्मन की सघन गोलाबारी हो रही है। स्कवेंजर टाइप एक का रक्षात्मक जाल तोप के हमलों से 500 से कम की जादुई ऊर्जा शक्ति का सामना कर सकता था, और दुश्मन के सभी टोही जहाज चीता टाइप दो थे, जिनकी जादुई तोप की शक्ति केवल 450 थी, जो 500 से कुछ कम थी। इस प्रकार सैद्धांतिक रूप से जब तक स्कवेंजर टाइप एक की जादुई ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती, तब तक इसे क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए था। लेकिन कृपया यह मत भूलिए कि बैरन वोलिन के बेड़े में एक प्रमुख जहाज भी है। जब फेली ने बेड़े को सीधे दुश्मन की संरचना में ले जाया, तो दुश्मन के प्रमुख जहाज बैरन नंबर ने भी अपनी शक्ति दिखानी शुरू कर दी। एक प्रमुख तोप के रूप में बैरन नंबर किसी भी मामले में थंडरहॉक से कमतर नहीं था। वास्तव में अगर रून वृद्धि को ध्यान में न रखा जाए तो इसकी मारक क्षमता और भी ज्यादा होती, जिसमें 15 माध्यमिक तोपें थीं, लेकिन 5 मुख्य तोपें काफी थीं। इसलिए जब फेली ने दुश्मन को विभाजित करने की योजना बनाते हुए बेड़े को सीधे दुश्मन की रेखाओं में ले जाया, तो बैरन नंबर ने अपने सभी तोपों को उस एस्कॉर्ट जहाज पर निशाना बनाया जिस पर वह था, और एक दौर की गोलाबारी के बाद स्कवेंजर टाइप एक को सीधे एक मुख्य तोप से मारा गया। अत्यंत शक्तिशाली मुख्य तोप ने रक्षात्मक जाल को भेद दिया और फिर जहाज के पतवार पर जोरदार प्रहार किया, जिससे अनुरक्षक जहाज के ढांचे में आसानी से छेद हो गया। इसी समय दोनों ओर के टोही जहाजों ने भी एक दूसरे पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी, और जिस क्षण वे एक दूसरे से टकराए, उसी क्षण दोनों ओर से 10 युद्धपोत मार गिराए गए। ये हवाई युद्ध है, दिल दहला देने वाला और अविश्वसनीय रूप से क्रूर। इस उलझी हुई नजदीकी लड़ाई में दोनों बेड़े को भारी नुकसान हुआ, लेकिन जो जल्दी आया वह जल्दी ही चला भी गया। चूंकि फेली के सैनिकों को गति में बढ़त हासिल थी, इसलिए जैसे ही वह दुश्मन के पिछले हिस्से से निकला, उसने तेजी से उसमें घुसपैठ कर ली। हालांकि नुकसान काफी ज्यादा था, फिर भी उन्होंने अंततः अपना सामरिक लक्ष्य हासिल कर लिया और बैरन बोलिन के बेड़े को दो हिस्सों में बांट दिया। इस उद्देश्य को पूरा करने में उनकी मुख्य सेना को जो नुकसान हुआ, उसे बहुत बड़ा कहा जा सकता है। जब उन्होंने अपने बेड़े का नेतृत्व करते हुए दुश्मन की पूरी टुकड़ी को पार किया और फिर से आगे बढ़े, तो उनके पीछे आने वाले टोही जहाजों की संख्या पहले के 13 से घटकर 8 रह गई थी। इसका मतलब है कि इस आक्रमण में उसने 5 टोही जहाज खो दिए। इसमें कोई मदद नहीं थी, क्योंकि एयरशिप मॉडल 6 का फायदा सिर्फ गति में था। हालांकि ऑटन ने इसकी मारक क्षमता को रूनों से मजबूत किया था, फिर भी इसकी रक्षात्मक क्षमताएं बहुत कमजोर थीं, जिससे नजदीकी मुकाबले में ये बेहद कमजोर हो गया था। इस बीच फेली का अनुरक्षण जहाज भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। बैरन नंबर की दो मुख्य तोपों ने उस पर हमला किया था, जिससे जहाज के मुख्य भाग में एक बड़ा छेद हो गया था और डेक पर भी एक बड़ा छेद हो गया था। यहां तक कि 3 द्वितीयक तोपें भी नष्ट हो गई थीं। इसकी तुलना में बैरन बोलिन के बेड़े को कम नुकसान हुआ। उन्होंने केवल 3 टोही जहाज खोए और प्रमुख जहाज भी सुरक्षित रहा। इस दौर की लड़ाई में यह स्पष्ट था कि बैरन बोलिन की टीम को पूर्ण लाभ प्राप्त था। भारी नुकसान के बावजूद फेली की रणनीति कामयाब रही। वह बैरन बोलिन के बेड़े को दो हिस्सों में बांटने में कामयाब रहा और 10 टोही जहाजों को रोककर थंडरहॉक की ओर बढ़ रहे दुश्मनों की संख्या में उल्लेखनीय कमी ला सका। लानत है, आगे बढ़ते रहो, जब तक हम उनके प्रमुख जहाज को नष्ट कर सकते हैं हम जीतेंगे, कमान के प्रभारी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बैरन नंबर से यह बात चिल्लाकर कही। उस समय बैरन नंबर के आसपास केवल 7 टोही जहाज बचे थे। बाकी को फेली ने रोक लिया, जिससे मध्यम आयु वर्ग के कमांडर को थंडरहॉक पर निशाना साधते हुए एक हताश कदम उठाना पड़ा। ये रणनीति सही थी। इतने लंबे युद्ध के बाद दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ था। अब ये तय करना था कि किसके बड़े युद्धपोत अंत तक टिक पाएंगे। हालांकि रॉकी के बेड़े में दो बड़े युद्धपोत थे, लेकिन वे बिखरे हुए थे, यानी अगर बैरन बोलिन का बेड़ा थंडरहॉक को हरा देता तो रॉकी की मुख्य शक्ति घटकर एक अनुरक्षक जहाज रह जाती। एक प्रमुख जहाज के विरुद्ध एक साधारण अनुरक्षक जहाज ने स्पष्ट रूप से बैरन बोलिन के पक्ष को जीत की अधिक संभावना प्रदान की। इसलिए भले ही उनकी सेनाएं विभाजित थीं, फिर भी दुश्मन कमांडर ने पहले थंडरहॉक को खत्म करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार थंडरहॉक डूब गया तो वे पलटकर अन्य टोही जहाजों के साथ साथ शेष एस्कॉर्ट जहाज को भी नष्ट कर सकते हैं और फिर वे युद्ध जीत जाएंगे। जब फेली ने एक बड़ा जोखिम उठाया और दुश्मन के बेड़े को दो भागों में विभाजित कर दिया, तो दुश्मन ने सबसे सही और निर्णायक निर्णय लिया, थंडरहॉक की ओर अपना आक्रमण जारी रखना तथा उसे कम से कम समय में डुबोने का प्रयास करना। ये निर्णय सचमुच सही था। हालांकि पूरा बेड़ा बढ़ गया था, फिर भी बैरन नंबर के चारों ओर 5 टोही जहाज मौजूद थे। इसके विपरीत थंडरहॉक के आसपास शायद ही कोई जहाज बचा था, और जो थोड़े बहुत टोही जहाज थे वे सभी पुराने जमाने के मॉडल के थे, जो इतने भीषण युद्ध में लगभग बेकार थे। साथ ही व्यक्तिगत युद्ध क्षमताओं के संदर्भ में, हालांकि बैरन नंबर और थंडरहॉक दोनों ही प्रमुख युद्धपोत थे, बैरन नंबर की मारक क्षमता कुछ ज्यादा ही थी। इसकी 5 मुख्य तोपें थंडरहॉक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थीं, इसलिए थंडरहॉक को डुबोने के पिछले रणनीतिक उद्देश्य को जारी रखना निस्संदेह सही विकल्प था। इसलिए बाद में बैरन नंबर के नेतृत्व वाली सेना ने फेली की परवाह न करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। उसी समय थंडहॉक ने भी वही चाल चली। विशाल युद्धपोत ने धीरे धीरे हवा में अपनी दिशा बदली और दुश्मन से सीधे भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। फ्लैगशिप बनाम फ्लैगशिप, वह टक्कर जो इस हवाई युद्ध का परिणाम तय कर सकती थी, भड़क उठी। हालांकि दोनों प्रमुख जहाजों के बीच गोलीबारी शुरू होने से ठीक पहले कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। इस समय बैरन नंबर के बाईं ओर एक तो ही जहाज में अचानक खराबी आ गई। ये घटना बिना किसी चेतावनी के घटित हुई, जिसके परिणामस्वरूप तो ही जहाज पलक झपकते ही सीधे हवा में फट गया। क्या हुआ? अचानक हुए विस्फोट ने बैरन नंबर पर तैनात कमांडर को चौंका दिया। युद्ध क्षेत्र दो भागों में बढ़ गया था, एक जहां फेली और उसकी मुख्य सेनाएं 10 से ज्यादा टोही जहाजों से लड़ रही थीं, और दूसरा जहां फ्लैगशिप जहाज फ्लैगशिप के खिलाफ लड़ रहा था। फिर भी दोनों पक्ष अभी भी 200 मीटर से अधिक दूरी पर थे, जो अभी भी अधिकतम क्षति पहुंचाने के लिए इष्टतम सीमा के भीतर नहीं थे, और किसी ने भी गोलीबारी नहीं की थी। इन परिस्थितियों में बैरन नंबर के पार्श्व में स्थित टोही जहाज में विस्फोट कैसे हो सकता था? क्या कोई खराबी थी? विस्फोट की दिशा का अनुसरण करते हुए कमांडर और चालक दल के सदस्यों ने तुरंत ऊपर देखा, और तब उन्होंने एक लाल आकृति को आग की लपटों से बाहर उड़ते हुए देखा। लिलिया, विस्फोट की ज्वाला से बाहर छलांग लगाते हुए अग्नि तितली कवच पहने हुए लिलिया ने हवा में खूबसूरती से चक्कर लगाया और बिना रुके सीधे दूसरे टोही जहाज की ओर बढ़ गई। यह एक शून्य जादू योद्धा है। जैसे ही लिलिया का आकार दूसरे टोही जहाज की ओर बढ़ा, बैरन नंबर पर मौजूद लोगों ने भी उसे देख लिया। कई क्रू मेंबर्स औरतों जैसी चीखें निकालने लगे, और यहां तक कि डेक पर मौजूद कमांडर के चेहरे पर भी बेहद बदसूरत भाव थे। शून्य जादुई योद्धा, एक ऐसा अस्तित्व जिसे कोई भी सेनापति प्यार भी करता था और नफरत भी। उन्हें इसलिए सराहा जाता था क्योंकि किसी के पक्ष में एक शून्य जादुई योद्धा होने का मतलब था कि सेनापति को ऐसा लगता था जैसे उसके हाथ में तुरुप का पत्ता है, क्योंकि एक शून्य जादुई योद्धा की अविश्वसनीय शक्ति किसी भी युद्ध या यहां तक कि युद्ध का परिणाम तय कर सकती थी। लेकिन यदि कोई शून्य जादू योद्धा दुश्मन की तरफ होता तो वे एक घृणित उपद्रव बन जाते। ये योद्धा इतने शक्तिशाली होते थे कि उनके अलावा कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए जब बैरन नंबर के कमांडर ने लिलिया को देखा तो उसका दिल बैठ गया और एक अशुभ भावना ने उसे घेर लिया। वास्तव में यह अशुभ पूर्वाभास बहुत जल्दी ही साकार हो गया, क्योंकि कुछ ही क्षणों बाद एक अन्य टोही जहाज पर हमला हुआ। यद्यपि लिलिया की ताकत अभी बैरन बोलिन का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और वह अकेले हवाई युद्ध का परिणाम निर्धारित नहीं कर सकती थी, फिर भी वह विघटनकारी भूमिका निभा सकती थी। शून्य जादुई कवच की सुविधा के साथ वह आकाश में उड़ते पंछी की तरह आजाद थी। प्रमुख जहाज बैरन नंबर के अलावा बाकी सभी टोही जहाज उसके संभावित निशाने थे, और लिलिया निश्चित रूप से इस लाभ को हाथ से जाने नहीं देगी। जैसे ही वह अग्नि तितली कवच से सुसज्जित तीसरे स्काईशिप के पास पहुंची, कवच अचानक तेज हो गया। ऐसा लगा जैसे उसने खुद को एक जादुई गोली में बदल लिया हो, और कुछ ही क्षणों बाद वह टोही जहाज के रक्षात्मक जाल को तोड़ते हुए उसके कमजोर पतवार से टकरा गई। इस जबरदस्त टक्कर से पूरा टोही जहाज बुरी तरह हिल गया और लिलिया ने तोप के गोले की तरह पतवार में एक बड़ा छेद कर दिया। फिर केबिन में घुसकर उसने अपने बाएं हाथ से मन लॉन्चर से कई जादुई गोलियां दागी और जहाज को अंदर से तहस नहस कर दिया। समय तेजी से बीतता गया और टोही जहाज का केबिन नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, जहाज को शक्ति देने वाला मध्यम जादुई पत्थर भी चकनाचूर हो गया। ये सब करने के बाद लिलिया उछलकर डेक से टकराए और वापस हवा में उड़ गई। जैसे ही वह ऊपर उड़ी, बुरी तरह क्षतिग्रस्त टोही जहाज जिसका जादुई पत्थर नष्ट हो गया था गिरने लगा और पलक झपकते ही जमीन पर गिर पड़ा। इस प्रकार लिलिया ने एक और टोही जहाज को नष्ट कर दिया, और जिस क्षण वह गोली की तरह केबिन से टकराई से लेकर जब वह डेक को तोड़कर आकाश में वापस लौटी, इसमें केवल कुछ ही मिनट लगे। आग आग, मेरे लिए उसे गोली मार दो। एक और टोही जहाज को डूबते देख बैरन नंबर पर सवार कमांडर ने तुरंत अपनी मर्जी से गोलियां चलाने का आदेश दिया। बैरन नंबर की दर्जन भर दूसरी तोपें और बचे हुए कुछ टोही जहाजों की जादुई तोपें सबने लिलिया को निशाना बनाकर गोलियां चला दी। जादुई तोपों की बमबारी का सामना करते हुए लिलिया तितली की तरह आसमान में नाच रही थी। एक गोता लगाकर वह बैरन नंबर के नीचे उड़ गई और बिना किसी प्रयास के सभी हमलों को चकमा दे गई। दरअसल यह एक अपरिहार्य परिणाम था। शून्य जादुई कवच की चपलता का मतलब था कि वह जादुई तोपों को आसानी से मात दे सकता था। सच तो यह था कि अगर लिलिया हवा में भी बिना हिले डुले मंडराती रहे तो भी जादुई तोपें उसे मारने में संघर्ष करेंगी, क्योंकि लक्ष्य बहुत छोटा था। आसमान में किसी इंसान को जादुई तोप से मारना आसमान से किसी पक्षी को मारने जैसा ही था। धत्तेरी की, लिलिया को बैरन नंबर के नीचे से बेबस होकर भागते हुए देखकर डेक पर मौजूद कमांडर जोर जोर से कोस रहा था, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि इसका अंजाम यही होगा। किसी चमत्कार की हल्की सी उम्मीद में गोली चलाने का आदेश दिया गया था, लेकिन चमत्कार आसानी से नहीं होते। न सिर्फ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसने एक शाश्वत सत्य की पुष्टि की, सिर्फ शून्य जादुई कवच ही दूसरे शून्य जादुई कवच का मुकाबला कर सकता है। बैरन बोलिन कहाँ है, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? लिलिया के सामने खुद को असहाय महसूस करते हुए बैरन नंबर के कमांडर ने बैरन बोलिन के बारे में सोचा, क्योंकि वह भी एक शून्य जादुई योद्धा था। काश बोलिन वापस आ जाता, लिलिया अब इतनी बेशर्म नहीं होती। लेकिन समय को देखते हुए लड़ाई काफी समय से चल रही थी, तो बैरन बोलिन अभी तक क्यों नहीं लौटा? वास्तव में बैरन बोलिन वापस क्यों नहीं आए? क्योंकि वह वापस नहीं आ सका। उस समय बैरन बोलिन रॉकी से उलझ गया था। ये बात बिल्कुल अविश्वसनीय लग रही थी। अपनी ताकत और कवच के बल पर उसे कुछ ही मुकाबलों में रॉकी को हरा देना चाहिए था। वह रॉकी से कैसे बंधा रह सकता था? लेकिन वह सचमुच उलझ गया था, और वह इतना फंस गया था कि वह खुद को बिल्कुल भी नहीं निकाल सका। बैरन बोलिन ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि रॉकी के साथ उनकी लड़ाई अंततः इस मोड़ पर पहुंच जाएगी। उनकी उम्मीदों के अनुसार उन्हें रॉकी को तुरंत ही मार गिराना चाहिए था, फिर बेड़े की कमान संभालने के लिए वापस लौटना चाहिए था और थंडहॉक सिटी के नियंत्रण के लिए निर्णायक लड़ाई में जीत हासिल करनी चाहिए थी। दुर्भाग्यवश, हालांकि यह विचार सुंदर था, वास्तविकता इसके विपरीत दिशा में मुड़ गई। जिस बेड़े पर वह निर्भर था उसे युद्ध में कोई लाभ नहीं मिला, जिसके कारण हवाई युद्ध आज तक अनसुलझा है, और वह रॉकी को उतनी जल्दी नहीं मार गिराया जितनी उसने योजना बनाई थी। इसके बजाय रॉकी की लगातार व्यस्तता उसे बेड़े की कमान संभालने से रोक रही थी। घटनाओं का यह मोड़ बैरन बोलिन की उम्मीदों से कहीं परे था। धत्तेरी की लिलिया अपने कवच के बल पर लगातार एक के बाद एक टोही जहाजों को नष्ट करती रही, एक ऐसी हरकत जो स्वाभाविक रूप से बैरन बोलिन की नजर से नहीं बची। खुद एक शून्य जादुई योद्धा होने के नाते वह किसी से भी बेहतर जानता था कि एक अनियंत्रित शून्य जादुई योद्धा हवाई युद्ध में कितनी विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, और वह जानता था कि उसे नियंत्रित करना होगा। इस स्थिति ने उसे प्रमुख बैरन नंबर पर लौटने के लिए उत्सुक बना दिया, और जब तक वह वापस आ सकता था लिलिया निश्चित रूप से अपने उत्पाद को जारी रखने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन रॉकी उसे अपनी मनमानी कैसे करने दे सकता था? बैरन बोलिन पहले भी अपनी कमान में वापस नहीं लौट पाया था, और इस बार रॉकी के उसे जाने देने की संभावना और भी कम थी। इसलिए जब बैरन बोलिन ने अलग होने का प्रयास किया तो रॉकी पूरी गति से सीधे उसकी ओर बढ़ गया। मेरे रास्ते से हट जाओ, रॉकी द्वारा पीछे से किए गए तलवार के प्रहार का सामना करते हुए बैरन बोलिन के एक क्रोधित प्रहार ने उसे उड़ा दिया। लेकिन उछले हुए रॉकी ने गति का लाभ उठाते हुए पीछे हटते हुए मैजिक बुलेट्स की एक श्रृंखला फायर कर दी। उनके द्वारा दागी गई जादुई गोलियां बैरन बोलिन को शक्ति के मामले में घायल नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने उन्हें भागने से प्रभावी रूप से रोक दिया, क्योंकि बैरन बोलिन भी अपनी पीठ पर रॉकी के लगातार हमले को नजरअंदाज नहीं कर सके। दरअसल लड़ाई की शुरुआत से ही रॉकी ने बैरन बोलिन को बांधने के लिए लगातार इस पद्धति का इस्तेमाल किया था। रॉकी लिलिया नहीं था। जब से उसने 6 महीने पहले पहली बार शून्य जादुई कवच पहना था, तब से वह हमेशा युद्ध में इसी कवच पर निर्भर रहा था और इस तरह इसके इस्तेमाल में बेहद कुशल हो गया था। हो सकता है कि उसकी तकनीक और अनुभव अभी भी बैरन बोलिन के बराबर न हो, लेकिन बैरन को उलझाना उसकी क्षमता के भीतर जरूर था। विशेषकर बैकहिल गांव में मिशन के बाद संयम का सार रॉकी के लिए दूसरा स्वभाव बन गया था, क्योंकि वह न केवल एक दानव को बल्कि एक समय में दर्जनों दानवों को अपने दम पर रोकने में कामयाब रहा था, जिससे उसे इस पहलू में पर्याप्त अनुभव प्राप्त हुआ। यद्यपि बैरन बोलिन क्रूरता और पागलपन के मामले में दानवों की तुलना में मजबूत था, लेकिन वह कुछ हद तक कमजोर पड़ गया, जिससे रॉकी के लिए उसे नियंत्रित करना मुश्किल नहीं था। बेशक इतना कठिन नहीं, एक सापेक्ष शब्द है, और सच तो यह है कि बैरन बोलिन के साथ उलझने के दौरान रॉकी लगातार गंभीर खतरे में था। ये तथ्य उसकी छाती पर तलवार के लंबे निशान से पता चलता है। रॉकी के वक्षपट पर तलवार का एक बड़ा निशान था जो बाएं कंधे से लेकर दाहिनी कमर तक फैला हुआ था, जिसने ब्लड पैटर्न मार्क 2 के वक्षपट को लगभग 2 भागों में विभाजित कर दिया था। ये भयंकर और भयानक तलवार का निशान बैरन बोलिन की करतूत थी। साले यह शापित आदमी, रॉकी को हमेशा की तरह हठपूर्वक उससे चिपके हुए देखकर एक तिलचट्टे की तरह जो मरना ही नहीं चाहता, बैरन बोलिन खुद को रोक नहीं सका और जोर से गाली देने लगा और एक बार फिर उसके साथ युद्ध करने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन इस हवाई लड़ाई का नतीजा पहले जैसा ही रहा। रॉकी को हिट एंड रन कहा जा सकता है, जिसने बैरन बोलिन को उकसाया और तुरंत भागने लगा, और उसकी भागने की तकनीकें बेहद कुशल थीं। हवा में किसी मछली की तरह उछल कूद करते और छकाते हुए उसने बैरन बोलिन के लिए उसे पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन बना दिया। ठीक वैसे ही जैसे अब बैरन बोलिन अपने कवच की गति का फायदा उठाकर आखिरकार उसके पास पहुंच ही गया था। जैसे ही वह तलवार से वार करने ही वाला था, रॉकी ने अचानक दिशा बदल ली, आगे बढ़ने से नीचे की ओर जाने लगा और पल भर में कई मीटर हवा में डूब गया। फिर अपनी जादुई गोलियों से कुछ परेशान करने वाले वार करने के बाद वह तुरंत पीछे मुड़ा और भाग गया। ये शून्य जादुई कवच की युद्ध शैली थी। पारंपरिक युद्ध विधियों के विपरीत शून्य जादुई कवच में युद्ध सपाट नहीं बल्कि त्रिआयामी था, खासकर हवा में जहां हर दिशा में जगह होती है। और रॉकी के भागने की आशंका के चलते बैरन बोलिन ने स्वाभाविक रूप से उसे अपनी राह पर चलने नहीं दिया। उसने तुरंत और भी ज्यादा कुशलता और कुशलता से दिशा बदली और एक बार फिर उसका पीछा किया। इस तरह दोनों पक्ष आकाश में एक घातक पीछा में लगे रहे और बहुत जल्द समय बीत गया। जब बैरन बोलिन ने स्वयं को अनजाने में रॉकी के हाथों में पाया तो हवाई युद्ध का सबसे तीव्र संघर्ष अंततः शुरू हुआ। प्रत्येक पार्टी के प्रमुख थंडरहॉक और बैरन नंबर अंततः एक दूसरे से भिड़ गए। ये दोनों विशाल फ्लैगशिप अपने अपने बेड़े में सबसे शक्तिशाली मारक क्षमता वाले थे। दोनों की लंबाई 150 मीटर से भी ज्यादा थी। कई टोही जहाजों के बीच ये विशालकाय जहाज थे और अब ये दोनों स्टील के दिग्गज आखिरकार आमने सामने आ गए। इसी क्षण बैरन नंबर अंततः थंडरहॉक की ओर बढ़ा, जो अपने प्रतिद्वंद्वी के आने की प्रतीक्षा में तैयार बैठा था। पिछले युद्धों के बाद दोनों प्रमुख जहाजों के पास अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त टोही जहाज नहीं बचे थे। थंडरहॉक के आसपास के ज्यादातर पुराने मॉडल डूब चुके थे और जो बचे थे उन्होंने समझदारी से दूरी बनाए रखी। जहां तक बैरन नंबर के साथ मौजूद टोही जहाजों की बात है, लिलिया ने एक एक करके उन सभी को मार गिराया था। इसलिए जब दोनों जहाज आमने सामने आए तो दोनों अकेले खड़े थे, किसी भी तरह की बाधा से मुक्त। इससे दोनों दिग्गजों के बीच एक निर्णायक मुकाबले में यह तय हो गया कि इस हवाई युद्ध का बादशाह कौन होगा। 200 मीटर, 150 मीटर, 100 मीटर। जब उनके बीच की दूरी 100 मीटर से भी कम रह गई तो दोनों विशालकाय विमान एक साथ दहाड़ने लगे। थंडरहॉक की 4 मुख्य तोपें और 20 द्वितीयक तोपें एक साथ फायर हुई और बैरन नंबर की मैजिक तोपें भी एक पल भी पीछे नहीं रहीं और एक साथ आग की लपटों में घिर गईं। एक पल के लिए तोपखाने की आवाज लगातार गूंजती रही, खासकर मुख्य तोपों की गगनभेदी गड़गड़ाहट जो असाधारण रूप से भेदने वाली थी। दोनों प्रमुख जहाजों की मुख्य तोपों से एक साथ हुई गोलाबारी ने अपने अपने डेक पर मौजूद चालक दल के कानों में झनझनाहट पैदा कर दी। हालांकि चूंकि थंडरहॉक तैयार था इसलिए उसे इस गोलाबारी में कुछ बढ़त मिली, क्योंकि उसने युद्धपोत की स्थिति पहले ही समायोजित कर ली थी और अपना पक्ष बैरन नंबर की ओर रख दिया था। इससे जहाज के सभी गनपोर्ट निशाना साधकर हमला कर सकते थे। इसके विपरीत बैरन नंबर ने आक्रमण करते हुए थंडरहॉक का धनुष से सामना किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी आधी जादुई तोपें निशाना साधने में असमर्थ रहीं। 5 मुख्य तोपों में से भी धनुष पर स्थित केवल 2 ही निशाना साध सकीं। लेकिन इसी तरह चूंकि बैरन नंबर अपने धनुष से बमबारी की ओर मुंह करके खड़ा था इसलिए लक्ष्य क्षेत्र छोटा था। जबकि थंडरहॉक बैरन नंबर की ओर अपनी गोलाबारी बढ़ा रहा था, उसका लक्ष्य क्षेत्र बड़ा था और पहली ही गोलीबारी में बैरन नंबर की मुख्य तोप से सबसे पहले उसी पर वार हुआ। दोनों प्रमुख जहाजों के बीच तोप की पहली गोलाबारी के बाद बैरन नंबर ने सबसे पहले थंडरहॉक को निशाना बनाया। एक ही पीढ़ी और श्रेणी के जहाज होने के कारण उनके विन्यास आमतौर पर एक जैसे थे। हालांकि कुछ बारीकियों में अंतर था, जैसे कि बैरन नंबर की मारक क्षमता थंडरहॉक से कुछ ज्यादा थी, खासकर इसकी मुख्य तोप जिसमें न केवल एक ज्यादा तोप थी बल्कि उसकी शक्ति भी ज्यादा थी, जो 1500 पॉइंट तक पहुंचती थी। इतनी शक्तिशाली मुख्य तोप के सीधे प्रहार से एक प्रमुख तोप होने के बावजूद थंडरहॉक के पतवार में जोरदार कंपन महसूस हुआ। 1500 की शक्ति वाली जादुई तोप ने रक्षात्मक जाल को भेदने के बाद भी काफी बल बनाए रखा और पतवार पर सीधा प्रहार किया। सौभाग्य से थंडरहॉक की पहचान इसकी मजबूत समग्र क्षमताएं थी। हालांकि इसकी मुख्य तोपों की संख्या और मूल शक्ति बैरन नंबर की तुलना में बहुत कम थी, फिर भी इसकी रक्षात्मक शक्ति कहीं अधिक मजबूत थी। थंडरहॉक का रक्षात्मक नेट 1000 पॉइंट का था और इसका मोटा पतवार कवच इसे 500 या उससे कम शक्ति वाले मैजिक तोप के हमलों का सामना करने में सक्षम बनाता था। जादुई तोपों और रक्षात्मक जाल के बीच का संबंध पारस्परिक निरस्तीकरण का था, जिसका अर्थ था कि 1500 शक्ति वाली जादुई तोप 1000 शक्ति वाले रक्षात्मक जाल से टकराने के बाद इसकी शक्ति 1000 अंक कम हो जाती थी। जब तक ये पतवार से टकराती, जादुई तोप की शक्ति केवल 500 अंक रह जाती थी। परिणामस्वरूप हालांकि थंडरहॉक पर मुख्य तोप से सीधा प्रहार हुआ, फिर भी यह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। इसका श्रेय इसके पर्याप्त मोटे कवच को जाता है तथा इसके पतवार में अंततः केवल एक बड़ा गड्ढा ही बना। लेकिन यह मत भूलिए कि यह तोपों की गोलीबारी का केवल पहला दौर था। लंबी दूरी की तोपों की गोलाबारी के बाद दोनों जहाजों के बीच की दूरी तेजी से कम होती गई, लगभग पलक झपकते ही 100 मीटर के भीतर सिमट गई और तभी वास्तविक क्रूर युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। एक बार जब वे 100 मीटर के भीतर आ गए तो उनकी जादुई तोपों की मारक क्षमता नाटकीय रूप से बढ़ गई। सीमा जितनी करीब होती मारक क्षमता उतनी ही अधिक होती। धनुष घुमाओ, सभी जादुई तोपें चलाओ। जैसे जैसे दूरी धीरे धीरे कम होती गई, बैरन नंबर के कमांडर ने आदेश जारी किया। धीरे धीरे जहाज को मोड़कर उसके किनारों को संरेखित किया, सभी तोपों को थंडरहॉक पर निशाना बनाया और सभी मैजिक तोपों को एक साथ फायर करने का आदेश दिया। इस समय बैरन नंबर का कमांडर आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसे अच्छी तरह पता था कि प्रतिद्वंद्वी के पास किस तरह का फ्लैगशिप है। स्कवेंजर टाइप एक एस्कॉर्ट के फ्लैगशिप में कुल मिलाकर अच्छी क्षमताएं थीं, लेकिन कोई खास कमजोरी न होने का मतलब ये भी नहीं था कि उसमें कोई खास ताकत थी। जबकि दूसरी ओर बैरन नंबर का एक बड़ा फायदा था, उसकी मारक क्षमता काफी ज्यादा थी। पांच मुख्य तोपें जिनमें से प्रत्येक की शक्ति 1500 अंक की है, 15 द्वितीयक तोपें जिनमें से प्रत्येक की शक्ति 1000 अंक की है। बैरन नंबर के पास कुल मिलाकर विशेष रूप से बहुत अधिक जादुई तोपें नहीं थी, लेकिन इसकी मुख्य और द्वितीयक दोनों तोपों की शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, जिससे इसे निकट सीमा की बमबारी में बहुत बड़ा लाभ मिला। इसलिए बैरन नंबर कमांडर के विचार में एक बार जब उन्होंने थंडरहॉक के साथ नजदीकी लड़ाई की तो इसमें कोई संदेह नहीं था, वे पहले ही इस टकराव को जीत चुके थे। लड़कों, जीत इसी पर निर्भर है। सभी लोग अपनी इच्छानुसार गोली चलाएं। इसी तरह थंडरहॉक पर सवार चालक दल भी इस समय पीछे हटने से नहीं बच सकता था। देख के प्रभारी अंकल विल ने न केवल मनोबल बढ़ाने के लिए जोर से चिल्लाया, बल्कि खुद भी युद्ध में शामिल हो गए और एक जादुई तोप के सामने गनर की तरह बैठ गए। कुछ ही देर बाद बैरन नंबर और थंडरहॉक दोनों पर लगी प्रत्येक जादुई तोप एक साथ फायर हो गई। तोपों के नाल आग की लपटों के साथ एक साथ गर्जना कर रहे थे। दो प्रमुख जहाजों से 40 से अधिक जादुई तोपों का इतनी कम दूरी पर एक साथ फायर करना, ये कितना आश्चर्यजनक था। 40 से अधिक जादुई तोपों की गर्जना सचमुच बिजली की तरह थी, जिससे न केवल दोनों युद्धपोतों पर मौजूद सभी चालक दल के सदस्यों के कानों में भिनभिनाहट पैदा हुई, बल्कि नीचे की जमीन पर भी इसका असर पड़ा। जमीन पर मौजूद दानव इस बमबारी से चौंक गए और अचानक अपने सिर उठाकर आकाश की ओर देखने लगे। हवा में गतिरोध में फंसे रॉकी और बैरन वोलिन चुपचाप एक दूसरे से दूर हो गए और एक ही दिशा में देखने लगे। यहां तक कि फेली और अन्य लोग जो अभी भी अपने दुश्मनों से जमकर लड़ रहे थे, उन्होंने इस समय तोप के धुएं के स्रोत की ओर अपनी निगाहें गड़ा दी। तोप की आग ने सभी को प्रभावित किया। जादुई ऊर्जा से निर्मित मन तोप के गोले ने विरोधियों के प्रमुख जहाजों पर तुरंत हमला किया और दोनों प्रमुख जहाजों के रक्षात्मक जाल अचानक चमक उठे, फिर उतनी ही तेजी से मंद हो गए। असहाय उस क्षण दोनों प्रमुख जहाजों की मारक क्षमता बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा दोनों जहाजों की लंबाई 150 मीटर से ज्यादा और एक दूसरे से 100 मीटर से भी कम की दूरी होने के कारण वे मूलतः लक्ष्यों से कोई अलग नहीं थे, और इस प्रकार उनकी लगभग सभी जादुई तोपें अपने निशाने पर लगी, सभी माध्यमिक तोपें लगी, सभी मुख्य तोपें लगी। ऐसी परिस्थितियों में न तो बैरन नंबर का रक्षात्मक जाल और न ही थंडरहॉक का रक्षात्मक जाल ऐसे तीव्र संकेंद्रित हमलों का सामना कर सका, और दोनों ने एक झटके में अपने रक्षात्मक भार को पार कर लिया, जिससे पूरी तरह से अंधेरा छा गया। बेशक रक्षात्मक जालों का काला पड़ना अस्थायी ही था, रिचार्ज करने के बाद उन्हें फिर से खोला जा सकता था, लेकिन इस रिचार्जिंग अवधि के दौरान दोनों प्रमुख जहाज किसी भी बाहरी रक्षात्मक शक्ति से रहित नग्न लड़कियों की तरह थे। इसलिए जब रक्षात्मक जाल नीचे गिर गए तो तोप के गोले या तो आंशिक रूप से निष्प्रभावी हो गए या किसी भी निष्प्रभावी बल से पूरी तरह प्रभावित होकर जहाजों के पतवारों पर गिर गए। ये कहना जरूरी है कि बैरन नंबर की मारक क्षमता वाकई जबरदस्त थी, सिर्फ माध्यमिक तोपों की ही शक्ति 1000 पॉइंट तक पहुंच पाई। इसलिए जब थंडरहॉक का रक्षात्मक जाल गायब हुआ तो कई माध्यमिक तोपें पतवार से साफ टकराई, जिससे भारी कवच के टुकड़े तुरंत चारों ओर उड़ गए। दो गोलियां एक दूसरे के बिल्कुल पास लगी, जिससे थंडरहॉक में लगभग एक बड़ा छेद हो गया। ये नतीजा इस वजह से हुआ क्योंकि थंडरहॉक भारी कवच से लैस था। अगर पतवार पर कवच न होता तो सिर्फ बैरन नंबर की माध्यमिक तोपें ही भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। बदकिस्मती से बैरन नंबर की प्रसिद्धि उसकी दूसरी तोपों पर नहीं बल्कि उसकी मुख्य तोप पर निर्भर थी। हाल ही में हुई गोलीबारी में बैरन नंबर की सभी पांच मुख्य तोपों ने एक साथ फायर किया और सभी अपने निशाने पर लगी। थंडरहॉक का रक्षात्मक जाल क्यों टूट गया? क्योंकि उस पर एक ही समय में चार मुख्य तोप के गोले लगे थे, जिनमें से प्रत्येक की विनाशकारी शक्ति 1500 अंक थी। थंडरहॉक का रक्षात्मक जाल टूटने से पहले एक सेकंड भी नहीं टिक सका। हालांकि रक्षात्मक जाल से गुजरने के बाद चार मुख्य तोपों के शॉट्स की शक्ति काफी कम हो गई और थंडरहॉक पर प्रभाव माध्यमिक तोपों की तुलना में भी कम था, लेकिन चूंकि पांच मुख्य तोपों ने एक साथ फायर किया जबकि चार गोलियां रक्षात्मक जाल द्वारा बेअसर कर दी गईं, मुख्य तोप से निकले एक गोले को किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ा और उसने थंडरहॉक पर अपनी 100% शक्ति से प्रहार किया। ये बैरन नंबर के कमांडर के अनुभवी कौशल का प्रमाण था। उन्होंने जानबूझकर एक मुख्य तोप के गनर को एक सेकंड बाद फायर करने का आदेश दिया था। उस सेकंड ने पहले फायर करने वाली चार तोपों को पहले रक्षात्मक जाल को तोड़ने का मौका दिया, जिससे आखिरी मुख्य तोप के गोले को बिना किसी रुकावट के हिट करने का रास्ता साफ हो गया। मुख्य तोप क्या है? ये सबसे दुर्जय हथियार है जो एक ही गोली से दुश्मन के जहाज को नष्ट करने में सक्षम है, या कम से कम उसे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर सकता है। मुख्य तोप की सीधी टक्कर से थंडरहॉक को तुरंत भारी नुकसान पहुंचा। पतवार में एक बड़ा सा छेद हो गया। 1500 शक्ति वाली जादुई ऊर्जा वाली तोप का गोला जहाज के बाईं ओर से भेदकर दाईं ओर से निकल गया और थंडरहॉक को आर पार भेदता हुआ निकल गया। हम जीत गए, बैरन वोलिन, जो उस समय रॉकी से उलझा हुआ नहीं था, ये दृश्य देखकर उत्साहित होकर बोला, क्योंकि वह जानता था कि वह जीत गया है। हालांकि तोप से मारा गया थंडहॉक अभी डूबा नहीं था, लेकिन वह पहले ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और बैरन नंबर की दूसरी बमबारी का सामना नहीं कर सकता था। इसका मतलब था कि जब बैरन नंबर ने अपनी दूसरी गोलाबारी शुरू की तो थंडहॉक का अंत निश्चित था। हम जीत गए, लेकिन जैसे ही वह उत्साह से उछल रहा था, रॉकी ने भी उसी तरह उत्साहित होकर चिल्लाया। इस चीख ने बैरन बोलिन को हैरान कर दिया। उसका जहाज डूबने ही वाला था, वो किस लिए चिल्ला रहा था? अपनी हार का जश्न मनाने के लिए। हालांकि जब बैरन बोलिन ने इस बारे में सोचा और अनजाने में अपने बैरन नंबर पर नजर डाली तो वह पूरी तरह से दंग रह गया। कैसे, ये कैसे हो सकता है? अपने स्वयं के बैरन नंबर को देखकर बैरन बोलिन पूरी तरह से चकित हो गया। बैरन बोलिन, जो सोच रहा था कि वह जीत गया है, ने अनजाने में बैरन नंबर की ओर देखा और फिर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्योंकि उनके विचार में बैरन नंबर पहले से ही हवा में धीरे धीरे झुक रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह डूबने ही वाला है। क्या क्या हो रहा है? ये दृश्य देखकर बैरन बोलिन वहीं पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है, क्योंकि कोई भी देख सकता था कि बैरन नंबर डूबने वाला है। ये कैसे संभव हो सकता है? जब बैरन बोलिन ने अपने जहाज को गिरने के कगार पर डगमगाते देखा तो उन्होंने अपनी आंखें भी रगड़ी और सोचा कि क्या लंबे युद्ध के कारण आंखों में आई समस्या के कारण वे चीजों को गलत देख रहे थे। बैरन नंबर और थंडहॉक एक ही पीढ़ी और वर्ग के प्रमुख जहाज थे, इसलिए ये समझ में आता था कि तोपखाने की गोलाबारी के बाद दोनों को नुकसान होगा, लेकिन उनका अपना प्रमुख जहाज क्यों डूबने वाला था? दोनों फ्लैगशिप लगभग हर लिहाज से एक जैसे थे, तो थंडहॉक सिर्फ एक ही गोले से बैरन नंबर को कैसे डुबो सकता था? अगर ऐसा मुमकिन भी होता तो ज्यादा शक्तिशाली मारक क्षमता और ज्यादा शक्तिशाली मुख्य तोपों वाला बैरन नंबर ही थंडहॉक को डुबो सकता था। उल्टा कैसे हो सकता था? कोई आश्चर्य नहीं कि बैरन बोलिन के मन में ऐसे विचार आए, क्योंकि दो प्रमुख जहाजों के बीच युद्ध का नतीजा एक ही बार में गोलीबारी से तय होना वाकई दुर्लभ था। समान पीढ़ी और वर्ग के तहत ऐसा एकतरफा नतीजा होना कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन बैरन बोलिन को यह नहीं पता था कि यह परिणाम ही सही था। दुर्भाग्य से यह एक ऐसा अर्थ था जिसे वह समझ नहीं पाए। दरअसल बैरन नंबर की मारक क्षमता थंडहॉक से ज्यादा मजबूत थी, लेकिन यह मूल थंडहॉक की तुलना में बिना किसी सुधार के थी। वर्तमान थंडहॉक को ऑर्टन ने मैना रून से और भी बेहतर बनाया था। शायद समय और तकनीकी बाधाओं के कारण इसकी रक्षात्मक शक्ति को समय पर सुदृढ़ नहीं किया गया था, लेकिन थंडहॉक की मारक क्षमता वास्तव में रूनों द्वारा बढ़ा दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। रून वृद्धि के बाद थंडहॉक की मारक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। मुख्य तोप की शक्ति मूल 1300 अंकों से बढ़कर 1700 अंक हो गई। 20 द्वितीयक तोपों की शक्ति में भी 700 से 1000 अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। परिणामस्वरूप हालांकि थंडहॉक के पास बैरन नंबर की तुलना में एक मुख्य तोप कम थी, फिर भी उसकी शक्ति एक स्तर अधिक थी। इसके अलावा रून संवर्धित द्वितीयक तोपों की शक्ति न केवल बैरन नंबर की शक्ति के बराबर थी, बल्कि 5 अधिक तोपों के साथ उससे भी अधिक थी। इसने थंडहॉक को मारक क्षमता की प्रतियोगिता में बढ़त दिला दी, जिसके परिणामस्वरूप यह अविश्वसनीय हार हुई। दोनों द्वारा एक दूसरे पर गोली चलाने के बाद बैरन नंबर को भी पूरा झटका लगा, क्योंकि थंडहॉक की सभी जादुई ऊर्जा तोपों के गोले अपने लक्ष्य पर जा गिरे, जिनमें 4 मुख्य तोपें और 20 द्वितीयक तोपें भी शामिल थीं। इस समय बैरन नंबर की कमजोरी उजागर हो गई, इसकी रक्षा बहुत कमजोर थी। बैरन नंबर के रक्षात्मक जाल में केवल 900 पॉइंट थे और युद्धपोत का कवच भी इतना मोटा नहीं था कि 300 पॉइंट से ज्यादा शक्तिशाली जादुई तोपों के हमलों को रोक सके। रक्षा का ये स्तर मूल थंडहॉक के विरुद्ध तो पर्याप्त हो सकता था, जिसकी मारक क्षमता विशेष रूप से प्रबल नहीं थी, लेकिन रून संवर्धित थंडहॉक के विरुद्ध ये बहुत कमजोर था। इस प्रकार गोलीबारी के एक दौर के बाद बैरन नंबर का रक्षात्मक जाल तुरंत नष्ट हो गया, और रक्षात्मक जाल द्वारा कुछ प्रभाव को अवशोषित करने के बाद भी थंडहॉक की 4 मुख्य तोपों के गोले में अभी भी 800 के बराबर शक्ति थी, ये देखते हुए कि बैरन नंबर के रक्षात्मक जाल में केवल 900 अंक थे। 800 शक्ति वाले गोले सीधे असुरक्षित पतवार पर, जिस पर कवच की केवल एक पतली परत थी, लगने के परिणाम पूर्वानुमेय थे। इसके अलावा एक बार रक्षात्मक जाल टूट जाने पर थंडहॉक की अधिक संख्या में द्वितीयक तोपों का लाभ भी स्पष्ट था। कुछ गोले रक्षात्मक जाल से टकराने के बावजूद जाल टूटने के बाद भी कई गोले बैरन नंबर के पतवार पर वार करने में सफल रहे। रून वृद्धि के साथ थंडहॉक की द्वितीयक तोप की शक्ति भी पूरे 1000 अंक की हो गई, तथा पर्याप्त संख्या में लक्ष्य पर प्रहार करने के कारण बैरन नंबर ने मुख्य तोपों का सामना किया, लेकिन द्वितीयक तोपों की बौछार के आगे गिर गया। 1000 शक्ति वाली द्वितीयक तोपों का सामना करते हुए सिर्फ एक राउंड फायरिंग से बैरन नंबर के पतवार में 6-7 बड़े छेद हो गए। हालांकि एक भी गोली से पतवार पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई, लेकिन असल नुकसान बहुत ज्यादा था। बैरन नंबर बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर तेजी से झुक गया। उसके शरीर में हुए छेदों से धुआं निकलने लगा और उसकी गति भी धीमी हो गई। आखिरकार वह लगभग पूरी तरह रुक गया, हवा में लटका हुआ, गतिहीन। इसके विपरीत थंडरहॉक हालांकि एक प्राथमिक तोप से भी टकराया था, पर उसे केवल एक ही वार झेलना पड़ा था। हालांकि गंभीर क्षति होना निश्चित था, फिर भी कम से कम उसमें पर्याप्त युद्ध शक्ति और एक निश्चित गति तो थी ही। इसके साथ ही नतीजा बिल्कुल साफ हो गया। बैरन नंबर की लिस्टिंग के कारण उसकी आधी से ज्यादा जादुई तोपें ठीक से निशाना नहीं लगा पा रही थीं और मुख्य तोपों के रिचार्ज होने पर उसकी मारक क्षमता तुरंत कई पायदान कम हो गई। इस बीच थंडरहॉक ने अपनी गतिशीलता का फायदा उठाते हुए बैरन नंबर के पीछे चक्कर लगाया। दुश्मन की मारक क्षमता पहले ही कम हो चुकी थी, फिर भी वह जादुई तोप के निशाने से बच निकला, जबकि उसकी अपनी जादुई तोपों ने लगातार बमबारी शुरू कर दी। इस बार की बमबारी पहले की तरह जोरदार और गर्जनापूर्ण नहीं थी, क्योंकि यह हमला पूरी तरह से एक तरफा था जो केवल थंडरहॉक की ओर से हो रहा था। फिर भी यह बमबारी और भी अधिक रोमांचकारी थी। जैसे ही लगातार बमबारी ने बैरन नंबर पर प्रहार किया, वह टुकड़ों में बिखर गया तथा उसमें प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन एक फ्लैगशिप तो आखिर फ्लैगशिप ही होता है। बिना हिले दुले वार सहते हुए भी बैरन नंबर ने द्वितीयक तोपों के दो राउंड के हमले झेले, जब तक थंडरहॉक की चार मुख्य तोपें फिर से चार्ज नहीं हो गईं। आखिरकार गर्जना करती तोपों के बीच वह दो टुकड़ों में फट गया और आसमान से नीचे गिर गया। बैरन बनाम थंडरहॉक, थंडरहॉक की विजय। भाइयों, दुश्मन का प्रमुख जहाज डूब चुका है, जीत हमारी मुट्ठी में है। जैसे ही प्रमुख जहाज बैरन नंबर गिरा, इस हवाई युद्ध का निर्णायक मोड़ आ ही गया। रॉकी की तरफ से बचे हुए सभी हवाई जहाजों का मनोबल बढ़ गया, हर युद्धपोत के चालक दल में मानो नई जान फूंक दी गई हो। इसके ठीक विपरीत बैरन बोलिन का बेड़ा पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। बचे हुए कुछ टोही जहाज बिना सिर वाली मक्खियों की तरह इधर उधर भटकने लगे, यहां तक कि एक जहाज तो एक अनुरक्षक जहाज की तोप के सामने से गुजरकर सीधे आसमान से नीचे गिर गया। ऐसी स्थिति में युद्ध अभी भी जारी हो सकता था, लेकिन इस हवाई लड़ाई का नतीजा पहले ही तय हो चुका था। रॉकी के पास अभी भी 6 या 7 एयरशिप मॉडल 6 टोही जहाज थे, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि दोनों बड़े युद्धपोत पूरी तरह से सुरक्षित थे और उनकी लड़ाकू क्षमता भी अच्छी थी। हालांकि बैरन बोलिन का प्रमुख जहाज नष्ट हो गया और केवल उतनी ही संख्या में टोही जहाज बचे, जिससे ये संकेत मिला कि स्थिति बदल गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? अपने प्रमुख जहाज को नष्ट होते देख बैरन बोलिन स्तब्ध रह गए और काफी देर तक शून्य में देखते रहे। धत्तेरी की कुछ ही देर में वह सदमे से बाहर आ गया और इस बात की परवाह किए बिना कि रॉकी अभी भी उससे भिड़ रहा है या नहीं, उसने आकाश में एक चाप खींचा और बचे हुए कुछ टोही जहाजों की ओर दौड़ पड़ा। जहां तक भागते हुए बैरन बोलिन की बात है, रॉकी ने उसका पीछा न करने का फैसला किया, क्योंकि अब उसे इसकी जरूरत नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं था कि उसे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन वह बोलिन को भागने तो नहीं ही देगा। बस इस समय बोलिन का सामना करने के लिए उसे अपनी ताकत पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। रॉकी को बस अपने फ्लैगशिप पर वापस लौटना था और बचे हुए बेड़े का इस्तेमाल करके बैरन बोलिन को पूरी तरह से फंसाना था। अपने प्रमुख जहाज के डूबने से बैरन बोलिन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए और इस बात की परवाह किए बिना कि रॉकी उन्हें उलझाए रखेगा या नहीं, वे तुरंत अपने बेड़े में वापस लौट आए। हालांकि इस बार रॉकी ने लगातार पीछा नहीं किया। हालांकि वह बैरन बोलिन को आसानी से भागने नहीं देता था, वह ये भी समझता था कि अगर वह दुश्मन से उलझता रहा तो वे सचमुच एक भीषण युद्ध में उतर जाएंगे। इसलिए उसने भी अपने बेड़े में वापस लौटने का फैसला किया। अब स्थिति रॉकी के लिए बेहद फायदेमंद कही जा सकती थी। बैरन नंबर के नष्ट होने का मतलब था कि दुश्मन अपनी मुख्य ताकत खो चुका था और बचे हुए 7-8 टोही जहाज शायद ही कोई हलचल मचा पाएं। रॉकी की तरफ टोही जहाजों की संख्या भी घटकर 7-8 रह गई थी, लेकिन दो बड़े युद्धपोत बरकरार रहे और उनकी युद्ध क्षमता काफी कम हो गई। वास्तव में यह इस अंतरिक्ष युद्ध में रॉकी की जीत का प्रतिनिधित्व करता है। इस परिणाम के साथ उसके लिए अपने थंडरहॉक पर वापस लौटना स्वाभाविक था, जिसके बाद उसने थंडरहॉक और फेली के साथ एस्कॉर्ट जहाज को आदेश दिया कि वे एकजुट होकर बैरन बोलिन के शेष युद्धपोतों को नष्ट कर दें। ऐसी परिस्थितियों में हालांकि बैरन बोलिन एक टोही जहाज पर वापस लौट आए थे और अंततः कमान संभाल ली थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका बेड़ा, जिसमें कभी 30 से अधिक जहाज थे, एक भीषण लड़ाई के बाद मात्र 7 या 8 जहाजों तक सिमट गया था, जिससे बैरन बोलिन शक्तिहीन हो गए थे। हालांकि उन्होंने कमान फिर से संभाल ली थी, इसलिए उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टोही जहाज पर वापस आकर अपने दिल के दर्द के बावजूद बैरन बोलिन ने निर्णायक वापसी का आदेश दिया और शेष टोही जहाज तुरंत माटू शहर की ओर भाग गए। धत्तेरी की टोही जहाज के डेक पर खड़े बैरन बोलिन की आंखों में बस अनिच्छा ही थी, क्योंकि अब भी अपने बेड़े के तबाह हो जाने के बावजूद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे हार गया। जब थंडरहॉक और बैरन नंबर के बीच द्वंद्व शुरू हुआ था, तब भी उसे हमेशा यही विश्वास था कि आखिरकार नगर स्वामी के सिंहासन पर वही बैठेगा। किसने सोचा था कि इसका अंत इस तरह होगा कि उसे जल्दबाजी में पीछे हटना पड़ेगा। बैरन बोलिन इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन चाहे वह माने या ना माने, नतीजा नहीं बदला जा सकता था। उसके पास वापसी का कोई मौका नहीं था और असल में यह हार पहले से तय थी, क्योंकि इस युद्ध में बैरन बोलिन ने युद्ध में लगभग हर बड़ा पाप किया था। सबसे पहले वह अति आत्मविश्वासी था। परिवार का आदेश मिलने के बाद से ही बैरन बोलिन ने कभी नहीं सोचा था कि रॉकी विरोध कर सकता है। उसके विचार से रॉकी को उसे देखते ही भाग जाना चाहिए था, या यूं कहें कि खबर सुनते ही तुरंत भाग जाना चाहिए था। यह विश्वास उसके मन में तब भी बना रहा जब दोनों बेड़े एक दूसरे के आमने सामने थे। दूसरे, वह तैयार नहीं था। अपने अति आत्मविश्वास के कारण बैरन बोलिन ने न तो मानसिक रूप से और न ही अपने कार्यों में युद्ध की कोई तैयारी की थी। अपना बेड़ा लाने के बावजूद ये घर बदलने जैसा था। उसने अपना सारा सामान थंडहॉक शहर में स्थानांतरित कर दिया, जिससे रॉकी के साथ युद्ध बिना तैयारी के बनाम तैयार की लड़ाई जैसा एक विशिष्ट मामला बन गया। अंत में बैरन बोलिन ने युद्ध के दौरान अपने निर्णयों में गंभीर गलतियां की। सच कहें तो उसके पास युद्ध जीतने के अनगिनत मौके थे, क्योंकि बेड़े के आकार और गुणवत्ता के मामले में वह रॉकी से कमतर नहीं था। इसके अलावा व्यक्तिगत युद्ध क्षमता और कमान कौशल में वह रॉकी से कहीं बेहतर था, जो उसकी जीत का आधार होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, शुरू से आखिर तक उसने इन मौकों का कभी पूरा फायदा नहीं उठाया। 10,000 कदम पीछे हटकर अगर वह इस अंतरिक्ष युद्ध से बचकर रॉकी के तैयार होने का एहसास होने पर माटू शहर लौट जाता और रॉकी से हिसाब बराबर करने के लिए तैयार होने तक इंतजार करता, तो भी उसकी इतनी बुरी हार नहीं होती जितनी अब हुई है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो बैरन बोलिन को बिना किसी अन्याय का एहसास हुए हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके कम आंकने की वजह से तैयारी में कमी आई और इसी वजह से कई गलतियां हुई। ये सब मिलकर अंततः उनकी हार का कारण बने। हालांकि अब इस बारे में बात करना बेकार है, क्योंकि बैरन बोलिन पहले ही हार चुका है। अब वह बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर सकता था, क्योंकि रॉकी उसे जाने नहीं देना चाहता था। जब बैरन बोलिन ने शेष टोही जहाजों को माटू शहर की ओर पीछे हटने का आदेश दिया, तो थंडहॉक पहले ही एस्कॉर्ट जहाजों से मिल चुका था और फिर उसने एक भयंकर पीछा शुरू कर दिया। पराजित शत्रु का पीछा न करने का सिद्धांत अब लागू नहीं होता था। अपने पास दो बड़े युद्धपोतों के साथ रॉकी के पास पूर्ण बढ़त थी। अगर बैरन बोलिन पलटवार भी करते तो वह व्यर्थ होता। स्वयं एक शून्य जादुई योद्धा होने के नाते बैरन बोलिन के लिए अपनी शक्ति से पूरे बेड़े का विरोध करना असंभव था। उनका कवच इतना शक्तिशाली नहीं था कि किसी प्रमुख जहाज को मार गिरा सके। इसके अलावा रॉकी और लिलिया भी ताकतवर थे। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण बैरन बोलिन को हताश होकर भागने पर मजबूर होना पड़ा। फिर भी रॉकी उसे एक और दिन लड़ने के लिए जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। पहली बात, वह बाघ को वापस उसके पहाड़ पर नहीं छोड़ना चाहता था, और दूसरी बात, उसका मानना था कि बैरन बोलिन को मारकर ही मैरेंटे परिवार को असली दर्द का एहसास होगा और उसे धमकाने के अंजाम का एहसास होगा, जिससे वे भविष्य में उसे निशाना बनाने से पहले दो बार सोचेंगे। ऐसी परिस्थितियों में बैरन बोलिन की स्थिति अवर्णनीय रूप से खतरनाक थी। इस पूरी परीक्षा के दौरान उनके टोही जहाज के चारों ओर तोप के गोले फटते रहे, जिससे वे भयभीत हो गए। लेकिन वे कुछ हद तक भाग्यशाली भी थे। हालांकि उनके जहाज पर दोनों युद्धपोतों से लगातार मुख्य और द्वितीयक तोपों से बमबारी हो रही थी, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, जिससे वे अंततः सुरक्षित रूप से माटू शहर वापस पहुंच पाए। जल्दी रक्षात्मक जाल खोलो। माटू शहर में वापस लौटने पर बैरन बोलिन टोही जहाज के उतरने का इंतजार किए बिना स्काईपोर्ट की ओर आगे बढ़ गया और फिर वहां मौजूद सैनिकों पर चिल्लाया, महाराज आप क्या बात कर रहे हैं? माटू शहर के सैनिक उसकी बातों से पूरी तरह चकित रह गए और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दुश्मन आ रहे हैं, जल्दी से रक्षात्मक जाल खोलो, सैनिक का कॉलर पकड़ते हुए बैरन बोलिन चिल्लाया, और इस बिंदु पर सैनिक को अंततः समझ आ गया और वह तुरंत जल्दी से भाग गया। कुछ मिनट बीतने के बाद माटू शहर का रक्षात्मक जाल तैनात कर दिया गया। एक धुंधली सी दिखाई देने वाली ढाल ने धीरे धीरे पूरे तैरते शहर को घेर लिया। इस बीच माटू शहर के स्वामी, जिन्होंने ये समाचार सुना था, भी बैरन बोलिन से मिले और वे भी सैनिक की तरह ही हैरान थे। नगरपाल बोलिन, क्या तुम्हें क्या हो गया है? अस्त व्यस्त बैरन बोलिन को घूरते हुए माटू शहर के स्वामी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर एक महत्वहीन प्रश्न पूछने में सफल हुए। ऐसा नहीं था कि माटू बहुत धीमा था, लेकिन वह बैरन बोलिन की हार को समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रश्न पूछा और इससे पहले कि बैरन बोलिन उत्तर दे पाते, एक गार्ड ने चिल्लाकर कहा, नगरपाल शत्रु। क्या? ये सुनकर माटू ने अचानक ऊपर देखा तो पाया कि रॉकी पहले से ही माटू शहर के रक्षात्मक जाल के बाहर अपने बेड़े को तैनात कर रहा था। रॉकी के बेड़े को डिफेंसिव नेट के बाहर आते देख माटू तुरंत घबरा गया और एक पल के लिए भ्रमित होने के बाद उसने बैरन बोलिन को पकड़ लिया। बोलिन, क्या हो रहा है? ये किसका बेड़ा है? ये रॉकी का बेड़ा है। बैरन बोलिन, जिसे माटू ने पकड़ लिया था, ने कुछ दिन पहले जो अहंकार दिखाया था उसे खो दिया था, और उसने निराश होकर जवाब दिया। यह जवाब सुनकर माटू की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके आश्चर्य से उसका पूरा चेहरा विकृत हो गया। रॉकी का बेड़ा, वही रॉकी जिसे तुम्हें भगाना था। बोलते समय माटू ने रक्षात्मक जाल के बाहर वहां तैनात बेड़े की ओर देखा। बैरन बोलिन के स्पष्टीकरण के बिना भी माटू अनुमान लगा सकता था कि क्या हो रहा था, लेकिन चूंकि उसने अनुमान लगाया था इसलिए उसे यह और भी अविश्वसनीय लगा। उन्होंने याद किया कि बैरन बोलिन ने उनसे कहा था कि थंडरहॉक शहर का सिटी लॉर्ड एक काय के अलावा कुछ नहीं है, विरोध करने की तो बात ही छोड़िए, वह उसे देखते ही पेशाब कर देगा और भाग जाएगा, तो फिर बैरन बोलिन को इतनी अपमानजनक स्थिति में वापस कैसे आना पड़ा। ज्यादा अहम बात यह थी कि रॉकी अपने बेड़े को स्काई सिटी के बाहर रोक कर क्या करना चाहता था। क्या हो सकता है, क्या उसका इरादा शहर पर हमला करने का था? अपने मन में चल रही संभावनाओं को सुनकर माटू ने फिर तोपों की गड़गड़ाहट भरी आवाजें सुनी और जल्द ही बाहर बेड़े को रक्षात्मक जाल पर जोरदार हमला करते देखा। रॉकी सचमुच घेराबंदी शुरू कर रहा था। सभी युद्धपोतों को आदेश दो, इच्छानुसार गोली चलाओ। लिलिया के साथ रॉकी थंडरहॉक के धनुष पर खड़ा था, माटू सिटी और उसके और माटू सिटी के बीच खड़े रक्षात्मक जाल को ठंडे दिमाग से देख रहा था और गोलीबारी शुरू करने का आदेश जारी किया। घेराबंदी करने के लिए इस आदेश ने घेराबंदी की शुरुआत कर दी, लेकिन रॉकी को खुद इसका एहसास नहीं हुआ क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह माटू शहर को हरा पाएगा या नहीं। वह बस इतना ही चाहता था कि बैरन बोलिन को आसानी न हो, नहीं कोई और जो उसे धमकाने में मदद करता हो, बस इतना ही। उनके आदेश का पालन करते हुए थंडरहॉक एस्कॉर्ट जहाज और शेष कुछ एयरशिप मॉडल 6 टोही जहाजों ने अपनी तोपों को माटू शहर पर निशाना बनाया। 1 सेकंड बाद तोपों की गगनभेदी आवाज आए और कई तोप के गोले जल्द ही माटू शहर के विस्तारित रक्षात्मक जाल पर गिरे, जिससे प्रकाश के कण लगातार फूटने लगे, लगभग बारिश की बूंदों के नीचे एक छतरी की तरह। लेकिन स्काई सिटी का रक्षात्मक जाल वास्तव में मजबूत था और भले ही युद्धपोतों से दागे गए प्रत्येक तोप का निशाना सटीक था, फिर भी कई दौर की बमबारी के बाद भी यह टूटा नहीं। लेकिन ये केवल अस्थायी था क्योंकि किसी भी रक्षात्मक जाल की एक सीमा होती है, चाहे वह सीमा से अधिक हो या अपनी क्षमता से अधिक भार वहन कर रहा हो, किसी भी स्थिति में पर्याप्त समय दिए जाने पर कोई भी रक्षात्मक जाल फट जाएगा। शासक होने के नाते माटू को ये बात पता थी, इसलिए जब रॉकी ने आक्रमण शुरू किया तो वह सचमुच घबरा गया। हालांकि माटू शहर की आबादी 3,000 थी, वहां केवल 15 युद्धपोत थे, सभी तीसरी पीढ़ी के टोही जहाज और उनमें एक भी बड़ा युद्धपोत नहीं था। अगर ये युद्धपोत भेजे जाते तो प्रमुख युद्धपोत और एस्कॉर्ट जहाज रॉकी को भगाने में असमर्थ होते और पूरी तरह से नष्ट हो जाते, इसलिए माटू अपना गुस्सा केवल बैरन बोलिन पर ही निकाल सकता था। बोलिन, आखिर क्या हो रहा है? ये रॉकी मेरे शहर पर हमला क्यों कर रहा है? हे प्रभु, ये रॉकी! अभी अभी पराजित होने के बाद वर्तमान बैरन बोलिन एक पिचकी हुई गेंद की तरह था, न केवल अपने पिछले अहंकार और आत्मविश्वास से रहित, बल्कि माटू का सामना करते समय भी उसने अब सिटी लॉर्ड की पहचान नहीं की, बल्कि सीधे माटू को माय लॉर्ड कहकर संबोधित किया। अपना मुंह बंद करें! इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, माटू ने उसे रूखेपन से टोक दिया। स्थिति इस स्तर पर पहुंच गई थी और उसकी अपनी सुविधा खतरे में पड़ गई थी, तो माटू बैरन बोलिन के प्रति विनम्र कैसे रह सकता था? इससे पहले वह बैरन का आदर करता था क्योंकि वह नगर स्वामी के रूप में आसन पद पर था, एक महान परिवार में उसकी भूमिका थी और उसके पास शक्तिशाली बेड़ा था। लेकिन अब जब बैरन बोलिन का बेड़ा नष्ट हो चुका था और वह अब नगर स्वामी नहीं बनने वाला था, और सबसे ज्यादा क्रोध की बात यह थी कि वह एक दुश्मन को मट्टू के दरवाजे पर ले आया था, तो मट्टू उसके प्रति कोई शिष्टाचार कैसे दिखा सकता था? बोलिन, मुझे परवाह नहीं कि रॉकी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, लेकिन तुम्हें इस मामले को अभी सुलझाना होगा और मुझे इसमें नहीं घसीटना होगा। बैरन बोलिन की ओर उग्र दृष्टि से देखते हुए माटू ने लगभग उसे आदेश दे दिया। हालांकि बैरन बोलिन के पास विनम्रता से बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में उसे अपना सिर झुकाना पड़ा, क्योंकि अगर माटू ने वास्तव में उसे बाहर निकाल दिया तो वह वास्तव में खत्म हो जाएगा। इसलिए माटू की खतरनाक निगाहों का सामना करते हुए बैरन बोलिन ने तुरंत अत्यंत नम्रता से कहा, नगरपाल कृपया अपना गुस्सा शांत करें, रॉकी बस गुस्सा निकाल रहा है, वह ज्यादा देर नहीं रुकेगा। बकवास, अगर वह हम पर बमबारी करता रहा तो क्या होगा? अगर वह सचमुच रक्षात्मक जाल को तोड़ देगा तो क्या होगा? जाओ और अभी इस समस्या का समाधान करो। नगरपालिका, कृपया मेरेंटे परिवार का ध्यान रखें और लॉर्ड लेक्सिंगटन के कारण इस बार मेरी सहायता करें, मैं भविष्य में निश्चित रूप से आपको उदारतापूर्वक ऋण चुकाऊंगा। माटू द्वारा उसे सौंपे जाने के स्पष्ट इरादे को देखते हुए बैरन बोलिन के पास अपने परिवार और अपने स्वामी का पालन पोषण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी बातों का असर हुआ। मेरेंटे परिवार और लेक्सिंगटन का जिक्र आते ही माटू के चेहरे पर, हालांकि अब भी गंभीरता थी, थोड़ी नरमी आई और उसने फिर कुछ नहीं कहा। मेरेंटे परिवार को हल्के में नहीं लिया जा सकता था क्योंकि माटू उन्हें उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था और लेक्सिंगटन न केवल बैरन बोलिन का प्रत्यक्ष वरिष्ठ था बल्कि मेरेंटे परिवार के भीतर एक शक्तिशाली व्यक्ति भी था जिसके पास एक विशाल स्काई सिटी थी जिसका अस्तित्व इतना दुर्जेय था कि माटू उसे उकसा नहीं सकता था। इस स्थिति में मार्टू ने लंबे समय तक सोचा, बैरन बोलिन को बेकार कहकर कोसा और फिर चला गया। लगभग 10 मिनट बाद मार्टू स्काईपोर्ट पर पुनः प्रकट हुआ। वह पहले से ही शून्य जादू कवच की पोशाक पहने हुए था और फिर एक टोही जहाज पर सवार होकर अपने पूरे बेड़े के साथ ऊपर की ओर चला गया। ऐसा लग रहा था कि वह इस मामले को स्वयं ही सुलझाने की योजना बना रहा था। सर, कोई आ रहा है। थंडहॉक पर सवार रॉकी और उसकी टीम ने मार्टू और 10 से ज्यादा टोही जहाजों को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। इसके तुरंत बाद वे डिफेंसिव नेट पर पहुंच गए और ठीक उसी तरह जैसे रॉकी ने बैरन बोलिन का सामना किया था, उन्होंने नेट के पार जाकर मुकाबला किया। चलो इसकी जांच करते हैं। मट्टू और 10 से अधिक टोही जहाजों को जहाज पर देखकर रॉकी ने कोई डर नहीं दिखाया। लिलिया के साथ उड़ान भरी और बेड़े के सबसे आगे वाले हिस्से में उड़ गया। रक्षात्मक जाल के अंदर मार्टू ने भी ऐसा ही किया, लेकिन उसने उड़ान भरने के लिए अपने शून्य जादुई कवच पर भरोसा नहीं किया। इसके बजाय वह अपना स्वयं का टोही जहाज लेकर गया। ऐसा इसलिए नहीं था कि मार्टू सतर्क था, बल्कि इसलिए था कि वह अकेले आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यद्यपि मार्टू को एक शून्य जादू योद्धा माना जाता था और उसने सैकड़ों हजारों सोने के सिक्कों के मूल्य का 5वीं पीढ़ी का कवच पहना था, फिर भी उसने अकेले रॉकी का सामना करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया था। उसका शून्य जादू कवच केवल उसकी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए था, जिसका कभी भी युद्ध में उपयोग नहीं किया गया था। इसलिए रॉकी और लिलिया का अकेले सामना करना तो दूर की बात है, उसके लिए उनसे मिलने के लिए जहाज से उड़ना भी मुश्किल हो रहा था। इसी तरह उनके बेड़े ने कभी भी किसी बड़ी लड़ाई में भाग नहीं लिया था। चाहे अनुभव, क्षमता या विशेष रूप से मनोबल के मामले में वे रॉकी के बेड़े के साथ अतुलनीय थे। किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास है या सुरक्षा की भावना, ये तुरंत पता चल जाता है। इसलिए जब रॉकी ने मार्टू को अपने स्काईशिप में आते देखा तो उसके मन में एक उपहास कौंधा और एक पहले से अनसोचा विचार धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में बनने लगा। धनुष पर खड़े होकर भले ही मार्टू शहर के भगवान ने शून्य जादू कवच पहना था और रॉकी से एक रक्षात्मक जाल द्वारा अलग किया गया था, फिर भी वह असहज महसूस कर रहा था। ये बेचैनी इस बात को लेकर नहीं थी कि रॉकी उसे सचमुच चोट पहुंचा सकता है या नहीं, बल्कि यह मार्टू के आत्मविश्वास की कमी को लेकर थी। स्वयं एक नगर स्वामी होने के नाते वह रॉकी के सामने फीके पड़ गए। यह उनके हवाई शहरों की तुलनात्मक ताकत से स्पष्ट था। रॉकी के आकाशीय शहर की आबादी मुश्किल से 2000 थी, फिर भी उसने पहले ही एक दुर्जेय बेड़ा तैयार कर लिया था। शहर का विकास सुव्यवस्थित था और सब कुछ फल फूल रहा था। इस प्रकार वह बैरन बोलिन को हराने में सफल रहा, जिसकी ताकत थोड़ी ज्यादा थी। हालांकि मार्टू के स्काई सिटी की आबादी 3000 थी, फिर भी वह थंडहॉक सिटी से हर लिहाज से कमतर था, खासकर सैन्य ताकत के मामले में। हालांकि रॉकी का बेड़ा अभी अभी एक बड़े युद्ध से गुजरा था, फिर भी वह मार्टू के बेड़े से ज्यादा ताकतवर था। मार्टू को हार्ड पावर में इस पर्याप्त असमानता के बारे में अच्छी तरह से पता था, इसलिए समान रैंक होने के बावजूद रॉकी का सामना करते समय उसकी मानसिकता विनम्र होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि उसके पास बस ताकत की कमी थी। लेकिन अब जब बात यहां तक पहुंच गई थी तो भले ही वह बहुत अनिच्छुक था, मार्टू को रॉकी का सामना करना पड़ा जो उसके शहर पर बमबारी कर रहा था। लॉर्ड रॉकी, इसका क्या मतलब है? रक्षात्मक जाल के पीछे धनुष पर खड़े होकर मार्टू ने काफी देर तक साहस जुटाया और अंततः रॉकी पर चिल्लाया, जिससे वह कुछ हद तक अधिकारपूर्ण लगने लगा। कितना दुस्साहस! तुम कौन होते हो नगर के स्वामी से इस तरह बात करने वाले? इससे पहले कि रॉकी जवाब दे पाता, लिलिया जो पास में थी ने उसे कड़ी फटकार लगाई। ये तो धमकी का प्रदर्शन था। लिलिया स्पष्ट रूप से बता सकती थी कि मार्टू उस शहर का शासक था जिसका वे सामना कर रहे थे। ये बात उसके आधिकारिक आचरण और उसके द्वारा पहने गए शून्य जादुई कवच से स्पष्ट थी, लेकिन उसने उसे डराने के लिए जानबूझकर अनभिज्ञता का नाटक किया। मट्टू, जिसे अभी अभी लिलिया ने डांटा था, शर्म से लाल हो गया। नगर स्वामी होने के नाते उसे इस तरह कब डांटा गया था? दुर्भाग्य से अब ऐसी स्थिति में जहां दुश्मन अधिक शक्तिशाली था, मार्टू ने अपने दांतों को भींच लिया और अपने क्रोध को निगल लिया। लिलिया को भयंकर रूप से घूरते हुए, मैं भगवान मार्टू हूँ। भगवान रॉकी, बिना उकसावे के मेरे शहर पर हमला करके क्या आप शहरों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? बिना उकसावे के, ये सुनकर रॉकी ने उपहास किया और फिर कुछ दूर तक आगे की ओर उड़ता रहा। तब तक चलता रहा जब तक कि वह स्काईशिप से कुछ मीटर की दूरी पर नहीं पहुंच गया और उन्हें अलग करने वाले रक्षात्मक जाल के सामने रुक गया। भगवान मार्टू, आप बुराई को बढ़ावा दे रहे हैं। बैरन बोलिन को मेरे थंडहॉक शहर पर आक्रमण करने में मदद कर रहे हैं और आप ये दावा करने का साहस कर रहे हैं कि यह कारण है। ये कहने के बाद उसने और कोई शब्द व्यर्थ नहीं किया और धीरे धीरे अपना बायां हाथ ऊपर उठाते हुए लिलिया के पास वापस चला गया। जैसे ही उसने अपना बायां हाथ पूरी तरह से ऊपर उठाया, तोपों की गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी और उसके पीछे के बेड़े ने एक साथ गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे रक्षात्मक जाल पर एक और भयंकर हमला शुरू हो गया। अचानक हुई गोलीबारी से मार्टू चौंक गया और चिल्लाने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि रॉकी बिना किसी बातचीत के गोली चला देगा, और अगर उसके साथ गार्ड न होते तो वह लगभग डेक पर गिर ही जाता। माटू को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि रक्षात्मक जाल द्वारा संरक्षित होने के बावजूद दर्जनों जादुई तोपों की एक साथ गोलीबारी का सामना करना किसी को भी डराने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही गोलाबारी खत्म हुई, रॉकी ने धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया और उसके पीछे चल रहे बेड़े ने गोलीबारी बंद कर दी। इसके बाद वह फिर से डिफेंसिव नेट की तरफ उड़ गया। भगवान मातो, यदि आप नहीं चाहते कि आपका शहर नष्ट हो जाए तो 1000 लोगों को सौंप दें। अपने शून्य जादुई कवच में हवा में मंडराते हुए रॉकी ने अपनी मांग रखी। अपनी सेना वापस बुलाने के लिए माटू को 1000 लोगों को सौंपना होगा। असंभव, रॉकी की मांग सुनकर भगवान माटू अपना डर भूलकर ऐसे दहाड़े जैसे उनका क्रोध सचमुच भड़क उठा हो। उसने सोचा था कि रॉकी उसे कुछ मांगे करेगा, क्योंकि अब तक की स्थिति ये थी कि अगर वह कुछ नहीं छोड़ता तो रॉकी भी आसानी से नहीं छोड़ता, और हाँ, अगर वह मूर्ख न हो तो वह मांगे जरूर करेगा। लेकिन माटू को उम्मीद नहीं थी कि रॉकी इतनी बड़ी मांग के साथ शुरुआत करेगा, वास्तव में उससे पूरे 1000 लोगों की मांग करेगा। उसके मूल विचार के अनुसार अगर रॉकी उससे दसियों हजार या लाखों सोने के सिक्के मांगता तो वह इन शर्तों पर राजी हो सकता था। वह ये पैसा चुकाने में सक्षम था, और रॉकी को देने के बाद माइरेंटे परिवार अपनी इज्जत बचाने के लिए ही सही, उसे जरूर पैसे लौटा देगा ताकि उसे किसी भी कीमत पर नुकसान न हो। लेकिन हैरानी की बात है कि रॉकी ने सोने के सिक्के नहीं बल्कि इंसान मांगे थे। माटू के लिए यह एक अकल्पनीय मांग थी। आबादी ही स्काई सिटी की नींव थी और उसे किसी भी कीमत पर नहीं दिया जा सकता था। तो उसके बाद माटू रॉकी पर गरजा, रॉकी, अपने आप पर बहुत घमंड मत करो। तुम्हारे इन कुछ टूटे हुए जहाजों के साथ रक्षात्मक जाल को तोड़ना बिल्कुल असंभव है। बहुत घमंडी मत बनो। चूंकि रॉकी इतना निर्दयी था कि उसने स्काई सिटी की आबादी को भी निशाना बनाया, इसलिए माटू ने विनम्रता से काम लिया और बिना रोक टोक के गालियां देनी शुरू कर दी। लेकिन एक बात में वह सही था, स्काई सिटी का रक्षात्मक जाल वास्तव में बहुत मजबूत था, और रॉकी का वर्तमान कमजोर बेड़ा संभवतः इसे भेद नहीं सकता था। बैरन बोलिन के साथ भीषण युद्ध के बाद रॉकी के बेड़े को, हालांकि उसकी मुख्य सेना अभी भी बची हुई थी, भारी नुकसान भी हुआ था। केवल कुछ टोही जहाज और दो बड़े युद्धपोत ही बचे थे। इसलिए इतने बड़े बेड़े के साथ माटू शहर के रक्षात्मक जाल को भेदने का विचार ये नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन काफी समय लेने वाला जरूर था। इसे पूरा करने में 10 दिन से लेकर आधे महीने तक का समय लग सकता है, और माटू को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि रॉकी उसके साथ 1 महीना उलझा रहेगा। यह मत भूलिए, उसने बैरन बोलिन को हराया था, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि उसने मैरेंटे परिवार को भड़का दिया था। उसके साथ टालमटोल करने का कोई समय नहीं था। इस स्थिति में माटू सुरक्षित और निडर महसूस कर रहा था। वह संभवतः रॉकी की मांग से सहमत नहीं हो सकता था। जैसे ही उसकी दहाड़ खत्म हुई, रॉकी ने बस एक ठंडी हंसी दी, कुछ नहीं कहा और लिलिया के साथ बेड़े में वापस उड़ गया। उनके लौटने के बाद थंडरहॉक के नेतृत्व में बेड़े ने तीव्र बमबारी पुनः शुरू कर दी, लेकिन एक टोही जहाज दल से अलग हो गया और थंडरहॉक शहर की ओर उड़ चला। यह आदमी आखिर क्या योजना बना रहा है? जैसे ही मैजिक कैनन ने अपना हमला जारी रखा, रक्षात्मक जाल के पीछे माटू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि रॉकी आखिर क्या योजना बना रहा है। क्या उसे सचमुच यकीन था कि इन चंद युद्धपोतों से वह रक्षात्मक जाल को तोड़ सकता है, या क्या वह सचमुच 1000 लोगों को पाने के लिए मैरेंटे परिवार की अनदेखी करते हुए उसके साथ 1 महीने तक उलझना चाहता था? माटू वास्तव में यह नहीं समझ सका कि रॉकी क्या योजना बना रहा था, और उसके पास रुकने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया, बहुत समय। इस दौरान रॉकी का बेड़ा लगातार रुक रुक कर रक्षात्मक जाल पर हमला करता रहा। हालांकि आग पहले जितनी तेज नहीं थी, फिर भी वह कभी नहीं रुकी। ऐसा लग रहा था जैसे रुक रुक कर बारिश हो रही हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, माटू की घबराहट धीरे धीरे कम होती गई। उसे लगा कि रॉकी के पास शायद कोई और विकल्प नहीं बचा है। बेड़े के हमले बस अपनी हताशा निकाल रहे थे और वे जल्द ही पीछे हट जाएंगे। यह माटू की कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं थी। हो सकता है कि वह ज्यादा काबिल न हो, लेकिन आखिरकार वह एक सिटी लॉर्ड था, वह काफी होशियार था। रॉकी के जाने के दौरान वह लगातार सोचता रहा कि रॉकी क्या योजना बना रहा होगा, लेकिन उसने लगभग हर चीज पर सोच विचार कर लिया था, फिर भी रक्षात्मक जाल को भेदने की कोई संभावना नहीं सोच पाया। यदि रक्षात्मक जाल को तोड़ा नहीं जा सका तो चाहे बेड़ा कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उसके लिए खतरा पैदा करने में असमर्थ होगा। इससे माटू अब तनाव मुक्त हो गया। इसके बजाय वह स्काईशिप पर शांत रहा, ये देखने के लिए उत्सुक कि रॉकी आखिर कब पीछे हटेगा। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद एक विशालकाय वस्तु धीरे धीरे बादलों की परत को चीरती हुई माटू शहर के ठीक सामने प्रकट हुई। थंडरहॉक सिटी को प्रकट होते देख माटू वहीं दंग रह गया। फिर घबराकर उसने मन ही मन गालियां दी। उसका चेहरा, जो अभी अभी संभला था, बेहद पीला पड़ गया, पहले से भी ज्यादा भयावह। क्योंकि थंडहॉक सिटी को देखकर माटू को अचानक एहसास हुआ कि रॉकी क्या योजना बना रहा था। वह क्या वह संभवतः शहर विध्वंसक तोप का उपयोग करने की योजना बना रहा है। जैसे जैसे थंडहॉक सिटी धीरे धीरे करीब आ रही थी, माटू का डर बढ़ता जा रहा था।